धन्यवाद भाई ऑरमैन, परमेश्वर आपको आशीष दे। शुभ प्रातः मित्रों, और ये वापस आराधनालय में आने का सौभाग्य है। इस शानदार ईस्टर की सुबह आराधना कर रहे हैं हमारे बहुमूल्य प्रभु और बचाने वाले यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चय ही मैं था, सारे संदेश जो मैंने कभी सुने, जो हमारे पास्टर ने प्रचार किए, उसका बढ़िया वाला जो इस प्रातः था, मैं घर गया और अपनी पत्नी को बताया। मैंने कहा, प्रिय, ये आज प्रातः तुम चूक गई सुबह जल्दी न उठने से। ये वाला सबसे बढ़िया था जो मैंने पुनरुत्थान पर सारे जीवन में सुना। मैंने कभी इतना अच्छा पुनरुत्थान पर नहीं सुना जो हमारे पास्टर ने आज प्रातः हमें दिया। ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला संदेश और हर चीज ठीक अपने बिंदु पर। ये दर्शाने जा रहा है कि जब अभिषेक मनुष्य पर होता है तो देखो क्या होता है, तब वो कुछ करता है। और इसलिए हम आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें ये शानदार पास्टर दिया है। और अब मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अलग अलग समय में यहाँ पर थोड़े समय के लिए थे आगे पीछे, परंतु अब कार्य क्षेत्र के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह मैं ब्रिटिश कोलंबिया में क्री इंडियाना के लिए जा रहा हूँ, और फिर वहां से होते हुए फोर्ट सेंट जॉन की ओर, और फिर इस गर्मी में प्रभु ने चाहा तो पश्चिमी किनारे पर, वो पूर्व में और वहां पश्चिमी किनारे पर और ऊपर अलास्का, और वहां से होते हुए, और फिर संभवतः वहां से मैं कुछ तोह लेने वालों को अफ्रीका भेज रहा हूं और बाकी संसार में आने वाले जाड़ों के लिए। इसलिए ये सब कुछ समय से पहले होगा। मुझे यहाँ फिर वापस आराधनालय में आना होगा। ये कम से कम ये अगस्त में होगा या किसी समय बर्फ गिरने के समय, इसके पहले कि मैं फिर वापस आ सकूं। और मैं आप सबको आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उस सब के लिए जो आपने किया, और हम खेदित हैं। हमारे पास यहां लोगों के लिए इस प्रातः जगह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भवन की योजना चल रही है कि बड़ा आराधनालय बनाए जब ये सारी सभाएं होती हैं, और इसलिए ये संभवतः अब प्रभावित होगा, वे आराधना भवन बनाना आरंभ करेंगे। अब और आप लोगों को भी, प्रत्येक को आपके उपहारों, जन्मदिन के कार्डों, ईस्टर कार्डों, उपहार जो आपने बिली को दिए हैं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और विभिन्न, और मेरे लिए एक भाई वुड्स, और मैं उनमें से बहुत से, मैं उन सब की सराहना करता हूं। और हर एक आता है और कहता है, आप नहीं जानते कि कितना तनाव भरा होता है। और कोई आता और कहता है, हम भाई ब्रणम से मिलना चाहते हैं, और हम आपके पिता से मिलना चाहते हैं, और आदि आदि, और कहा कागज भर चुका है। अब आप नहीं जानते कि कितनी परेशानी वाली स्थिति में आप पड़ जाते हैं जब आपके पास इतने सारे होते हैं। बस यही आप कर सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि ऐसा था, मैं उनमें से हर एक के साथ लंबे समय तक बैठ सका। किसी समय मैं ये करने की आशा करता हूँ, परंतु ये इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ लोग समस्त संसार से आते हैं। देखिए, सारे संसार से। इस सप्ताह लोग बहुत से राष्ट्रों से थे, और साक्षात्कार और प्रार्थनाएं हुई इस सप्ताह समस्त संसार राष्ट्रों से। और यदि ये हमारी छोटी सी स्थानीय भक्त मंडली यहाँ जेफरसन विले में है, मैं प्रत्येक के साथ दो या तीन छोटे से प्रेम में ले सकता हूँ, और इसे गहराई से बोकर और उन्हें जाने दूं। परंतु देखिए, जबकि वहाँ हो सकता है कहें पांच टेलीफोन या दो टेलीफोन हमारे स्थानीय समाज से, और समस्त संसार से 100 या 200, उसी समय में ये दो भीतर आ रहे हैं। इसलिए वहाँ वास्तव में हजारों, जिन्हें मैं छू भी नहीं सकता किसी भी तरह से, नहीं कि लोगों को देखूं। और वहाँ आने के लिए बुलाहट, और वहाँ यहाँ जाऊं, सारे संसार से हवाई टिकट भेजते और सब, आकर बीमारों के लिए प्रार्थना करो, परंतु आप ये नहीं कर सकते। इसलिए लोग निराश हो गए, और मैं भी हो जाऊंगा। परंतु ये चाहते हुए कि मैं इस विषय में क्या करूं नहीं जानता, मैं ये कहते हुए इस ईस्टर की सुबह में स्वीकार करना चाहता हूं। वहां बहुत सारे हैं, आप जानते हैं कि सारे संसार से हजारों हजार लोगों को लूं। मैंने अपना सातवां चक्कर लगा लिया, जैसे कि आप जानते हैं, और मैं लोगों से व्यक्तिगत संपर्क में 1 करोड़ लोगों से अधिक से रहा सारे संसार में। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कैसे कितना दबाव जो आप पर है। और बहुत सी बार हम छोटे छोटे दबावों पर प्रहार करते हैं, मैं जानता हूं आप भी करते हैं, और थोड़ी सी निराशाएं, परंतु उन पर सोचें जो मुझ पर हैं। वे निराशाएं जो मुझ पर हैं, जब बीमार माताएं फोन करती हैं और परमेश्वर भाई 1 मिनट प्रतीक्षा करें, भाई ब्रैनम प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसे भेजेंगे, और दूसरे से फोन को रुकवाए रखते हैं और यहां और यहां और यहां समस्त संसार में। आप जानते हैं ये कैसे है, ये सरल नहीं है जब कोई फोन के दूसरे सिरे पर बीमार बालक के साथ या बीमार पति या मरती हुई पत्नी आपके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं स्नायु रोगी हूँ, ये बस एक को बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु मैंने ये एक चीज की है, बजाय इसके कि उलझन में पड़ूं, मैं अपने आप को सीधा रखता हूँ, अपनी दृष्टि कलवरी पर लगाए और बढ़ता रहता हूँ जैसा वो मुझसे करवाना चाहता है। और मेरी बहुत सी गलतियाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इन बातों के लिए क्षमा करेगा। हो सकता है मुझे एक जगह जाना चाहिए और नहीं गया, मैं बस एक मनुष्य हूँ और गलतियों के अधीन हो सकता हूँ। वहाँ एक छोटी प्यारी सी चीज वहाँ पीछे इस सुबह आंगन में बैठी थी जब मैं प्रभात की सभा से बाहर जा रहा था। मेरा एक मूल्यवान पुराना मित्र है, संभवतः वो यहीं कहीं हो, वो शिकागो से है, उसका नाम स्टीवर्ट है, और वो लगभग एड स्टीवर्ट, मैं समझता हूँ कि वो 70 के दशक के बीच में है या और अच्छा, और वो मुझे वहाँ बाहर मिला और उसने अपनी देह की सिक्कों में जमा की और उसने मुझे खरीज का सारा बड़ा बंडल दिया लगभग इस प्रकार का। और ओ मैं नहीं जानता, मैं इसके चलते वे बाहर विदेश जाते मिशन के कार्य पर, और उसका अच्छा मित्र और मेरा ब्रदर स्कैक्स लियोनार्ड स्कैक्स लोवेल इंडियाना से यहाँ खड़ा हुआ था। ये बात मुझे पहले भी कभी नहीं मालूम थी कि वो एक मैसन था, उसके पास मैसन का बटन था और हम मैसोनिक विधि के विषय में बात कर रहे थे। और इसलिए बूढ़े भाई स्टावर्ट ने मुझसे कहा, उसने कहा भाई ब्रैनम मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, इस भाव को क्षमा करें, परंतु उसने कहा कि आपको पाना तुर्की के जनान खाने से भी अधिक कठिन है। अधिक समय नहीं हुआ किसी ने मुझसे कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रभु को पाना अधिक कठिन नहीं है। भाई मेरा इस प्रकार से मतलब नहीं है कि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, परंतु मैं बस कल्पना करता हूँ। मैं घर गया और अपनी पत्नी को बताया और हम टेबल पर बैठे और हंसे कि तुर्की जनान खाने को लेना कितना कठिन है, आप जानते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये इतना कठिन नहीं है भाई स्टावर्ड, यदि आप तब भी यहां अंदर हैं, परंतु मैंने निश्चय ही सोचा कि ये छोटा उपहास का भाव है, हमें ऐसा बना दिया कि सब दबी सी हंसी हंसते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं हरेक से मिल सकूं और मैं हरेक से प्रेम रखता हूं, ये सच बात है, चाहे वे मित्र या शत्रु हो, ये एक सा ही है। और मैं निश्चय ही आप लोगों की प्रार्थना की लालसा करता हूं इन आने वाली सभाओं में। मैं इंडियंस के बीच में जा रहा हूं और आप जानते हैं कि आप जब रोम में होते हैं आपको एक रोमन होना है, और जब आप इंडियंस के बीच होते हैं तो आपको इंडियंस के समान रहना होता है। मेरा एक मिशनरी मित्र जो कि मेरा शिकार का साथी है, जहां मैं उस राजमार्ग पर था, अलास्कन राजमार्ग, एक बहुत ही अच्छा युवा पुरुष और उसकी पत्नी एक अच्छे घर से, और मैं हाथ खाए हुए और कानों के चारों ओर और आदि आदि, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या मामला है, क्या उसे एक्जिमा हुआ, ये मक्खियों और खटमल से हुआ, जहां वो था वो वहां कैसे रहता है, और इस प्रकार आप लोगों के साथ रहना ताकि उन्हें मसीह के लिए जीत ले, वे मसीह की धरोहर हैं, ये वे लोग जिनके लिए मसीह मरा और किसी को उनके पास जाना चाहिए। और प्रमुख मेरी उत्तरी सभाओं में किसी एक सभा में था और पवित्र आत्मा सभा में था या बाहर कैंप के स्थान पर, मैं विश्वास करता हूं कि ये पर्यटन के स्थान में था, उसका नाम पुकारा और वो कौन था, उसने क्या किया, और वो ये उसके साथ तय हो गया, वो जान गया कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो सर्वशक्तिमान की ओर से ही आता है। इसलिए उस प्रमुख ने ऊपर नीचे और सारे किनारे में हलचल मचा दी, और हम एक नाव में सभा करने जा रहे थे, उन स्थानों पर जा रहे थे जहां हमें उन लोगों के लिए जाना था, और दूर बाहर और किनारे पर और दूसरों तक भुलाए गए क्री इंडियन, बहुत से भाई जिनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई उनके पास ना जा सके, अब वे इंडियंस, वहाँ एक भी पैसा नहीं होगा, जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपनी सभाओं में कभी भी दान नहीं लिया और मैं पैसा नहीं लेता, परंतु यहाँ कलीसिया ने मेरी सभाओं का वहाँ इंडियन का खर्चा उठाया। कुछ आपके दशमांश का पैसा और आदि आदि भुगतान करेगा और इस उद्धार और छुटकारे के संदेश को उन निर्धन और अनपढ़ इंडियंस के लिए लाए। इस सब के बाद वे अमेरिकन हैं, आप जानते हैं, हम लोग परदेशी हैं, आप समझते हैं, हमने आकर उनसे ले लिया और हम चाहते हैं, मैं उनका राष्ट्र उनको नहीं दे सकता, परंतु मैं उन्हें मसीह में आशा दे सकता हूं कि जो हमें किसी दिन उस देश में भाईचारे में ले आएगा जहां कोई लड़ाई नहीं और भूमि का लेना देना नहीं एक दूसरे से। ये एक देश होगा सबके लिए स्थान। जब वो समय आएगा मैं धन्यवादित होऊंगा यदि मेरे सारे प्रिय जन बच जाए और समय तैयार रहे। अब मेरे पास बहुत से मित्र हैं जिन्हें मैं यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, बहन, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, ली हुआ करता था, क्या ठीक बात है? क्या आप श्रीमती ली नहीं? आपकी पुत्री यहाँ है, पुत्रियाँ, एक जो चंगी हुई थी, ये बहुत अच्छा है, उनमें से एक गुड शेपर्ड्स के घर में या नहीं? बहन, वो क्या कहलाता है? कोई कैथोलिक संस्थान, लेडी ऑफ पीस, यही था। मैं इन कैथोलिक नामों को मिला जुला देता हूँ और इसलिए वहाँ, और उसे दिमागी तंत्रिका घात था और प्यारा प्रभु यीशु, जबकि हम, मैं पलंग के पेत्याने बैठा था और उसके मूल्यवान माँ और पिता पास में खड़े थे और यीशु ने घोषणा की, ये हो गया, समाप्त हो गया, और वो वहाँ है, ये हो गया। और निसंदेह हम जानते हैं कि इस प्रातः बहन बहुत आभारी है। मैं उस ओर देख रहा हूँ और लोग उनको देख रहा हूँ जो हाल ही में कैंसर से मर रहे थे, यहाँ पहिए की कुर्सी और बैसाखियों पर खिचड़ते हुए आए और वे यहाँ इस प्रातः स्वस्थ और चंगे हैं। ये सारे संसार में है, मेरे द्वारा नहीं, उसके द्वारा। हमारा प्रभु जो मरे हुओं में से जी उठा और सदा के लिए जीवित है, हमारे प्रभु की महिमा और धन्यवाद सदा होता रहे। ये मेरे हृदय की प्रार्थना है। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। अब मैं इसी पर निर्भर हूँ और जब मैं वहाँ बाहर जाता हूँ, देखिए, यहाँ घर पर आसपास इतना बुरा नहीं है, परंतु जब आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वास्तव में युद्ध की आगे की पंक्ति में होते हैं, ये प्रशिक्षण है। कल मैं सुन रहा था जब हमारी कलीसिया ने मेरे लिए नई बड़ी डिक्की वाली गाड़ी ली और मैं की यात्रा करूं और मेरी दूसरी बारी लगभग घिस गई है और मैंने रेडियो खोला और समाचार सुनने और तब वे पिछली रात्रि नीचे आ रहे थे जहां मैं और जोसेफ प्रार्थना के लिए गए थे। तब हम ग्रीन मिल्स से आ रहे थे, मैंने रेडियो चलाया, ये एक समाचार प्रसारण था और ये बताया गया कि ये उस अनुश्रोता का अनुकरण कर रहा है, उस युवा व्यक्ति का जो अपने प्रशिक्षण में था और कैसे वो अपनी जेब में रेत से और दूसरी चीजों से भरकर खड़ा था जहां उसे अपने सिर पर इतना नीचे रखना था कि सच्ची मशीन गन का फायर उसके सिर के ऊपर से जा रहा था जहां वो कांटे वाले तारों में से होकर खिसक रहा था और आदि आदि, कठिन प्रशिक्षण ले रहा था भाई, यही जो हम यहाँ कर रहे हैं। परंतु युद्ध के आगे की पंक्ति में बहुत अंतर होता है, समझे? वो मशीन गन समय प्रबंध में है, एक निश्चित स्तर तक प्रशिक्षण देते हैं, परंतु युद्ध की आगे की पंक्ति आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, समझे? इसलिए वहाँ थोड़ा सा अंतर होता है तब इससे जो यहाँ है, इसलिए हमारे पास भाई यहाँ प्रशिक्षण है, परंतु वहाँ बाहर आप युद्ध की ओर आगे की पंक्ति में हैं, इसलिए अब हम शत्रु का सामना करने जा रहे हैं, इसलिए हम लड़ा करते थे, यहाँ एक छोटा सा गाना गाते हैं, युद्ध जारी है। किसी को अभी तक वो गाना याद है? युद्ध जारी है ओ मसीह सिपाहियों, और आमने सामने कठोर तैनाती में हथियारों की चमक में और रंग निकल रहे हैं, सही और गलत आज मुठभेड़ में है, ये ठीक बात है, समझे? युद्ध जारी है परंतु थको नहीं, मजबूत और उसकी सामर्थ्य को पकड़े रहो। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, उसका झंडा हमारे ऊपर है, तो अंत में जीतने वालों का गाना गाएंगे, ये ठीक बात है। अब बहुत सी बातें हैं जो मुझे कहनी थी इस प्रातः, परंतु मैंने उन्हें छोड़ दिया। जहां हमारे लोग ठसाठस खड़े हैं और बाहर उनके पास छोटा स्पीकर है और छोटे प्रसारण, मैं सोचता हूं कि प्रत्येक कार में हो सकता है। हमारा प्रसारण तंत्र आराधनालय से कई गजों तक जाता है इससे, और इसलिए हम इस प्रातः हरेक को हमारे साथ होने के लिए उनकी सराहना करने का यत्न करते हैं। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं ये कह दूं, तुरंत इसके पश्चात मैं सोचता हूं, बपतिस्मे की सभा है, पहले प्रार्थना पंक्ति है, इस प्रातः हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूं परमेश्वर का दृश्य पर आना ही प्रमाण है। जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उसका पुनरुत्थान, क्या वो जीवित है या वो जीवित नहीं है, क्या ये काल्पनिक कथा है या ये सत्य है? यदि वो जीवित है तो उसने प्रतिज्ञा दी है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा जगत के अंत तक भी। अब वो यदि यहाँ हमारे मध्य में आकर और प्रमाणित करता है कि वो यहाँ पर है तो फिर इस विषय में कोई अनुमान नहीं है, समझे। स्मरण रखें, संसार में सारे धर्म उनके अपने पवित्र दिन हैं और छुट्टियां और आदि आदि, परंतु उनमें से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि उनका संस्थापक जिसे मृत्यु ले गई और बस उसका हो गया, परंतु हमारा मसीही धर्म हमारा संस्थापक मरा और फिर से जी उठा। हाल ही में मेक्सिको में मेरा प्रेस द्वारा साक्षात्कार लिया गया उस छोटे बालक के जी उठने पर, जो उसी प्रातः 9 बजे मर गया था और उसी रात्रि 10:30 बजे या 11 बजे मरुओं में से जीवित हो गया, ठीक प्रचार मंच पर माँ की गोद में हजारों लोगों के सामने उस रात्रि 30,000 मसीह के पास आए, देखा, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ क्या था। और वो छोटा, मैंने अपने सामने की ओर दर्शन देखा और इसने उसके विषय बताया कि उसका क्या नाम था और हर चीज, और माँ वहाँ पीछे थी, प्रार्थना पत्र नहीं पा सकी थी, अंदर नहीं आ सकी थी, परंतु उसे तो पंक्ति में नहीं आना था, इसलिए जब वो छोटे बालक को लाई, वर्षा हो रही थी, खड़े हुए हम अपने लिए सोचते हैं, उनके लिए सोचते, वे वहाँ उस प्रातः 9 बजे से थे उस सभा के लिए जो रात्रि 9 बजे आरंभ होनी थी, गर्म सूरज में परछाई के लिए एक दूसरे से सटे खड़े हुए थे, बैठे नहीं थे, खड़े थे। वे इस प्रकार करते हैं अफ्रीका और हिंदुस्तान में और विभिन्न स्थानों में जहां 5 लाख एक ही बार में जमा होते हैं। अब इस बेचारी स्त्री प्रार्थना पत्र भी नहीं पा सकी, वहां लगभग 300 कार्यकर्ता थे कि उसे रोके रखें, और वो प्रार्थना पंक्ति में भी ना आ सकी। वहां खड़ी हुई छोटे बालक के लिए प्रार्थना कर रही थी एक छोटी कैथोलिक स्त्री, और पवित्र आत्मा ने बुलाया और कहा उसे यहाँ आने को कहो, और वो छोटा बालक उस भीगे हुए कंबल में वहाँ सुबह से खड़ी हुई थी, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। अब हमारे पास डॉक्टर का बयान है जो इसकी मरे हुए की घोषणा करता है, उसी प्रातः 9 बजे, और तब ये रात्रि थी, लगभग अर्ध रात्रि थी, और मैं दर्शन के अनुसार जो कहा गया मैंने जाकर अपना हाथ मृत बालक पर रखा और वो वहाँ जीवित था, डॉक्टर ने गवाही दी। प्रेस के द्वारा मेरा साक्षात्कार लिया गया और किसी के विश्वास के विरोध में कुछ नहीं, जब तक ये बाइबल के साथ साथ है, ठीक है, परंतु वो पुरुष जिसने मेरा साक्षात्कार लिया कैथोलिक था, और उसने मुझसे कहा, क्या अविश्वास करते हैं कि हमारे संत ये कर सकते हैं? मैंने कहा, यदि वे जीवित हैं। निसंदेह मैं जानता हूँ कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है कि आपको मरना ही है कि आप एक संत बने, इसलिए फिर मैंने कहा, यदि वे जीवित हैं, जी हाँ, और उसने कहा, ओ, जब तक आप ना मरे आप संत नहीं हो सकते। मैंने कहा, क्या पौलुस मरने से पहले संत था या मरने के बाद? वो किसको लिख रहा था, मरे हुए लोगों को? जब उसने कहा उन संतों को जो इफिसुस में है और अमुक अमुक स्थानों पर संतों को, वो मरुओं को नहीं लिखेगा, आप जानते हैं। तब उसने कहा कि आप अपना मामला बाइबल के द्वारा तय करने का यत्न कर रहे हैं, हम कलीसिया हैं। मैंने कहा, ठीक है श्रीमान, ठीक है। और उसने कहा, हम कलीसिया हैं। मैंने कहा, तो फिर हम देखें कलीसिया इसे करे, समझे। तब इस प्रकार से ये केवल मसीह ही कर सकता है, आप जानते हैं। उसने कहा, कैथोलिक कलीसिया के लिए आपका क्या विचार है? मैंने कहा, अच्छा होता कि आप मुझसे ये नहीं पूछते, समझे। उसने कहा कि भाई मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, ऊंचे दर्जे का प्रेतात्मावाद वहाँ पर है। उसने कहा, प्रेतात्मावाद? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। बोला, आप ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं? मैंने कहा, कोई भी चीज जो मरुओं के साथ मध्यस्थता करती है संतों से बात करना, समझे। और उसने कहा, भाई आप मसीह से प्रार्थना करते हो और वो मर गया। मैंने कहा, परंतु वो फिर से जी उठा, देखा। इसलिए ये अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि वो फिर जी उठा है, क्या हम धन्यवादित नहीं? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो कब्र में से हमारी धार्मिकता के लिए जी उठा। स्वर्गीय पिता, इस प्रातः हम यीशु के लिए आभारी हैं और आज उसके महान पुनरुत्थान के स्मरणोत्सव क्रिस्त जयंती की सुबह, जब वो मरुओं में से जी उठा, मृत्यु नरक और कब्र पर जय पाई। जब वो पृथ्वी पर था उसने दिखाया कि उसने बीमारी रोग और सब प्रकार की शैतान की सामर्थ पर जय पाई। तब मृत्यु उसके सामने पड़ी थी, वो बड़ा अंतिम शत्रु, और ईस्टर की सुबह उसने प्रमाणित कर दिया कि वो परमेश्वर था। वो अंतिम शत्रु के पकड़ से भी ऊपर उठ गया, उसे पकड़े ना रह सका, कब्र ने उसे दे दिया, नरक को भी उसे छोड़ देना पड़ा, स्वर्ग ने उसे अपना लिया। ओ परमेश्वर होने पाए, हमारे हृदय आज उसे लेने पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ में, कि हम उसके कार्यकारक हो सकें, उसके उदाहरण यहाँ इस पृथ्वी पर उसके दास जैसे कि हम परदेशी हैं इसे प्रदान करें। यहाँ सबको आशीषित करें परमेश्वर, ये मूल्यवान लोग जो खड़े हैं उनमें से कुछ यहाँ दिन निकलते खड़े हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अधिकाई भरपूरी और उस सबसे ऊपर जो हम कर या सोच सकते हैं आप उंडेलेंगे आज इन लोगों पर, और उन्हें इनके हृदय की गहराई की इच्छाएं देंगे। जिसके लिए हर एक आया है इस प्रातः होने पाए वो संतुष्ट होकर वापस जाए। आपने कहा आप वैसे ही नहीं लौटाएंगे, परंतु आप उसे भली चीजों से भर देंगे और उसे आनंदित होते हुए भेजेंगे। प्रभु इसे स्वीकार करें। होने पाए आप सर्वशक्तिमान, आपका पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ में हमारे प्रत्येक के साथ व्यवहार करे, जब तक हमारी आशाएं सिवाय यीशु के लहू के धार्मिकता के साथ न बन जाएगी। पिता इसे प्रदान करें। जो वचन हम पढ़ते हैं उसे आशीषित करें। इस प्रातः शानदार संदेश के लिए हम आपके धन्यवादित हैं। जैसे कि आराधनालय में हम जल्दी आए हैं और देखते हुए कि आपने हमारे भाई को लिया और कुछ ही क्षणों में इतना बदलाव और लोगों की इस मरती हुई पीढ़ी को एक संदेश दिया जिसके कि हम भाग हैं। प्रभु इसके लिए हम आपके कितने धन्यवादित हैं। ओ परमेश्वर, हमारे हृदय आनंद से उछलते जैसे कि हम इन बातों के विषय में सोचते हैं। अब प्रभु इसे अभिषेक में बनाए रखें उसके उन आने वाले दिनों में प्रभु, और इस छोटी कलीसिया को आशीषित करें। और प्रभु मेरी सहायता करें जैसे कि मैं संदेश दूसरे लोगों के लिए लाने जा रहा हूं, और हम सब मिलकर एक व्यक्ति एक परिवार आपस में मिले हुए और मिलकर प्रार्थना करने वालों के समान हो और पवित्र आत्मा की पवित्र एकता में जीवन जिए जब तक यीशु हमें अपने राज्य में ना ले ले, क्योंकि हम ये उसके नाम में मांगते हैं और उसकी महिमा के लिए। आमीन।
And by the work of a young man in our midst, we present this picture to you, Brother Branham, with the full expression.
भाई आप अवश्य ले सकते हैं। धन्यवाद भाई नेविल और आराधनालय। भाई जेरी स्टेफी ने ये चित्र रंगा है। परमेश्वर इस लड़के को आशीष दे। ये बहुत अच्छा है जेरी। यदि इस सुबह तुम यहाँ हो, ये बुरा है कि मेरी इच्छा थी। यदि मेरे पास साधन होते तो मैं इस लड़के को कलाकार के लिए विद्यालय भेज देता। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कला में है। क्या आप ये विश्वास नहीं करते? परमेश्वर संगीत में है, परमेश्वर कला में है, परमेश्वर इसमें है। ये बहुत खराब है इस योग्यता को देखते हुए जो इस प्रकार की है। ये बढ़ेगा नहीं, जितना अधिक ये करता है उतना ही बढ़ेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे जेरी। और भाई नेविल धन्यवाद, और इस कलीसिया को इस शानदार चित्र के लिए और इस पवित्र पद के लिए जो इसके नीचे है। मैं इसे थोड़ी देर में पढ़ दूंगा। ठीक है श्रीमान, भाई नेविल इस पद को पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे इसका बोध था कि ये क्या है। वो लंबे कद का मनुष्य नहीं, न ही अपने मार्ग में अहंकारी। वो स्वयं में डींग नहीं मारता जैसा कि वो दिन प्रतिदिन चलता है। धन और यश की कोई इच्छा नहीं रखता, परंतु कोई उसके स्थान को ले नहीं सकता। वो तो वैसा ही है जैसा हम उसे चाहते हैं, हमारा अपना प्यारा भाई बिल। वो हमें ईमानदारी से सिखाता है, वचन को बिना हल्का किए, कोई दिखावे से नहीं, प्रशंसा का लगाव नहीं, बस प्रभु का अनुकरण कर रहा है। उसकी भाषा कोमल और मंद, और वो अपनी आवाज ऊंची नहीं करता सिवाय कि गलती के विरोध में चिल्लाए, और फिर उसकी कोई पसंद नहीं। कभी भी अधिक नहीं सीखा कॉलेज और विद्यालय से, परंतु जो विशेष है वो जानता है, और निश्चय ही किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि वो ज्ञान उसे दिया गया वो अनंत ऊपर से है। उसका कोई मत्सार नहीं सिवाय हमारे मसीह के, कोई नियम नहीं परंतु स्वतंत्र प्रेम। उसकी कोई महान घोषणा नहीं थी उसके दीन और नम्र जन्म की, परंतु हमारे लिए वो महानतम मनुष्य है जो इस पृथ्वी पर वास करते हैं। हम इसे सौभाग्य से अधिक गिनते हैं, उसे एक मित्र के समान जानते हैं। हम आनंदित हैं जिस सब के लिए वो खड़ा है और अंत तक सही रहेगा। वो कहता है वो प्रचारक नहीं, वो साधारण है जितना वो हो सकता है, परंतु प्रचार मंच पर पहुंचने दो और उसे देख पाना कठिन नहीं। वो पहले ठहराया हुआ एक नबी, लोगों को जो कहते हैं वे कहेंगे। परमेश्वर ने हमारा महान पक्ष लिया है जब उसने हमें भाई बिल दिया। धन्यवाद भाई नेविल, आपके विचारों के लिए आपको धन्यवाद। किसने रचना की? ये मैं इन बातों के योग्य नहीं कि कहें, परंतु मेरे लिए संसार के सारे पैसों से अधिक है। समझे, जरा सोचे कि कोई आपका सम्मान उसके दास के समान करता है जैसे परमेश्वर का दास। उन्हें पाए मैं इसके लिए सदा सच्चाई से जीऊं, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर सदा आपको आशीष दे, मेरे विचार सदा आपके लिए होंगे, मेरा प्रेम सदा आप पर भी प्रकट होता रहे। अब ओ, हमारे पास बहुत सी बातें हैं, हम पूरा दिन ले सकते हैं और वचन तक कभी नहीं पहुँचेंगे। आप देखिए बहुत सी अच्छी बातें, मेरे पास प्रभु से दर्शन आया इस विषय में, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ और किसी ने स्वप्न देखा है, वो मैं सोचता हूँ खास ही था प्रभु के आगमन का। और मैं छोटी रिबेका, मेरी पुत्री वहाँ पीछे है, थोड़ी देर पहले मैंने उसका उपहास किया, वो एक प्रकार की बड़ी सी टोपी पहन कर आई। मैंने कहा अप्रिय, ये चिड़िया के घोंसले के समान दिखता है। मैंने कहा इस सब में सारी डंडियां हैं, इस सब प्रकार की चीजें हैं। मैंने कहा जाओ इसे उतार कराओ। तब वो फिर मेरे पास वापस आई, कुछ ही मिनटों में वो वापस आई। आप जानते हैं वो मेरे पास आई, वापस गई, वो एक बड़ी कॉपी के साथ आई। मैंने कहा ये चीज कहाँ से आई? उसने कहा डैडी, वो कहती है मेरा पैर बड़ा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बड़ी कॉपी ले लूँ जो मेरे पैर से मेल खाए, इसलिए ओ। परंतु उसने कहा उसने दो बार स्वप्न देखा कि वो और मैं एक कार में जा रहे हैं और मैं उसे बता रहा हूँ कि प्रभु प्रकट होने के समीप है। वही स्वप्न दूसरी बार, मैं तीसरे के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हो सकता है तब प्रभु देगा कि इसका क्या अर्थ है। अब कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु अब हम सीधे वचन पर आएं। हर कोई अच्छा अनुभव कर रहा है, मैं आशा करता हूँ, और यदि नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके पहले सभा समाप्त हो, परमेश्वर आपको अच्छा अनुभव करवाएगा कि इस प्रातः हमारे मध्य में कोई भी दुर्बल व्यक्ति न हो जब वो सभा समाप्त हो। अब हमें ये स्मरण है कि मसीह अधर्मियों के लिए मरा और वो हम थे, समझे, वो हमारे लिए मरा ताकि वो हमें बचा सके। क्या आप चारों ओर अच्छी तरह से सुन सकते हैं? वहाँ उधर पीछे, क्या वहाँ पीछे सही सुन सकते हैं? क्या ये वहाँ पीछे आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब मैं उसके कुछ वचन में से पढ़ना चाहता हूँ। आइए पहले हम योएल की पुस्तक निकालें और मैं पहला पद पढ़ना चाहता हूँ, पहले से चौथे पद तक, और फिर दूसरे से, दूसरे अध्याय से 25वां पद और उत्पत्ति 20:7। अब मैं सराहना करता हूँ, अब यदि थक गए हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, समझे, परंतु कलीसिया के लिए ये मेरा अंतिम संदेश होगा, कलीसिया के इस भाग के लिए, कुछ समय के लिए। और हम इस प्रातः चंगाई सभा की आशा करते हैं, और मैं इस संदेश को चाहता हूँ, यदि परमेश्वर इसे आशीषित करेगा कि हृदयों की गहराई में बैठ जाए, ताकि हम इसके अर्थ को पा सकें जो इसका अर्थ है। अब हम यहाँ प्रकट करने के लिए हैं, उन बातों को कहें जिन पर हम विश्वास करते हैं और पवित्र वचन से इसे प्रमाणित करते हैं कि पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, और तब होने पाए पलटकर परमेश्वर इसे सिद्ध करे कि ये सत्य है, ठीक है, इसे वास्तविक बना दे। जैसे कि कोई आप कहते हैं ये सूर्यमुखी का बीज है, इसे बो दे और देखें कि ये क्या है, तब सूर्यमुखी आता है, तो ये तय हो गया कि ये सूर्यमुखी का था, समझे, बस यही है। अब यदि कुछ अपनी जगह बदलना चाहते हैं, हर कोई थोड़ी देर में, कोई बैठ जाएगा, दूसरे खड़े, और थोड़ी प्रतीक्षा करें, और मैं जितना हो सकता है सारांश में लूंगा। अब स्मरण रखें कि मेरे लिए प्रार्थना करें और कलीसिया के लिए ईमानदार रहें। यहीं भाई नेविल के साथ कलीसिया में टिके रहें, और आप लोग जो आते हैं अच्छा है। अब पीछे की ओर आए, और अब मैं इन सभाओं में हूँ, मैं बिना निश्चित बुलाहट के आगे बढ़ रहा हूँ, परंतु मैं आसपास नहीं रह सकता, संसार मर रहा है, समझे। और एक बार पौलुस को यह अनुभव मिला और वो किसी दूसरे देश को जा रहा था, और तब उसे मार्ग में मकिदुनिया से बुलाहट मिली। अब परमेश्वर मकिदुनिया की बुलाहट को किसी भी समय दे सकता है, मैं किसी भी चीज को निरस्त कर सकता हूँ जब परमेश्वर बुलाता है। मैं अपना जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ कर रहा हूँ, इस कोने में जाता हूँ, बीज बोता हूँ, उधर कुछ बीज बोता हूँ और उधर फेंकता हूँ, कुछ बीज बोता हूँ। मैं जानता हूँ कि आकाश के पक्षी उनमें से कुछ को बटोर लेते हैं, उनमें से कुछ दब जाते हैं और आदि आदि, परंतु उनमें से कुछ हैं जो उगते भी हैं। आप जानते हैं कि अच्छी भूमि में, विशेष बात यह है कि हम बीज बोएं। ईस्टर के संदेश के लिए एक बहुत ही विचित्र पढ़ने को, योएल का पहला अध्याय, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा, वो ये है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिन नामक टिड्डी ने खा लिया है। अब 25वां पद दूसरे अध्याय का, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उत्पत्ति में, उत्पत्ति का बीसवां अध्याय और सातवां पद मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, इसमें से होते हुए विषय के लिए प्रसंग जिसे मैं लेने को हूँ। मैं छठवें पद से आरंभ करूँगा कि इसकी भूमिका को लूँ। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, पर यदि तू उसको ना फेरे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। अब मैं इस मूल पाठ से लेता हूँ या इस वचन के पढ़े जाने से मूल पाठ का एक सारांश फेर देना कहलाया। अब इस प्रातः भाई नेविल के प्रचार करने के बाद वो विशेष संदेश अंतिम बात जो उन्होंने विचार के अंत में कही थी वापस फेर देना, और इसलिए किसने मुझे विचार दिया ठीक वहीं फेर देना। अब मैं घर भागा और अपना शब्दकोश लिया और वचन की कुछ टिप्पणियां और कुछ बातों को लिखना आरंभ कर दिया, और मेरे पास वेबस्टर का शब्दकोश है कि फेर देने की सही परिभाषा ढूंढ लूं।
To restore means to return to the former owner.
फेर देने का अर्थ है पहले स्वामी को लौटा देना या वापस पुरानी स्थिति में लौटा ले आना, और हम दावे पर जोर दे सकते हैं वापस हो जाने को।
अब
यही जो वेबस्टर कहता है, रेस्टोर शब्द का अर्थ पहले स्वामी के पास वापस ले आना या पहली स्थिति में वापस ले आना। अब यदि किसी चीज पर दावा किया जाए कि उसे वापस फेरा जाए, आप इस पर दबाव डाल सकते हैं कि उसे उसकी सही स्थिति में वापस ले आए, और परमेश्वर इन निर्बल शब्दों को अब आशीषित करे।
टू
रेस्टोर फेर देने का अर्थ वापस लाना या पुनः स्थापित एक दावा लागू किया जा सकता है। अब किसी भी चीज को उसके मूल स्वामी वापस करना जहां से वो है, इसलिए कैसे भी ये अपने मूल स्वामी के पास से चला गया और कहीं ये भटक सकता है, परंतु पुनः स्थापित के लिए इसे वापस जिससे ये वास्तव में संबंधित है वापस लाना है, या इसे स्वाभाविक स्थिति में वापस लाना जहां ये पहले समय में था, इसकी स्वाभाविक स्थिति में वापस लाना। हमारे पास लागू करने का अधिकार है यदि वहां नियम है कि इसे सही स्थिति में वापस लाने को दबाव डाला जाए कि वापस लाया जाए। जैसे यदि कोई किसी संपत्ति को चुरा ले और वे संपत्ति पर कब्जा किए रहे तब आप कानून को लेकर और इस व्यक्ति के पास जाते हैं और कानून इस व्यक्ति को बाध्य करता है कि उस संपत्ति को उसके स्वाभाविक स्वामी को फेर दे और इसकी आधिकारिक पहली स्थिति में बाध्य करना। ओ क्या ही मूल पाठ है। ओ मैं कैसे इस पर दो दिन लेना चाहता हूँ कि बाध्य करना। अब भाई नेविल ने हमारे लिए प्रचार किया, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एक संडे स्कूल का पाठ सिखाऊं, ये इसे जारी रखेगा जो उन्होंने लिया था, ये मेरी आशा है। बाध्य या लागू करना, तब हम इसे शैतान पर लागू करने का प्राधिकार होगा। वो दावे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास एक नियम है और उसका वचन नियम है, और परमेश्वर इस वचन में कलीसिया के लिए निश्चित दावे किए हैं। इसलिए इन दावों को लागू करने के लिए हमारे पास अधिकार है कि शैतान पर लागू करें, कहें इसे वापस दे, और उसे ये करना है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि पवित्र आत्मा को ले सकते हैं और सीधे अपने घुटनों पर चले जाएं और कहें यहोवा यूं कहता है, इसे छोड़ना ही होगा, बस हो गया, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा है जो उससे ये करवाएगा। राष्ट्र के नियम को लागू करना है, ये उस राष्ट्र के द्वारा है राष्ट्र के लिए, परंतु परमेश्वर के आत्मा का नियम शैतान को बाध्य करता है कि इसे छोड़ दे जो उसने बिना अधिकार के लिया है, धोखे से परमेश्वर से लिया। मनुष्य का प्राण उसने परमेश्वर से लिया, महिलाओं और बालकों के प्राण, शरीर की बीमारियां उसने लोगों पर डाली, जहां कि परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया कि उसके समान हो, और कलीसिया को वैधानिक अधिकार दिए गए हैं बाइबल के द्वारा कि पवित्र आत्मा को लेकर इसे उन पर लागू करे। मैं विश्वास करता हूं कि पिछली सभा में मैंने इसका उल्लेख किया है, मैं निश्चित नहीं हूं, परंतु एक भाई जॉर्जिया से लुइविल आया, अपनी कार छोड़कर वहां बैठ गया और किसी ने चुरा ली, और उसमें उसके कपड़े, उसकी पत्नी के कपड़े, उसके बालकों के कपड़े थे, और उसके कपड़े, पत्नी के कपड़े, उसके बालकों के कपड़े थे। ये भाई इवांस थे जो यहाँ हैं, वे अक्सर यहाँ होते हैं, वे 1500 मील से यहाँ प्रतिदिन आते हैं जब हमारी यहाँ सभाएं होती हैं, यहाँ सभा के लिए आते हैं, और बेचारा बिना किसी सामान के हो गया, और यहाँ से 700 कुछ मील दूर घर, और उसे नहीं मालूम कि क्या करे, और वो पुलिस के पास गया, वहाँ एक बड़ा गिरोह लुविल में था, वे कार चुरा रहे थे, उन्हें रंग रहे थे, और इसे बेचने के लिए सिरनामा कागज नहीं चाहिए थे, और वे आपका सिरनामा बनवा देंगे कुछ ही मिनटों में, कोई भी नंबर जो उस पर आप डलवाना चाहते हैं, और ये उसका कठिन समय था। इसलिए हम सब अपने घुटनों पर आ गए, देखा यीशु को ये नहीं करना था क्योंकि वो वचन था, अब हम वचन नहीं हैं। प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आया, वे वचन नहीं थे, परंतु वचन उनके पास आया, परंतु यीशु वचन था, समझे, उसे प्रार्थना नहीं करनी थी, वो परमेश्वर था स्वयं में, समझे, परंतु हम उसके नबी हैं, उसके दास हैं, जिनके पास प्रभु का वचन आता है, तब नबी इसके द्वारा प्रमाणित होता है कि वह वचन प्रभु का था या नहीं, वो जो कहता है घटित हो जाता है। इसलिए तब हमारे पास पवित्र वचन था, यीशु ने कहा जहां मेरे नाम में दो या तीन जमा होंगे और यदि वे सहमत होंगे मैं उनके मध्य में होऊंगा, और यदि वे किसी पर विशेष चीज पर हाथ रखकर सहमत होंगे और मांगे और संदेह ना करें तो जो उन्होंने मांगा उन्हें मिलेगा, ये उन्हें दे दिया जाएगा। अब एक नियम है, अब यहाँ वो जो इस नियम को लागू करता है पवित्र आत्मा है। उन लोगों के विषय में क्या है जो पवित्र आत्मा का विश्वास नहीं करते, उसे अस्वीकार करते हैं, समझे, आप अपनी ही शांति और अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं, समझे। हम लगभग 5 जने अपने घुटनों पर आ गए, भाई फ्रेड सॉफ्टमैन और वहाँ बहुत से थे, 4 या 5 आदमी, और घुटनों पर आ गए और परमेश्वर के सामने मामले की दुहाई दी और फिर वचन लिया या प्रतिज्ञा, और इसे आगे भेज दिया। वो महान पवित्र आत्मा जैसा कि उसने वचन को लिया और समन जारी कर दिया, एक दर्शन आया और मैंने देखा कि वो पुरुष बॉलिंग ग्रीन केंटकी की ओर जा रहा है, पीली कमीज पहने और उसकी बड़ी कार चला रहा है। पवित्र आत्मा उस पर आया, उसे दोषी ठहराया और वो लगभग आधे रास्ते में घूमा। मैंने उसे देखा वापस आया और उस कार को निश्चित गली में खड़ा कर गया, वहाँ नदी के पार। मैंने खड़े होकर भाई को बताया, यहोवा यूं कहता है। और तब उन्होंने आरंभ किया, वे सड़क पर गए और वहाँ वो कार खड़ी थी आधी तेल की टंकी के साथ, जहाँ तेल की टंकी आधी हो गई थी, जहाँ से वो खरी गई थी। इतना ही था कि उसे ब्रॉलिंग ग्रीन के आधे रास्ते तक ले जाए और उसे वापस ले आए। अब वे पुरुष इस प्रातः यहाँ पर बैठे हुए हैं एक गवाह के समान। ये क्या है? बाध्य करना, इसे वापस दो, समझे? यही है, ये इसी के विषय में बात करता है। इसे वापस दे, इसके मूल स्वामी के पास वापस ले जाओ। और यदि शैतान ने आपको आपके उस अधिकार से कि आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां हैं लूट लिया है, तो इस प्रातः हमारा अधिकार है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर के दावे को लागू करें, इन्हें वापस लाएं। यदि उसने आपको पीड़ित कर दिया और आपको बीमार कर दिया है, तो वो परमेश्वर के सामने हमें अधिकार है कि परमेश्वर के नियम को लागू कर दें। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आमीन। उसे वापस लाओ, उसे छोड़ दे। तू उसे यहाँ से मृत्यु के अधीन ले जा रहा है और हम उसका दावा करते हैं, अब उसे वापस दे। ये लागू करना है कि उसे स्वाभाविक स्थिति में वापस पुनः स्थापित करें। एक मनुष्य बीमार है, एक बालक बीमार है, एक स्त्री बीमार है, समझे? वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से बाहर है। तब हमारे पास अधिकार है कि अपने दावे को लागू करें। हमारा दावा नहीं, हमारा दावा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। अब उस नियम को लागू करने का हमारे पास अधिकार है और नियम कानून देने वाला पवित्र आत्मा स्वयं है जो यहाँ पर है, परमेश्वर का प्रतिनिधि, कि देखे कि ये उसी प्रकार हुआ, आमीन। अब केवल एक ही विधि है कि वो कार्य कर सकता था, वो जबकि आप उसे कार्य करने दें, समझे? आपको इसका विश्वास करना ही है, ये नियम है। ओ, यदि मैंने कभी अपना मूल पाठ लिया तो एक नियम है, हर चीज में एक नियम दिया गया है। अब जानते हैं मछली का एक नियम है और वो मछली यहाँ पानी में टिकी रह सकती है, और उसके अंदर एक सिद्धांत है। यदि वो उस नियम से हट जाए जो उसके अंदर दिया गया है, तो वो समुद्र की तलहटी में बैठ जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं, एक भी कोशिका नहीं टूटेगी। आप ये करने का यत्न करें, वो सिद्धांत आप में नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, मछली कर सकती है। वो स्वयं को हवा के साथ साथ निकाल देती है, इस प्रकार से वो कर सकती है, उसके अंदर फटने के लिए कुछ नहीं है और वो उस प्रकार से बनी है। वो ये जानता है कि वो इस सिद्धांत को लागू कर सकता है कि उसे समुद्र की तह में ले जाए और उसे वापस उठाकर ऊपर लाए। ओ, मसीह में एक सिद्धांत था, सिद्धांत मनुष्य में है। आप उसे सबसे गहरी कब्र में गाड़ दें या नरक के सबसे नीचे, परमेश्वर के आत्मा का एक सिद्धांत है, वो उसे फिर से जिला उठाएगा, समझे? पक्षी का एक सिद्धांत है, उसका शरीर तत्व है, ये पृथ्वी संबंधित है, ये भूमि पर बैठती है, परंतु उसके अंदर एक नियम है, जिस प्रकार वो पंखों को फैलाती है, वो उड़ती हुई दृष्टि से दूर चली जाती है। ये विज्ञान के विरुद्ध है, वे दावा करते हैं कि ये पृथ्वी से बंधी है, गुरुत्वाकर्षण ने इसे थाम रखा है, परंतु ये गुरुत्वाकर्षण को नकारती है, ये स्वयं को ऊपर उठा लेती है और बाहर निकल जाती है। ये उस सिद्धांत को लागू करती है जो उसमें कार्य करता है, और ये उस सिद्धांत को थामे रहने के लिए बनी है। अब मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है, हमारे पास एक सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत हम में है, हम नहीं। आपको केवल एक चीज करनी है, आप बने और जन्म लेते और यहाँ मसीह की देह में रखे गए परमेश्वर के एक पुत्र और पुत्री के समान। आपको शैतान के सामने झुकना नहीं है, हमारे पास एक सिद्धांत है, ये पवित्र आत्मा का सिद्धांत है। आपको केवल एक ही कार्य करना है कि ये जाने कि कैसे जाने दें और परमेश्वर को आने दें। आप इसके लिए संघर्ष करते रहें और देखिए ये कभी काम नहीं करेगा जब आप जाने दें और परमेश्वर को भीतर आने दें। बस यही है, समझे? यदि एक मछली कहे रुको मैं अपनी सांस का छितरा ले लूं, मैं ऑक्सीजन को अपनी सांस में ले लूंगी और मैं देखूंगी यदि मैं नीचे जा सकती हूं, नहीं वो ये करती है, वो फट जाएगी, समझे? चिड़िया कहती है मैं देखूंगी कि मैं नीचे कितनी तेज दौड़ सकती हूँ और हो सकता है मैं ऊपर उड़ जाऊँ। नहीं, वो ये नहीं करेगी, वो नीचे गिर जाएगी, समझे? उसे मालूम होना चाहिए कि कैसे नियंत्रित करना है, कैसे वो सिद्धांत उसे नियंत्रित करेगा। और ठीक इसी प्रकार से ये हमारे साथ है, ये वो नहीं जिसके लिए हमें संघर्ष करना है, खींचा तानी और जल्दी, ओ यदि मुझे ये ना मिले या वो ना मिले, ये वो नहीं। ये जानना कि जीवन का सिद्धांत आप में है और आप इसे होने दें और परमेश्वर को करने दें, तब वो आपको आपकी चंगाई पर ले आएगा, आपको आत्मा के बपतिस्मा पर ले जाएगा, या कोई भी चीज जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी है, कोई भी दावा जो उसने आपको दिया है आपका है, इसको बढ़ने देने के द्वारा और परमेश्वर को करने दो। अब यदि आप यदि अधिकारी करने जा रहा है, उस व्यक्ति को लेने जा रहा है जिसने आपकी संपत्ति चुराई है, उसे न्यायालय में ले जा रहा है और आप उसके पीछे घसीटते रहें, भाई मैं नहीं जानता कि उसे ये करना चाहिए या नहीं, वो उसे वहाँ कभी नहीं ले जाएगा, उसे बस जाने दो। आप इसी प्रकार से करते हैं, शैतान को दूर होने दें, सारे संदेह और हर चीज आपके मस्तिष्क से उड़ जाएगी, तब परमेश्वर आपको उठाएगा। बढ़िया। अब ये ईस्टर का समय है और मुझे ईस्टर अच्छा लगता है, जी हाँ श्रीमान, परंतु आज ईस्टर के लिए बहुत कुछ है, उस खरगोश और बत्तख, गुलाबी चूजा और सुंदर टोपियाँ और नए नए कपड़े, ये ईस्टर नहीं है। ईस्टर पुनरुत्थान है, वापस लाना, पुनर्स्थापित करना, ये परमेश्वर का फिर वापस लाने वाला समय। आप पृथ्वी पर देखें, परमेश्वर वापस ला रहा है, क्या ला रहा है? प्रकृति को, ये ठीक बात है, वो फूलों को वापस ला रहा है, वो पत्तियों को वापस ला रहा है, वो खेत के फलों को वापस ला रहा है, ये क्या है? परमेश्वर वापस ला रहा है, ये ईस्टर है, मतलब वापस लाना। ये क्या है? एक वाक्य होता है, एक दावा, ईस्टर दावा करता है या फूल दावा करता है, उसका अधिकार है कि फिर उठे, समझे? परमेश्वर का प्राकृतिक नियम पृथ्वी को चारों ओर खींचता है और ये परमेश्वर के नियम को प्रकृति में बनाता है जो कि ईस्टर को लाता है, एक पुनरुत्थान, ये सुंदर है। सूर्य की वापसी वापस फेर लाता है जो जाड़े ने मार डाला था, जबकि ये पृथ्वी से था, परमेश्वर ने पृथ्वी को सूर्य चक्र से घुमाते हुए हटा लिया, जैसा कि हमें बताया गया, या पीछे की ओर पृथ्वी सूर्य से दूर हट गई, या पीछे को हो गई। इसी प्रकार से पापी करता है, पुत्र से दूर हट जाता है, SON, भाई ये SON सूर्य है, परंतु जब ये पृथ्वी वापस आने लगती है और जब ये वहाँ अलग होती है, मृत्यु प्रहार करती है, जाड़े, ये हर जीवित चीज जिसे मार सकती है मारती है यहाँ पर, और जब पृथ्वी वापस आती है, बीज भूमि में पड़े होते हैं, वे जमे हुए हैं, गूदा उसमें से खत्म हो गया और हर चीज चली गई, परंतु वहाँ एक छोटा सा जीवन सुरक्षित है। जैसे ही सूर्य पृथ्वी के पास अपनी स्थिति में फिर आता है, तो वहाँ एक ईस्टर होता है, एक पुनर्स्थापना, फूल फिर से आते हैं, हर चीज फिर से आती है, वो सब जो जाड़े ने मार डाला सूर्य वापस ले आता है, सब जो ठंड ने मार डाला जीवन का सूर्य वापस ले आता है। और इसलिए अब ये लोगों के साथ है, वो सब जो जाड़े की ठंड ने दिखाऊ धर्म ने मार डाला, परमेश्वर के पुत्रों ने इन अंतिम दिनों में पास आकर अपनी कलीसिया में आकर फिर से जीवन में वापस ले आया, मैं लौटा दूंगा, प्रभु ने कहा, समझे? परमेश्वर अपने फूल, अपनी पत्तियां, अपनी प्रकृति, उसके पृथ्वी के बीज वापस फेर लाता है, और इसलिए हम जानते हैं वो परमेश्वर अपने निवास स्थान को भी लौटा ले आएगा, वो अपने अदन को भी फेर लाएगा, वो हर चीज को जिसे मृत्यु ने मार डाला फेर लाएगा, ये ठीक बात है। अब केवल एक ही विधि है कि वो कभी मरी रह सकती है, कि वो एक गलत स्थान पर पड़ी हो, परंतु यदि वो सही स्थान पर आ जाए तो इसे फिर से जीवन में वापस आना ही है। इसलिए परमेश्वर, हम सही मार्ग में आ जाएं, उस पुनः स्थापन के लिए ये ठीक बात है। वो सब जो ठंड ने मार डाला, तब सूरज वापस ले आया। सूरज का वापस आना ये क्या करता है? ये लागू करता है, सुनिए, ये मृत्यु पर दबाव डालता है। जब सूर्य, वसंत का सूर्य, जब पृथ्वी की रेखा पर फिर वापस आता है, वास्तव में ये मृत्यु को बाध्य करता है कि उसके मरे हुओं को उस पुनरुत्थान में वापस कर दे, उस पुनः स्थापन के लिए, या फिर से वापस करे। ये क्या करता है? सूरज आ रहा है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर ने पृथ्वी को नियम में रखा है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। प्रकृति में हर चीज परमेश्वर के नियम में काम करती है, और फूल अपनी अवधि, बीज अपनी अवधि, उद्देश्य पूरा करता है। वो भूमि में मर जाता है और फिर वहाँ वापस लाना होता है। और अब ये यहाँ मरा पड़ा है, वहाँ कुछ नहीं है। हम यहाँ एक उजियाले को ले सकते थे इस प्रकार से और इसे जलाते, ये कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाएगा। हमारे पास इसे करने की कोई विधि नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास नियम है कि जब सूरज बीज पर पड़ता है तो ये जीवन को उस बीज में से बाहर ले आता है। मृत्यु उसे अब और रोक नहीं सकती। परमेश्वर ने अपने सारे नियम अपनी सेवा के लिए ठहराए हैं, प्राकृतिक और आत्मिक दोनों, उसके वचन के अनुसार। कोई मतलब नहीं कि स्थिति क्या है, मुझे ये अच्छा लगता है। इसके लिए यहाँ मेरे पास वचन है। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर अपने सारे नियमों को चलाए रखता है। इस पर सोचें, इसे हम अंदर रख लें, क्योंकि हम चंगाई सभा पर आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में। देखिए, परमेश्वर ने अपने सारे नियम गति में रखता है कि ये उसके वचन के अनुसार कार्य को, आप इसे समझ रहे हैं? देखिए, उसका वचन, उसके नियम, उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं। उसने सूर्य को आज्ञा दी, उसने चांद को आज्ञा दी, उसने पृथ्वी को आज्ञा दी, उसने प्रकृति को आज्ञा दी, और वे सारे एक पंक्ति में हैं, और सारे नियम एक सामंजस्य में परमेश्वर के बोले गए वचन के साथ कार्य करते हैं। और जीवन का जो नियम हम में है, वो भी हमें पुनरुत्थान में ले आएगा। इसे होना ही है, ये ना हो ये असंभव है। यही कारण है कि जीवन का वो नियम जो मसीह में था, जब वचन बोला गया था और कहा, मैं अपने पवित्र की क्षति ना होने दूंगा कि सड़ाहट को देखे, ना ही उसके प्राण को अधलोक में छोड़ूंगा। वहाँ इतना पर्याप्त समय नहीं था, वहाँ इतने शैतान नहीं थे, वहाँ इतना पर्याप्त कुछ भी नहीं था कि मसीह को उस कब्र में रखे जब तक कि उसकी देह में सड़ाहट आरंभ हो, क्योंकि परमेश्वर का नियम वचन को घटित करेगा, और परमेश्वर का नियम पवित्र आत्मा के द्वारा किसी भी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। आप समझे? चाहे स्थिति जो भी हो, अय्यूब ने कहा, यद्यपि मेरी खाल के कीड़े मेरी देह को नष्ट करें, तो भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कोई मतलब नहीं हम कितने छोटे हैं, हम कितने नीचे, कितने दूषित हम हैं, हम कितने अपवित्र हैं, हम कितने बीमार, हम कितने भी पीड़ित हैं, परमेश्वर के आत्मा की व्यवस्था उसके वचन के द्वारा उसका आज्ञा पालन करवाती है। उस मामले में ये कहने को दबाव डालती है, कहती है, इसे वापस कर। आमीन। ओ, यदि हम इस विषय में एक मिनट सोच सकें, चाहे जो स्थिति हो, इसे बाध्य करें। कोई मतलब नहीं स्थिति क्या है, परमेश्वर के वचन का नियम स्थितियों को बाध्य करता है कि उसके वचन के साथ मेल खाए। समझे? इसे होना ही है। अब यदि फूल वहाँ पड़ा हो और वो मरा हुआ हो, बीज सड़ के खत्म हो गए, भूता खत्म हो गया हो, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं, ये फिर उठता है, क्योंकि परमेश्वर ने नियम तय कर रखा है, क्योंकि इसे फिर से जी उठना है। जब अय्यूब भूमि पर लेट गया, संभवतः जब उसने यीशु को आते हुए देखा 4000 साल पहले कि वो यहाँ आता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि मानव देह कैसी दिखेगी इन 4000 वर्षों में। संभव है इतनी भी राख ना बचे कि चम्मच के सिरे पर आ जाए, परंतु अय्यूब ने कहा, तो भी मैं अपनी देह से परमेश्वर को देखूंगा, जिसे कि मैं स्वयं देखूंगा। और मत्ती 27 में बाइबल हमें बताती है कि उसकी मृत्यु के बाद और गाड़े जाने और पुनरुत्थान की बहुत सारे संत जो पृथ्वी की मिट्टी में सो गए थे मिट्टी में से जी उठे। क्यों? ये वो भविष्य दक्ता था, परमेश्वर के वचन के साथ बोल रहा था और वचन बोला जा चुका था और परमेश्वर का नियम आत्मा के द्वारा इसे जिला उठा दिया। बाइबल ने कहा वे नगर में गए और बहुतों को दिखाई पड़े, केवल यीशु ही नहीं जी उठा परंतु संत उसके संग संग जाग उठे। क्यों? भजन संहिता में ये कहा, सदा के दरवाजों तुम ऊपर हो जाओ और तुम ऊंचे हो जाओ, महिमा के प्रभु को अंदर आने दो। जब उसने मृत्यु को, नरक को, कब्र को, बीमारी को जीत लिया, तीसरे दिन जी उठा, वो ऊंचे पर चढ़ गया और बंधुआई को बांध ले गया। ये क्या था? वे जब कैद में थे उन्होंने प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा की जो अब हमारे पास है। ओ भाई, यहाँ तक कि उनके पास पवित्र आत्मा कभी नहीं था, परंतु विश्वास किया और अच्छी गवाही दी और इसके द्वारा उन्होंने सिंहों के मुंह बंद किए, आग की हिंसा को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, स्त्रियों ने अपने मरुओं को फिर से जीवित पाया बिना प्रतिज्ञा के। ओ, परंतु उन्होंने आगे देखा, भेड़ के बलिदान के नीचे जो पाप से छुड़ा नहीं सकता था वो केवल पाप को ढांप सकता था, परंतु उन्होंने ये विश्वास किया कि एक आ रहा है और उनके विश्वास के द्वारा उन प्रतीकों से आगे आमीन। उन्होंने इसका दावा किया और अड़े रहे, वे रेगिस्तानों में भटकते रहे और भेड़ की खालों में और बकरी की खालों में पीड़ित थे और वीराने में और यातनाओं में। उन लोगों ने सामने उस पुनरुत्थान को देखा और उसी से होते हुए विश्वास में मारे गए अपनी गवाहियों के साथ और ईस्टर की सुबह परमेश्वर का नियम वो वचन जो अय्यूब के द्वारा बोला गया और इन दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वे मरुओं में से जी उठे। ओ प्रभु, आप वहीं पर हैं स्थितियों की चिंता ना करते हुए। कुछ लोग इतने आपराधिक विचारों के होते हैं कि वे किसी भी न्याय का सामना नहीं करना चाहते। वो बहुत सारे लोग, ये मरना कठिन नहीं है, कोई भी अपना मानसिक संतुलन खोता है या कुछ और कुछ विवेक से करते हैं। उनमें से कुछ ने अपनी देहों को जला लिया और अपनी राख को समुद्र के चारों कोनों में फेंकवा दिया, समुद्र की चारों हवाओं में। इससे न्याय नहीं रुकता, आप वैसे ही न्याय में आएंगे। जी हाँ श्रीमान, देखिए कोई मतलब नहीं, परिस्थितियों से कोई वास्ता नहीं, आप कहीं परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, आपको उसके पास आना ही है, आपको उससे मिलना ही है। क्योंकि क्यों? उसने एक वचन बोला है और उस वचन के साथ एक नियम लगा दिया और वो नियम उसका अपना नियम है, उसका अपना जीवन इसके पीछे है। यही कारण है कि उसने स्वयं अपनी ही शपथ खाई, उससे बड़ा और कोई नहीं, समझे? उसने एक शपथ लेनी थी क्योंकि कोई भी वाचा बिना शपथ के पक्की नहीं होती और केवल एक ही विधि है कि वो कर सकता था। इसके पहले कि उसने किया, उसने इसे अपने ही द्वारा लिया और स्वयं ही वो शपथ हो गया। ओ भाई, जब परमेश्वर मनुष्य बना वो शपथ था, स्वयं को उसने शपथ बना दिया और अपनी ही मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा उसने सिद्ध कर दिया कि वो सही था। कहा, तुम इस भवन को गिरा दो, मैं फिर से इसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं व्यक्तिगत सरनाम, मैं इसे फिर से तीन दिन में उठा खड़ा करूंगा, मैं इसे उठा खड़ा करूंगा, बस नष्ट कर दो और देखो क्या होता है। क्योंकि वो परमेश्वर का नियम जानता था, वो जानता था कि ये क्या है, वो जानता था कि उसे वचन के अनुसार कार्य करना है, वो जानता था कि परमेश्वर का वचन नबी के द्वारा बोल दिया गया है और कहा, मैं अपने पवित्र जन की क्षति को सराहट से नहीं होने दूंगा। बस ये तय हो गया, ये तय हो गया। तब परमेश्वर के नियम को वचन के द्वारा कार्य करना ही है। हम एक मिनट में एक महान बात पर आने वाले हैं, समझे? समझे? जहाँ परमेश्वर के वचन का नियम उसके वचन से है। अब यदि न्यायपालिका का कोई वचन लिखती है और ये अमुक अमुक बात ऐसा ऐसा करने पर दंड है, ठीक है, अब ये न्यायपालिका का वचन है, न्यायपालिका का नियम न्यायपालिका के शब्दों को लागू करता है और परमेश्वर कुछ बोलता है और वो नियम है और पवित्र आत्मा उस नियम को लागू करता है। आमीन। विश्वासी के लिए, आप इसे करने के लिए अभिषिक्त किए गए हैं और ये विश्वासी को लेता है। आपके पास विश्वासी वाले तमगे होने चाहिए। कोई कहता है आपके पास सामर्थ है, नहीं, परंतु हमारे पास अधिकार है। यही है, सामर्थ नहीं परंतु अधिकार है। हमारे पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि कुछ नहीं करें। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा, एक साधारण पुलिस वाला लुईविल में वहाँ खड़ा था। वो मुझसे भी कद में छोटा था, एक छोटा सा व्यक्ति। उसकी टोपी उसके कानों के ऊपर थी और एक कार ओ उसकी वर्दी उस पर आधे से ज्यादा लटक रही थी। वो वहाँ सड़क पर गया, एक छोटी पिस्तौल जैसा उसके एक और उसके डंडे जैसे हाथ, छोटी सी सीटी वहाँ गया, एक जोड़ी सफेद दस्ताने पहने, और वे कारें उनमें से कुछ 350 अश्व शक्ति वाली उस सड़क पर दौड़ रही थी जैसे बिजली चमक रही हो। बस जूम जूम भाई, वो बेचारा छोटा व्यक्ति एक भी नहीं रोक सकता था, वो दौड़ते हुए खच्चर को नहीं रोक सकता था अपनी ताकत से, निश्चय ही नहीं। परंतु वो सड़क पर चलता हुआ गया, वो तमगे चमक रहे थे, उस सीटी को बजाया, हाथ को ऊपर किया, भाई 300 अश्व शक्ति की मोटर गाड़ी ने जबरदस्त घिसटते हुए ब्रेक लगाए। ये मनुष्य की शक्ति नहीं थी, ये वो अधिकार जो उसके पास था, यही बात है, यही कलीसिया है, पवित्र शोर करने वालों का झुंड जो कहलाता है। आप इसे जो भी कहना चाहें, परंतु ये अधिकार है, ये इसके पीछे अधिकार है, यही जो ये करता है। चाहे जो भी स्थिति हो, परमेश्वर का नियम उसके वचन के साथ कार्य करता है। अब ये आपके मत्सार के साथ कार्य नहीं करेगा, ये वचन के साथ कार्य करेगा, बस यही है। अब चाहे जो भी परिस्थिति हो, जैसे कि अब्राहम, जिसके लिए थोड़ी देर पहले मूल पाठ में पढ़ा, अब्राहम की पत्नी को वापस फेर लाना ही था। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, और यहाँ एक राजा ने उसे ले लिया था कि अपनी पत्नी होने के लिए ब्याह ले। अच्छा, तो वो क्या करेगा? अब्राहम को एक मिनट में मार डालेगा। यही जो अब्राहम ने कहा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि ये कहे, जब उसने देख लिया कि अबीमेलेक ने उसे पकड़ लिया, यहाँ इस फिलिस्तीन के राजा को कहा, अब मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू ये कहना, मैं तेरा भाई हूँ क्योंकि तू एक सुंदर स्त्री है, और कहा, अब यदि वो तुझे देखेगा कि तू सुंदर है, और मैं मार डाला जाऊंगा क्योंकि वो तुझे लेकर तुझसे विवाह कर लेगा। और इस प्रकार से अबीमेलेक ने उसे पकड़ लिया और उसके आदमी उसे अंदर ले आए। वो एक सुंदर स्त्री थी, प्रसंगवश वो केवल 100 वर्ष की थी, और वो परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा दिखा दिया कि वो हम सबके साथ क्या करने जा रहा है उनके द्वारा। अब जानते हैं, मैंने अपने मूल पाठ में से इस सब को लिया है और टेपों पर और आदि आदि, और परमेश्वर के वचन से इसे सिद्ध किया है, ये बिल्कुल ठीक है। उसने अब्राहम और सारा के द्वारा बता दिया कि वो इस सारी जाति के साथ क्या करने जा रहा है, ये ठीक बात है। अब वो वहाँ पर है, इसलिए अबीमेलेक उसे अपनी पत्नी बनाने जा रहा है। अबीमेलेक अब वो इसलिए तैयार है कि उसे अपनी पत्नी होने के लिए ले, और क्या? और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, सारा के द्वारा तुझे ये बालक मिलेगा, और यहाँ वो युवा पुरुष उसे ले रहा है। इधर अब्राहम भी था, आसपास 100 वर्ष का वहाँ पर। परंतु इसके द्वारा आप ध्यान दें, वहाँ परमेश्वर ने क्या कहा? जी हाँ, मैं तेरे हृदय की सच्चाई को जानता हूँ, इसलिए मैंने तुझे अपने विरोध में पाप करने से रोके रखा है, परंतु तू उस स्त्री को फेर दे, क्योंकि उसका पति मेरा भविष्य रखता है, वो तेरे लिए प्रार्थना करे, वरना तू नहीं है, मैं तुझे इस पृथ्वी पर से साफ कर दूंगा। आप वही हैं क्या? परमेश्वर का वचन ही स्थिर रहना है। सारा को कोई पुरुष नहीं छू सकता, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। सारा कलीसिया का एक प्रतीक, सच्ची कलीसिया, स्वतंत्र स्त्री, स्वतंत्र बालकों के साथ, नया जन्म पाई कलीसिया का प्रतीक, उस प्रतिज्ञा के साथ। उन्हें जो चाहे कहने दो, पवित्र शोर करने वाले धर्मांधता के साथ उन्होंने इसे पेंटिकॉस्टल से रोकना चाहा, और वे इसे कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं श्रीमान, इससे अपने हाथों को अलग रखें, बस यही है। परमेश्वर इसे लेने जा रहा है और इसके साथ कुछ करने जा रहा है, ऐसे ही निश्चित जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं इसकी आयु से होते हुए आ रहा हूँ, अब कुछ ही मिनटों में परमेश्वर मेरी सहायता करे, मैं इसे आपको सिद्ध कर दूंगा कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, वे इसे कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे, ये नस नहीं हो सकती, ये ठीक बात है। उससे अपने हाथों को हटा ले, क्यों? वहाँ से स्वाभाविक बीज आता है, स्वाभाविक वंश को आना है। यदि ये होता, यदि सारा उस दूसरे व्यक्ति से विवाह करती, तो वो स्वाभाविक वंश कभी भी उत्पन्न ना होता। इसलिए यदि परमेश्वर ने उस स्वाभाविक वंश को इतना बचा कर रखा, तो आत्मिक के लिए कितना राजसी वंश उसने सुरक्षित रखा है। शैतान उन्हें वापस कर दे, उन्हें छोड़ दे, तो उनका दम उन संस्थाओं आदि में नहीं घोट सकता, वे स्वतंत्र लोग हैं। तू उन्हें जाने दे, हाँ उन्हें छोड़ दे, उस राजसी वंश को। अब वो उन्हें फेर देने की बात करता है। अब यहाँ योएल में वो इस विषय में बातें कर रहा है। एक बार पहले भी मैंने इस पर प्रचार किया है और इसे दूसरे दृष्टिकोण से लिया है। इसे विस्तार से कभी नहीं लिया जैसे आज मैं इसे लेने पर हूँ, और इसे लेने का समय नहीं था जबकि इसे कर दिया जाना चाहिए था। परंतु परमेश्वर यहाँ बोल रहा है योएल में, परमेश्वर अपने फल के वृक्ष के लिए बोल रहा है जो उसने बोया था। परमेश्वर ने एक फल का वृक्ष बोया, उसने इसे पेंटिकॉस्टल के दिन बोया, और वो इस वृक्ष को वहाँ एक उद्देश्य के लिए लाया। उसने चाहा कि उसके फल लगें। वचन, परमेश्वर का वचन, वो एक ऐसी कलीसिया को चाहता है जो उसके वचन का पालन करे। इन सारे युगों से होते हुए हवा इसे बनाए रखने में असफल रही, यहूदी इसे बनाए रखने में असफल रहे, व्यवस्था असफल रही, सब असफल रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक वृक्ष बोया, एक वृक्ष। स्मरण रखें, अदन वाटिका में दो वृक्ष थे। हम ये जानते हैं, आप जो चाहें उन्हें पुकार सकते हैं, मेरा अपना विचार है, परंतु जो भी है, उनमें से एक दूषित वृक्ष जो दूषित हो गया था और दूसरा वाला जो दूषित नहीं हुआ था। वो जीवन का वृक्ष परमेश्वर के पास से आया, स्वर्ग से। उसने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए, परंतु इस वृक्ष से तुम खाते हो, तुम सदा जियोगे। और स्वर्गदूतों ने उस जीवन के वृक्ष की सुरक्षा रखी उस अदन वाटिका से, उसे अदन में रखा। जीवन का वो वृक्ष अदन में है। अब आत्मिक रीति पर बोल रहा हूँ। ध्यान दें, अब जब ये वृक्ष जो परमेश्वर ने बोया, इसे 9 विभिन्न प्रकार के फल उगाने थे, 9 विभिन्न प्रकार के, जिसका अर्थ 9 आत्मिक वरदान, आत्मा के 9 फल, 9 आत्मिक वरदानों के साथ। ये परमेश्वर का वृक्ष था, उसने इसे पृथ्वी पर पेंतिकोस्तल के दिन बोया। अब जरा रुकें, समय सदा सीमित रहता है। मैं यहाँ थोड़े से वचन छोड़ने जा रहा हूँ और यहाँ भजन संहिता 1 पर आ रहा हूँ। दाऊद ने ये वृक्ष देखा बहुत पहले, उसके आनंद भरे गीतों को लिखने के लिए। ये पहली चीज जिसके विषय में लिखा, उसने इस वृक्ष को देखा और ये बहते हुए जल के स्रोतों के पास लगाया गया। ये वृक्ष, वो उस वृक्ष के समान होगा, परमेश्वर का वृक्ष जो बहती हुई नदियों, बहुवचन, नदियों के जल, एक वचन, के किनारे बोया, कहाँ बोया गया। न कि एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन आदि आदि, नहीं नहीं, ओ, एक जल की नदियाँ, 9 आत्मिक वरदान उसी आत्मा के द्वारा, आत्मा के 9 फल एक ही सोते से आ रहे हैं। वो उस वृक्ष के समान होगा जो जल की नदियों के किनारे बोया गया। दाऊद ने इसे देखा और वो बोला, धन्य है वो पुरुष। ध्यान दें, उसने कहा वो नहीं मर सकता, उसकी पत्तियां मुरझाएंगी नहीं। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, वे क्या करते हैं, वे उस वृक्ष को कभी नहीं मारेंगे। क्यों? ये जहाँ ये बोया गया है, यही जो वो करता है। ये जहाँ ये बोया गया, वो बहती हुई नदियों के किनारे बोया गया। अब ध्यान दें, दाऊद ने कहा उसकी जड़ नहीं सूखेगी। अब जानते हैं, आप एक वृक्ष को लेंगे, बड़े पुराने पेड़ को। जब मैं एक लड़का था, मैं बाहर जाया करता था, और हम लड़के थे, हम बाहर जाया करते थे, और एक बड़े से पेड़ हुआ करता था, और हम उसके नीचे बैठा करते थे, बड़ा पुराना बीच का पेड़, और हवाएं चलती, और मैं आश्चर्य करता, कुछ ऐसा प्रतीत होता उसकी चोटी पर, इतना ऐसा लगता ये ऊपर की चीजों को उड़ा देगा। परंतु आप जानिए, हर बार हवा पेड़ पर चलती, ये वृक्ष को हिला देती और ये जड़ों को ढीला कर देता, ताकि वे थोड़ा गहरा खोद सके और अच्छी पकड़ कर सके। और इसी प्रकार से उपहास, हंसना, मसीहों का उपहास उड़ाना, ये क्या करता है? परेशानियां मसीहों को हिलाती हैं, ताकि और प्रार्थनाएं करें, नीचे गहराई में जाएं, अच्छी पकड़ बना लें, ताकि तूफान में स्थिर रह सकें। अब यदि मनुष्य ऐसी जगह पर लगाया जाए जैसे नदी के किनारे, जहां वसंत, 9 भिन्न प्रकार के वसंत उसे खिला रहे हैं, ओ प्रभु, उसकी क्या ही स्थापना है। और वो मनुष्य जो नदी के किनारे लगाया गया, जल की नदी, एक जल, एक आत्मा, चंगाई के वरदान है वही आत्मा, भविष्यवाणी का वरदान वही आत्मा, सब में वही आत्मा, परंतु बहुत से वरदान, एक देने वाला। अब दाऊद ने उसे देखा और वो इस वृक्ष के पास लगाया गया। अब वो मर नहीं सकता। अब ध्यान दें, क्यों? उसके पास उसकी जड़ों में जीवन था, जहाँ की जड़ें या वृक्ष का जीवन जड़ों में होता है, निश्चय ही बढ़ता है और अपने फल लाता है। ठीक है, ध्यान दें, उसकी जड़ों में जीवन है कि अपनी ऋतु में फल लेकर आए। अब स्मरण रखें, ये वृक्ष अपना फल नहीं गिराएगा। अब आप एक पेड़ लें और उसे जल से दूर हटा दें। पहली बात आप जानते हैं, आपके पास एक छोटा पुराना सेब है, वे सारे गांठदार और कीड़े से खाए हुए, परंतु ये अपनी फसल को गिरा देगा। आज कलीसियाओं के साथ यही मामला है, आप उस नदी के पास से दूर हो गए, आत्मिक वरदानों से दूर हो गए, अब बस स्वाभाविक कलीसिया है और वे आत्मिक वरदानों से दूर चले गए और आत्मिक चीजों से, और उन्होंने अपने फल गिरा दिए। वे क्या करते हैं? वे लोग विश्वासी हैं, संसार के साथ रहते हैं, संसार का सब व्यवहार करते हैं, चोरी, धोखा, झूठ, धूम्रपान, जुआ खेलने की दावतें, कलीसियाओं में की प्रचारक का भुगतान करें और सब कुछ, सूप की दावत, नाच, समझे, उन्होंने अपने फल गिरा दिए। ये संसार के समान है, अविश्वासी देखते और कहते हैं इस व्यक्ति और मुझ में कोई अंतर नहीं है। रूस में साम्यवाद के उठने का यही कारण था, यही कारण है कि उन्होंने कैथोलिक आराधनालय जला दिए। और वहाँ नीचे मेक्सिको में जब मैं वहाँ पर था और उन चूने के गड्ढों को देखा जहाँ वे स्थान जहाँ उन्होंने अपने उन बालकों को जलाया था, जहाँ वे ननों के बालक हुए, यहाँ तक कि मानव देह, पूरे बड़े मनुष्य की देह वहाँ पर थी उन चूने के गड्ढों में। वे क्या करेंगे? उन्होंने अपनी फसल गिरा दी, देखिए, और परमेश्वर ने उन्हें वृक्ष से छटक दिया। कुल मिलाकर यही था, समझे, परंतु एक मनुष्य जो लगाया गया है, हटाया हुआ नहीं, परंतु नदियों के जल के पास लगाया गया है, वो अपना फल लाएगा। ध्यान दें, अपनी ही, अपना फल अपनी ऋतु में। क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? भजन संहिता 1, धन्य है वो पुरुष जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। वो उस वृक्ष के समान है जो जल की नदियों के किनारे लगाया गया, वो अपना फल अपनी ऋतु में लाएगा, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए, ध्यान दें, अधर्मी ऐसा नहीं होता और वो उसके साथ न्याय में खड़ा ना होगा। देखा, अब वो अपना फल अपने ऋतु में लाएगा। ध्यान दें, प्रत्येक उसका, वहाँ व्यक्तिगत सर्वनाम, ये उसका फल, परमेश्वर का फल ऋतु में, जो कि भविष्यद्वक्ता ला रहा है, ये भविष्यद्वक्ता की ऋतु है। परमेश्वर का फल परमेश्वर के समय में भविष्यद्वक्ता के ऋतु के द्वारा, समझे, वो अपना फल अपने ऋतु में लाएगा। देखिए, यदि वहाँ दो, उसका नहीं, उसका लाएगा, परमेश्वर का फल ऋतु में, जिसके लिए संदेशवाहक आने के लिए ठहराया हुआ है, वो उन्हें लाएगा। अब स्मरण रखें, वो संदेशवाहक जो परमेश्वर का फल लेकर आता है, उसे परमेश्वर की ऋतु में लाएगा, लाने वाले की ऋतु में, समझे, वो उसका फल उसकी ऋतु में लाएगा, और वो मुरझा नहीं सकता। क्यों? उसके पहले से ठहराए हुए फल वहाँ हैं, ये उसे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ठहराया हुआ है। अब इफिसियों 5:1-5, बल्कि इसने कहा, मसीह यीशु के स्वर्गीय स्थानों में एक साथ मिलकर बैठे हैं। क्या घटित हुआ? उसने कहा, परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान से हमें परमेश्वर के लेपालक बालक होने के लिए ठहराया यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा हर चीज को पहले से ठहराया, जो अपने ही बारी में घटित होगी, उसके पूर्व ज्ञान से वो इसे पहले से देख लेता है, इसलिए आरंभ में वो अंत बता सका। इसलिए ये पहले से ठहराया हुआ फल है। इस पेड़ की जड़ और वृक्ष मुरझा नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से ही ठहराया हुआ फल रखता है। अब ये वो वृक्ष है जिसके विषय में योएल यहाँ पर बोल रहा है। देखिए, ये मर नहीं सकता, कीड़े से खा गए, परंतु ये मर नहीं सकता। इसकी जड़ में पहले से ठहराया हुआ सत्य है, इसके पास परमेश्वर का वचन है, इस पेड़ पर हुआ, और ये पेड़ वो पेड़ है, केवल एक ही मार्ग, ये अदन की वाटिका में लगाया गया था। स्त्री के द्वारा सारे वृक्ष मर गए, हम सब स्त्री के द्वारा मरते हैं, जन्म के द्वारा हम सब मरते हैं, परंतु मृत्यु स्त्री के द्वारा आई, स्त्री के द्वारा इस जन्म के लिए, ठीक है, तो फिर पाप के कारण इसे मरना ही है, परंतु वो जन्म, नया जन्म जो मसीह के द्वारा आता है, नहीं मर सकते। ये वो वृक्ष है और दूसरा वृक्ष, समझे, और ये वृक्ष यद्यपि इसे सताया गया, उपहास उड़ाया गया, बिल्कुल आरंभ अदन की वाटिका से ही, ये नहीं मर सकता, ये ठहराया हुआ है। लाठी चलाई गई, पीटा गया और सब कुछ किया गया, और क्या हुआ? ये नहीं मर सकता, उसका वो नहीं मरेगा, वो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने में परमेश्वर का पहले से ठहराया हुआ वचन थामे हुए है। इसे आना ही है, क्योंकि उसका फल उसके अपने मौसम में पहले से ठहराई हुई ऋतु, इससे कोई मतलब नहीं। योएल ने उनमें से प्रत्येक को देखा कि नीचे तक खा लिया गया, परंतु उसने कहा, मैं उसे लौटा ले आऊंगा, प्रभु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का पहले से ठहराया हुआ ये उस वृक्ष की जड़ों में रखा है, इसे आना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का पहले से ठहराया हुआ वचन थामे है और ओ क्या ही वृक्ष है ये वृक्ष ये वहाँ पीछे अदर में बढ़ना आरंभ हो गया था। क्या हुआ? वो केन के बालकों का झुंड आ गया, कुछ कीड़े आ गए और इसे तने तक खा गए और परमेश्वर ने इसे एक फसल ले ली और इसे नाव में रख दिया और इसे निकाल कर ले गया। ठीक है, इस सब में होते हुए ये उसी प्रकार से रहा न्याय के प्रणाली में से होते हुए और आगे इसराइल और फिर पेंतिकोस्त पर जहाँ कलीसिया दुल्हन वृक्ष के लिए उसने पेंतिकोस्त पर एक क्रम में रखा वो वृक्ष जो उसके फल ऋतु में लाएगा पहले से ठहराया हुआ था। अब अच्छा चल रहा है, फल अच्छे आ रहे हैं, ये पेंतिकोस्त के दिन पर खिल गए। आइए देखें पेंतिकोस्त के दिन पर क्या हुआ। यीशु ने कहा वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया। अब देखें कि उस दिन ये कैसे आरंभ हुआ। पेंतिकोस्त के दिन पुनरुत्थान के कुछ दिनों के बाद ईस्टर के 50 दिनों बाद वहाँ एक स्वर्ग से तेज आंधी आई। अब आज हम इसे भिन्न बनाते हैं। सेवक खड़े होकर और लेता है और कहता है मैं तुम्हारा नाम पुस्तक में लिखूंगा, समझे? या कुछ स्नातक अपने गोल घूमे कालरों के साथ कहा यहाँ आकर कोशर रोटी लो और तब तुम इस कलीसिया के सदस्य बन जाओगे, क्या ये विचित्र नहीं? सेवक कहता है आकर हमारे झुंड में शामिल हो जाओ। क्यों? वे दोनों गलत हैं। पेंतिकोस्त के दिन वहाँ स्वर्ग से आया, न कि प्रचार मंच के मार्ग से, स्वर्ग से। एक क्या? एक याजक? नहीं। एक सेवक? नहीं। ये क्या था? एक बड़ी आंधी का सा शब्द और जहाँ वे बैठे थे भर गया। फटती हुई जीभें उन पर आ ठहरी, लड़खड़ाती जुबानें, वे बात ना कर सके। वे महिमा से इतने भरे हुए थे, पवित्र आत्मा उनमें भर गया, बाहर सड़कों पर निकल गए बड़बड़ाते हुए। इस प्रकार का व्यवहार और यहाँ तक कि सम्मानित मंडली वहाँ खड़ी हुई बोली भाई ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं, ये सब पिए हुए हैं। इन पुरुषों और स्त्रियों को देखो कैसे ये लोग लड़खड़ा रहे हैं और चल रहा है। अब ये पवित्र आत्मा यूं कहता है, ये वचन है। इसी प्रकार से कलीसिया संस्थागत हुई थी, संस्थागत नहीं परंतु अभिषिक्त हुई। दो शब्दों में बहुत अंतर है, ध्यान दे, वे वहाँ थे। अब आप जानते हैं कि क्या आप कैथोलिक लोगों, वो धन्य कुमारी मरियम उनके साथ थी। जी हाँ, जब यदि परमेश्वर मरियम को बिना पवित्र आत्मा पाए स्वर्ग में नहीं आने देगा तो फिर आप वहाँ कैसे पहुँचने वाले हैं इसमें कमी के साथ। अब जरा इस पर सोचें, ये ठीक बात है। मरियम उन्हीं के बीच में थी, उसने वहाँ तब तक प्रतीक्षा की, उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा और घमंड ना खो दिया, पवित्र आत्मा से भर गई और यहाँ वे मदिरा पीने वालों जैसे व्यवहार करते हुए आए। बाइबल ने कहा उन्होंने किया, उन्होंने कहा ये सब नई मदिरा के नशे में हैं। परंतु पतरस उस सेवक झुंड का वक्ता खड़ा हुआ और बोला ये लोग नए नशे में नहीं हैं, जैसा तुम समझ रहे हो। देखो अभी तो दिन का तीसरा घंटा है, परंतु ये वो है जो कि योएल नबी के द्वारा बोला गया जो मैं आज पढ़ रहा हूँ। ये ऐसा होगा अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और मैं आकाश में आश्चर्यजनक चीजें दिखाऊंगा और पृथ्वी पर चिन्ह, और ऐसा होगा जो भी प्रभु का नाम पुकारेगा बच जाएगा। अब पतरस ने पेंतिकोस्त पर प्रचार किया उस भविष्यवक्ता के अनुसार जिसके विषय में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, इस पेड़ को लगा रहा हूँ, यही जहाँ उसने इसे लगाया। ओ ये अच्छा हो गया, वे बाहर निकल गए और आत्मिक वरदान पाए, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने प्रचार किया, वे जेल में डाले गए, वे वचन के कारण दुख उठाने की इच्छा रखते थे। यदि आप किसी राष्ट्र में जाएं जो ढीला ढाला तो आप अपने को अच्छा अमेरिकन नहीं बना पाएंगे। यदि आप वहाँ गए, यदि अब आप जापान जा रहे हैं तो आप रेखा से पीछे रह गए। कहें सुनिए मैं आपके लिए हूँ, आप जानिए कि मैं आपके लिए हूँ, परंतु मैं दूसरी ओर हूँ, आप विश्वासघाती हैं, आपको गोली मार देनी चाहिए। ये ठीक बात है, आप एक विश्वासघाती हैं निश्चय ही। और तब ये इसी प्रकार से है, वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को जानता है और किसी संस्था के कारण समझौता करेगा क्योंकि वे उसे बताते हैं कि उसे ये इस प्रकार से करना है, ये विश्वासघात है, ठीक है। परंतु ये मनुष्य विश्वासी घाती नहीं, वे चिंता नहीं करते कि कितना, वे कैसे चलते हैं, उनकी कलीसिया का क्या चलन था, चीखना और रोना, चिल्लाना, भाषाओं में बड़बड़ाना, ऐसा प्रतीत होता है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और समझ न सके। वे लोग वहाँ बाहर दूसरे देशों में हस्तगण और दूसरी भाषाओं वाले सुनने लगे कि वे क्या कह रहे हैं, वे नहीं जानते थे कि ये क्या कह रहे हैं, वे बड़बड़ा रहे थे, परंतु बाहर दूसरे लोग इसे समझ गए और उन्होंने कहा निश्चय ही ये लोग नशे में हैं। परंतु पतरस ने कहा वे नशे में नहीं हैं, परंतु ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं। इसलिए हर कोई उनमें शहीद होने को गए सिवाय यूहन्ना के, और उसे तेल के कड़ाहों में 24 घंटे तक जलाया गया, और वे उसकी आत्मा को भी उसमें से न जला सके, और फिर वो स्वाभाविक मृत्यु से मरा। केवल एक यूहन्ना प्रकाशन वाला, अब ये ठीक बात है। अब ध्यान दे क्या घटित हुआ। इस पर परमेश्वर ने एक वृक्ष लगाया कि 9 आत्मिक वरदान ले आए, उसके आत्मा के वरदान। वही आत्मा मसीह में था, नीचे कलीसिया पर उतर कर आया, जिसमें अनंत जीवन था। अब आत्मा के वरदान कलीसिया में थे, और ये बढ़ रहे थे, हर जगह फल उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने विषय में नहीं सोचा, उन्होंने कुछ भी संस्थागत नहीं किया, और वे बस आगे बढ़ते रहे, और भाई थे, उनमें नहीं था। मुझे प्रसन्नता है कि वो छोटी सी चीज थी, कोई मत्सार नहीं केवल मसीह, कोई नियम नहीं केवल प्रेम, कोई पुस्तक नहीं केवल बाइबल, यही जो मैं विश्वास करता हूँ, समझे। और उन्होंने इसी प्रकार किया। ये संसार हमारा चर्च है, हर जगह। इसलिए ध्यान दें, ये लोग जब वे इसे कर रहे थे, वो कलीसिया कितनी महिमामय थी, और परमेश्वर उनके संग था, बाइबल ने कहा, और यीशु उनसे अपने ऊपर उठा लिए जाने से पहले मिला। उसने कहा, तुम सारे संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे मेरे नाम में। अब ये चिन्ह, अब आज हम किस प्रकार के चिन्हों से विश्वासी कहलाते हैं। वो पास्टर के साथ हाथ मिलाता है, वो एक कलीसिया से जुड़ा है, उसका नाम रजिस्टर में लिखा है, क्योंकि उसकी माँ का भी नाम लिखा था, आपके पिता का भी नाम उस पुस्तक में है। परंतु ये तो यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा, ये चिन्ह, ये स्वाभाविक कलीसिया। हम आत्मिक कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं, हम आत्मिक वृक्ष के विषय में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम उन दो वृक्षों को लेंगे, समझे, एक आत्मिक वृक्ष। यीशु ने कहा, वे जो इस वृक्ष पे लटकते हैं उनके ये चिन्ह होंगे, जो इस वृक्ष से अपना जीवन प्राप्त करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वे प्रेत आत्मा को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, यदि उन्हें सांप उठाना पड़े या घातक वस्तुएं पीनी पड़े, ये उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ चिन्हों के प्रकार हैं। उसने कहा विश्वासियों के होंगे, ये आज कहाँ है। उसने संसार को एक उदाहरण दिया कि विश्वासियों के क्या चिन्ह होंगे, और उसने कहा ये बहुत ही अच्छा होगा कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट लटकाकर और समुद्र की गहराई में डाल दें, जो इनमें से किसी एक को ठोकर खिलाए, क्योंकि उनके स्वर्गदूत सदा मेरे पिता का मुंह ताकते रहते हैं जो कि स्वर्ग में है। स्वर्गदूत, अब ध्यान दें, वे वहाँ पर हैं, और वृक्ष बोया गया था, ये महान कार्य कर रहा था। हम जानते हैं कि वे हर कहीं गए, प्रभु क्यों, पेंतेकुस्त के दिन 3000 प्राण मिल गए, बपतिस्मा लिया और कलीसिया में गए, और क्या ही शानदार बड़ी उनकी संगति थी, और हर कोई, किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, हर कोई दयालु हृदय का था, और एक दूसरे के साथ वे सब एक बड़ा परिवार थे, शानदार। और वहाँ एक छोटा पुराना गंदा दिखने वाला लालची दांतों वाला कीड़ा जो 4 स्थितियों में रहता है, जैसे कि योएल ने उसे देखा, 4 स्थितियों वाला कीड़ा जो नष्ट करता है, आकर उसने परमेश्वर के सुंदर वृक्ष को नष्ट कर दिया। जरा इस पर सोचे। अब मैं योएल के उसमें से कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, उसने क्या कहा, योएल का पहला अध्याय। पहली बात, यहाँ 4 प्रकार के कीड़े हैं, परंतु वास्तव में वो एक ही कीड़ा है। ये एक कीड़ा 4 विभिन्न स्थितियों में है। अब ध्यान दें, ये छोटा पुराना कीड़ा आता है इस महान सुंदर परमेश्वर के वृक्ष के पास, जो कि कलीसिया था। पहला गाजाम नाम का था, ये छोटा सा है। ये छोटा सा कीड़ा, इसने क्या किया, गाजाम ने ये वृक्ष के फल को नष्ट करने को आया, ये पहली चीज थी। अब आइए इतिहास में चलते हैं और देखें पहली चीज क्या थी। सम्मानित लोगों का झुंड साधारण लोगों में घुस गया, और उन्होंने कहा ये अच्छा है कि तुम लोग बीमारों को चंगा करते हो, और तुम लोग इन चीजों को कर सकते हो, ये बहुत ही शानदार है, यानी अद्भुत है। इसलिए आप देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम बड़े दर्जे के लोगों में करें, कि इसे समझें, अच्छे वर्ग के लोग, मेयर, न्यायी और आदि आदि, और नगर के सम्मानित वर्ग, और जब तक आप इस प्रकार से कर रहे हैं वे कभी आपके पास नहीं आएंगे, समझे, वे आप लोगों से डरते हैं। कोई कहता है वे अब भी, किसी ने कहा, मैं समझता हूँ कि ये सही बात है, ये ठीक है, वे पवित्र आत्मा से डरते हैं। मुझे क्षमा करें, मैं एक गाना गाया करता हूँ, ये पुराना है, आपने कभी सुना है, पुराने समय का धर्म, किसी ने ये गाना सुना है। वर्षों पहले मैं इसे छोटे गाने को ऐसे गाता था, मैंने कहा ये पुराने समय का पवित्र आत्मा और शैतान इसके पास नहीं जाएगा, यही कारण है कि लोग इससे डरते हैं। परंतु मेरे लिए बहुत भला है। ये इतना अच्छा है, मैं दूसरा नहीं चाहता। ये मुझसे मेरे भाई से प्रेम करवाता है और ये छिपी बातों को बाहर लाता है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये ठीक बात है। ये आपसे झूठ बोलना बंद करवाएगा। जब आप मर रहे होंगे, ये आपको बचा लेगा। ये शैतान को भगाना आरंभ कर देगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये ठीक बात है। यही कारण है कि लोग अब इसे नहीं चाहते। अब ये परमेश्वर है। उन्होंने कहा, ये मनुष्य, कलीसिया, बड़ी सम्मानित कलीसिया, कहा तुम हमें बताने आए हो हम कौन हैं? मैं आपको बता दूं, हम डॉक्टर, पीएचडी, एलएल, क्यूयूएस, और मेरा ये सब, ये क्या, क्यों मैं महायाजक, मैं ये या वो कुछ, और तुम मुझे बताने आए हो? क्यों? तू तो पापों में जन्मा है, तू अवैध संतान को छोड़ और कुछ नहीं। तेरी माँ ने तुझे अपने में रखा, इसके पहले तेरे पिता ने कभी विवाह किया? उसने कहा, कौन मुझ पर पाप का दोष लगाता है? देखा, कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? ठीक है, पाप परमेश्वर का वचन का अविश्वास करना है। दूसरे शब्दों में उसने कहा, मुझे दिखाओ मैं कहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रहा हूँ पूरी रीति से, जहाँ की इसे होना चाहिए। मुझे वचन में दिखाओ मेरे दिन कहाँ हैं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो तुम मेरा विश्वास ना करो। कहा, तुम इसका दावा करते हो, अब देखें तुम इसे करते हो? ओ प्रभु। इसके बाद से उन्होंने उसे कुछ नहीं पूछा। देखा, उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। जैसे शैतान उसके पास उड़कर पहुंचा, मैंने कहा कि उसने सोचा वो बस कूदा जो भी हो, परंतु उसने पाया कि उसमें उस तार में लाखों वोल्ट बिजली है। वो बहुत जल्द कूदकर उससे दूर हट गया, क्योंकि वो उसे संभाल ना सका, और निश्चय ही ये बात थी। इसलिए ये छोटी गजाम टिड्डी आसपास आई कि फलों को खा ले। मेरे पास फलों पर दो पन्ने हैं, मैं इनमें से कुछ को पढ़ना चाहता हूँ। पहली बात, पहला फल उसने खा लिया, भाईचारे की प्रीति थी। ये ठीक बात है। ये उनमें से एक बात थी जिसने कलीसिया को वही मार डाला, इस भाइयों के प्रेम पर। जी हाँ श्रीमान। तब अगला फल जो उसने वृक्ष से लिया, स्मरण रखें, प्रेम वृक्ष का पहला फल था। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, पवित्र आत्मा में। ये ठीक बात है। अब नौ आत्मिक वरदान वृक्ष के नौ फलों के साथ, और आदि आदि। ठीक है, अब पहला उस पेड़ का फल खाना है। अब एक बड़े वृक्ष का चित्रण करें। परमेश्वर के वृक्ष का ये नौ आत्मिक वरदानों को रखता है। वे बीमारों को चंगा कर रहे हैं, वे अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, वे प्रेत आत्माओं को निकाल रहे हैं, वे महान कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का बिना मिलावट वाला वचन प्रचार कर रहे हैं, उनका किसी नामधारी से गठबंधन नहीं है, वे स्वतंत्र हैं, एक महान कार्य कर रहे हैं। इसलिए वही पुराना शैतान आया, सामने की ओर दो सींग निकाले बैठा है, टिड्डी के समान आप जानते हैं, और उसके पुराने लालची दांत, ये उसका पहला गाजाम, वो आता है और भाईचारे की प्रीति को खा जाता है। उसने कहा, तुम्हें मालूम है उसने अमुक ने ऐसा किया, वहाँ अमुक कलीसिया में, मैं ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करूंगा, समझे? ये यहाँ पर है पहली बात। अगला, वो विश्वास के फल को खाता है, वचन में विश्वास। अब देखिए, आप कैसे जानते हैं कि ये वचन है? इसका कितनी ही बार अनुवाद हो चुका है, वो छोटा शैतान अब भी इसे खा रहा है। ठीक है, उस वचन का बहुत बार अनुवाद हो चुका है, वो ये वो और आदि आदि, वो ये सब है, समझे? अब ये दूसरा फल है जो उसने खा लिया, उद्धार का आनंद। तुम लोग बहुत शोर करते हो, ओ प्रभु, ओ भाई बहनों, आप ये कैसे प्रचार कर सकते हैं? एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, नहीं ये नहीं, वो एक पुराना पुरुष था, मैं विश्वास करता हूँ, वो, मैं आशा करता हूँ कि वो यहाँ है, वो दूसरी कलीसिया से है। परंतु उसने मुझसे कहा, बोला, मैं आपको सुनने के लिए उस दिन वहाँ पर गया था, मैं आपको सुन नहीं सका क्योंकि वे लोग चिल्ला रहे थे। मैंने कहा, यदि वे, बोला, आप संसार में कैसे प्रचार कर सकते हैं? मैंने कहा, यदि उन्होंने इसका आनंद नहीं लिया तो मैं वहाँ प्रचार नहीं करूँगा। ये ठीक बात है। जी हाँ, मैं करता था। मेरा एक मित्र जिम पूल और मैं, हमारे पास एक पुराना कुत्ता हुआ करता था, हम उसे फ्रिट्स कहा करते थे, और ये पुराना कुत्ता किसी भी चीज में, लठों आदि में घुस जाता, उस स्कंक जानवर को छोड़। वो स्कंक जानवर से डरता था क्योंकि उसकी बदबू ऐसी थी। मैं उसे झाड़ी के ढेर के नीचे स्कंक के पास ले जाता, मुझे केवल करना होता था कि उसे थोड़ा सा पुचकारूं, कहता उसे ढूंढ, बच्चे, वो जाकर उसे स्कंक को ले आता, क्योंकि मैं उसे पुचकारता कहते हुए, उसे ढूंढ। भाई, ये जो हम पूरी बदबू, जो मैं जानता हूँ शैतान है, इसलिए जब मैं शब्द को निकालता हूँ और कोई अमीन कहता है, ये सिख, उसे ढूंढ लड़के, और हम पाते हैं, हम उस पेड़ के पास ले जाएंगे, इसलिए हम पाते कि वो उसके आनंद को समाप्त कर देता। आप जानते हैं दाऊद ने एक बार अपने उद्धार का आनंद खो दिया। उसने अपना उद्धार नहीं खोया परंतु उसका आनंद खो दिया। वो रोया, प्रभु मुझे मेरे उद्धार का आनंद वापस दे दे। समझे आनंद। इसलिए ये छोटा पुराने गाजम ने आनंद का फल खाना आरंभ कर दिया। अब इधर देखिए, आप लोग बहुत शोर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सब चिल्लाना और अमीन कहना और ये चिल्लाना ये निरर्थक है, इससे कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात आप जानते हैं, वो एक बड़े मुर्दा घर में बैठा है। आप समझे, वहाँ बैठे हैं, सब मरे हुए हैं। उनमें से कुछ में शव सजोने का तरल भरा हुआ है, जो कि शिक्षा कहलाती है। उस मत्सार के उनके अंदर नसों में भर दिया गया है, जहाँ की परमेश्वर का आत्मा दौड़ना चाहिए था, जहाँ कलीसिया का पुराना मत्सार भरा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं वे बर्फीले ठंडे और मरे हुए हैं, आत्मिक थर्मामीटर में 0 से 90 डिग्री नीचे। जी हाँ, कोई कहता है आमीन, हर कोई अपनी गर्दन घुमाता है जैसे कि एक प्रकार की बत्तख हो या कुछ और जानना चाहते हैं। इसने क्या कहा, ये लज्जा की बात है, जबकि परमेश्वर के आत्मा को आनंद करना, शांति, प्रेम होना चाहिए। परंतु इस छोटे कीड़े ने इसे खाना आरंभ कर दिया, इसने सारा आनंद खा लिया। और फिर वृक्ष पर अगला फल शांति, दिमाग की शांति, ये जानते हुए कि आप बचे हुए हैं। वे आपको बताते हैं भाई, यदि आप हमारे मत्सार को रट लेंगे तो आप बच जाएंगे, यदि आप मेरी कलीसिया में सदस्य हो जाएंगे आप बच जाएंगे। भाई अब ये वाला कहता है, यदि आप वहाँ जाते हैं तो आप बचे हुए नहीं हैं। बचने के लिए आपको हमारी कलीसिया का सदस्य होना पड़ेगा। आपको कहना होगा मरियम की जय, आपका नाम इस पुस्तक में होना ही चाहिए, आपको करना ही है। ओ, ये आपका सारा आनंद बाहर निकाल देगा। ये परमेश्वर का वृक्ष नहीं है। आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं, ये मिलावट है। आप खच्चर के विषय में मेरी कहानी जानते हैं, वो मिलावटी है, वो नहीं जानता कि उसका पिता माता कौन है, कोई भी कौन था। समझे, वो एक दोगला है, परंतु अच्छे वंश का घोड़ा वो जानता है उसके पिता और माता कौन थे पीढ़ियों में से होते हुए। और वास्तविक वंश वाला मसीह भी, जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो जानता है कि ये पेंतिकॉस्त के दिन उतरा, वो जानता है कि वो कहाँ है। वो पीछे अपने वंश को ढूंढ सकता है, उसकी वंशावली, उसकी पहली शुरुआत। पत्रस के पास था उन राष्ट्रों और जातियों में से होते हुए, ये उनके पास था। एक अच्छा वंशावली वाला मसीह जानता है कि वो कहाँ से आया है। कहते हैं मैं लूथरन हूँ, ओ मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, ओ तुम दोगले हो, आप क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं हो। भाई आप कहते हो आप क्या हैं, नया जन्म पाए हुए। किससे नया जन्म पाए हुए? परमेश्वर के आत्मा से। इसलिए आप दोगले नहीं हैं, आप सही में जन्मे हैं, किसी कलीसिया के मत्सार से नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा से। परमेश्वर आप में वास करता है। ध्यान दें, इस छोटे से कीड़े ने खाना आरंभ कर दिया, इसलिए इसने दिमाग की सारी शांति खा डाली। ओ फिर और यहाँ मेरे पास सारे फलों के लिए पन्ने भरे हुए हैं। उसने क्या किया, तभी ये छोटा कीड़ा मर गया और वो टिड्डी बन गया। ये अगली स्थिति, एक टिड्डी था, अब टिड्डी क्या करती है, टिड्डी पत्तियों को खाती है। ये ठीक बात है, एक टिड्डी पत्तों को ले लेती है। जो गाजाम ने छोड़ा, उसने पत्तियों को छोड़ा, उसने वृक्ष के सारे फल खा लिए। फिर क्या लिया, टिड्डी ने वो खा लिया जो गाजाम ने छोड़ा। जब इसने क्या किया, इस गाजाम ने क्या किया, पत्तियों को नष्ट कर दिया। पत्तियां किस लिए हैं, दिव्य संगति को नष्ट कर दिया। ये ठीक बात है। अब वो प्रेस्बिटेरियन है, हमारा उससे कोई भी सरोकार नहीं होगा। वो नाजरीन है, वो पेंटिकॉस्टल है, वो ये या कुछ और, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारे झुंड का नहीं है। बीमारों की चंगाई के लिए यहाँ एक सभा है, वो हमारी कलीसिया तो इसमें विश्वास तक नहीं करती। समझे, वो इस स्थिति में है। वो छोटी टिड्डी क्या करेगी, वो सारी संगतियों को समाप्त कर देती है। ये ठीक बात है, सारी संगति ले लेती है। संगति क्या है, पत्तियां क्या करती हैं, ठंडक बनाती हैं, जहां चिड़ियां पत्तियों के नीचे उड़ती हैं और हांफती हुई ठंडक पाती हैं। यहाँ फिर से आपका वृक्ष है और वो उस पेड़ के समान होगा जो लगाया गया है। समझे, ठीक है, जहाँ लोग आ सकते हैं और पवित्र आत्मा की संगति में बैठते हैं, थोड़ा सा ठंडे होते हैं। आप सब घबराए हुए हैं और नहीं जानते कि क्या हुआ, चाहे आप मरे, चाहे आप बचे हुए हैं या नहीं है। आप नहीं जानते कि ये कलीसिया ठीक है कि नहीं, ये सही है। बस इस वृक्ष के तले आ जाओ, इस पर कुछ पत्ते हैं, वहाँ नीचे बैठ गए और स्वर्ग से हवा बहने दो, तेज आंधी के समान उन पत्तों में से आप जानते हैं आरंभ, और वो थोड़ा थोड़ा ठंडा करना शुरू कर देता है। कहते हैं ओ मैं वहाँ जा रहा हूँ, उन शोर करने वालों को बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। बस थोड़े समय के लिए बैठा और आप ठंडे हो गए, ये ठीक बात है। आप ये अपने में नहीं कर सकते, कारण क्या कारण है, टिड्डी ने सब खा लिया है। नीचे ही सारी पत्तियां खाली हैं, वैसे ही हो सकता है जैसे बाहर धूप में बैठे हैं, इसलिए आप वहाँ नहीं हैं, वहाँ पर ठंडक नहीं है। ठीक है, अब इसलिए वहाँ, परंतु आप जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बाइबल ने कहा है कि पहले से ठहराई हुई कलीसिया, परमेश्वर के पहले से ठहराए हुए पुत्र, वे क्या करते हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। वो क्या है? ठंडक, आराम, घर जैसा अनुभव, आमीन। जहाँ हर कोई टक्सिडो सूट पहने हुए है, और अगला व्यक्ति इस प्रकार का है, और उनमें से कुछ ये, ओह देखो उसके बालों में वो पिक्चर कभी नहीं रहा, क्या वो भयानक सी नहीं लगती? उसके पास ईस्टर वाला विशेष पहनावा भी नहीं है। अब ये चाहे जो है, क्या है आप जानते हो, कभी, जी हाँ, ईस्टर का पहनावा ये लगभग ठीक है। वहाँ पीछे बैठे हैं, बढ़ रहे हैं, समझे, ईस्टर का वो तक नहीं है, क्योंकि भाई उसके उसको देखो, वही पुराना सूट जो पिछले वर्ष पहना था। अच्छा, आप उसके विषय में क्या जानते हो? आप वहाँ अच्छा अनुभव नहीं करते। मैंने उस दिन उस स्त्री से कहा, तू गरीब बेचारी स्त्री, तू अब एक बड़े सम्मानित कलीसिया से है। उसने कहा, वो कैंसर से मर रही है, अपने लिए प्रार्थना करवाने गई थी। यहाँ भाई रॉबर्टसन है, हमारे एक ट्रस्टी, मुझे वहाँ भेजा, वो बेचारी वहाँ बैठी थी, कैंसर से मर रही थी। और उसने कहा, मैंने कहा, क्या आप एक मसीही है? उसने कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानती कि क्या कहते हैं। कहा, मैंने किसी कलीसिया में गई थी, कहा, और उसने रोना आरंभ कर दिया। मैंने कहा, क्या बात है? बोली, मैं सही से कपड़े नहीं पहन सकी। बोली, उन्होंने मेरी ओर देखा, ओ आप हैं, समझे, आप बेचैन हैं, समझे। परंतु बाइबल ने कहा कि हम लोग अपने को एक साथ मिलकर स्वर्गीय स्थान में एकत्र करते हैं। ओ प्रभु, क्या सब एक से हैं? क्यों, मैं आपको बताऊं कि ये क्या करेगा? मैं आपको बनाऊंगा, मैं कुल मिलाकर एक जोड़ा बनाऊंगा और एक टुक्सिडो सूट, और वे एक दूसरे से गले में हाथ डालेंगे और एक दूसरे को भाई कहेंगे, निश्चय ही होंगे। मैं पुराना सूती छापे वाला बनाऊंगी, उनके बाहों को सिल्क साटन पर डलवाऊंगी, और कहते हैं, बहन इस सुबह तुम कैसी हो? परमेश्वर की महिमा हो, ये ठीक है, ये चलेगा, ये तो आनंद, शांति, प्रेम, विश्वास परमेश्वर के वचनों में है, धैर्य, कोमलता, संयम, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत, ठंडक, समझे, यही है जो पत्तियों ने किया। परंतु पुरानी टिड्डी ने क्या किया? वो आसपास आई और उन पत्तियों को खा गई, कहा, तुम हमारे हो या आप किसी के नहीं हो। इस प्रकार से उसने आत्मा की सारी ठंडक ले ली, समझे, उसने अपने लिए मत्सार तय कर लिया। अब हमें आगे बढ़ना है, हम इस पुरानी टिड्डी पर लंबे समय तक रुक सकते हैं, परंतु इसकी तीसरी स्थिति येलेक थी। आरंभ से ही इसका नाम खराब है, येलेक। ये येलेक नाम टिड्डी क्या करती है? ये छाल में घुस जाती है, ये जीवन रेखा है, जी हाँ श्रीमान, ये छाल में घुस जाती है और ये आवरण को नष्ट कर देती है, वृक्ष के छाल को। उसका आवरण धर्म क्या है? आवरण, धर्म शब्द का यही अर्थ है, एक आवरण। इसलिए ये छोटा येलेक जब ये भक्त मंडली में घुस जाता है, ये उन सबको सम्मानित कर देता है, तब वो उनसे सारी संगति ले लेता है उस टिड्डी के रूप में, और अब वो आसपास आकर उनके धर्म को ले लेता है और इसमें से धर्म सिद्धांत बनाता है, ठीक है, और अप्रमाणित शब्दों को डालता है और अपने लिए एक धर्म तैयार करता है और कुछ लोगों का झुंड बनाता है और उन्हें एक मतसार देता है और उसी धर्म को लेता है और परमेश्वर के उस वृक्ष को नंगा कर देता है, उसी छाल को जिससे जीवन रस ऊपर पेड़ में जाता है उसे हटा देता है। ये लेक, क्या आप इस कीड़े को देखते हैं? ये सही बात है, ये येलेक आरंभ की कलीसिया में ये रोम था। पहली बात, पेंतिकोस्तल झुंड, पेंतिकोस्तल संस्थाएं नहीं, नहीं श्रीमान, कोई भी चीज जो संस्थागत है मर गई। मैं इसे वचनों के द्वारा एक मिनट में सिद्ध करूंगा, समझे, परंतु जब ये एक परंतु पेंतिकोस्तल अनुभव ये किसके लिए है? ये कैथोलिक के लिए है, और कौन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कोई भी जो इसे लेना चाहता है। परंतु आप ये सब लेना चाहते हैं, आप इसमें सदस्य नहीं बनते। मैं ब्रह्म परिवार में 53 वर्षों से हूँ और मैं कभी भी इसका परिवार का सदस्य नहीं बना। क्यों? मैं आरंभ से ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ही जन्मा हूँ। इसी प्रकार से हम मसीही हैं, इसलिए नहीं कि हम इसके सदस्य हो गए, ये एक संस्था है, हम जन्म से मसीही हैं, पवित्र आत्मा द्वारा पुनरुद्धारक होते हुए। अब ध्यान दें, अब ये छोटा येलेक अपने आप को छाल में छेद करके घुसता है। इसने क्या किया? इसने इसका धर्म लेना आरंभ कर दिया, इसका आवरण, इसकी शिक्षा इससे अलग कर दी। धर्म एक शिक्षा है, एक आवरण, किसी भी चीज को ढांकता है। यही कारण है हमारा धर्म लहू के द्वारा है, लहू, लहू में जीवन है जो वचन को ढांके रहता है, और जीवन ये लहू है, लहू धर्म है, और लहू का जीवन जो कि परिणाम लाता है। क्यों आप इसे देखते हैं? ये अंजीर के पत्तों से ढका हुआ नहीं है। एक बार आदम और हवा ने यत्न किया था, केन ने भी वही चीज की थी। क्या आपने ध्यान दिया, केन कुछ वनस्पति का जीवन लाया समझे, परंतु ये कार्य नहीं करेगा। इसने आदम और हवा के साथ कार्य नहीं किया, ये आज काम नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने इसे आरंभ में मना कर दिया तो ये अनंत के लिए मना हो गया। मनुष्य रचित मत्सार और विचार इसे कभी नहीं लेंगे, इसे तो परमेश्वर के वचन ने ही करना है और वचन लहू के द्वारा, मसीह का बलिदान। ये ठीक बात है। लोग जैसा कि भाई ने इस सुबह बोला, चिपटियां खींचना, भाई आप जानते हैं आज राष्ट्र में 19 अलग अलग कीले हैं, वे अलग अलग संस्थाएं इन्हें रखे हुए हैं और दावा कर रही हैं कि ये वास्तविक वही कील है जो उसके हाथों में थी। क्या है यदि वो वही भी थी, मैं उनके साथ कुछ नहीं करना चाहता। निश्चय ही परमेश्वर ने कोई भी चीज स्मृति चिन्ह और चिन्ह के लिए नहीं छोड़ी, उसने पवित्र आत्मा भेजा, कुछ जीवित जो नष्ट नहीं किया जा सकता। वो कील मेरी क्या भलाई करेगी और वो मूल सलीब जिस पर वो लटका था मेरा क्या भला करेगी, जरा भी नहीं। कील को नहीं जानना, क्रूस को जानना, परंतु उसको जानना जीवन है। अब इसलिए हम कीलों पर टिके हुए हैं, हम स्मृति चिन्हों पर टिके हुए हैं और हम स्थानों को पकड़े हुए हैं, और आज लोग यरूशलेम नगर में ऊपर नीचे घूम रहे हैं जगह जगह और स्मृति चिन्ह और चीजों को पकड़े बैठे हैं। इसका इन बातों से कोई मतलब नहीं, जरा भी नहीं। ये चीजें बेकार, सड़ और खत्म हो जाएंगी। रोमे में एक आराधनालय में गया, वहाँ वे सारे पादरी जो मरे उन्होंने उन्हें वहाँ नीचे वाटिका में गाड़ दिया और उनका मांस हड्डियों से छूटने दिया, और तब वे उन हड्डियों को लेकर दिनांक के साथ जोड़ देते हैं और उनकी खोपड़ी आसपास रख देते हैं, और लोग वहां आकर उन हड्डियों को रगड़ते हैं और आशीषें लेते हैं जब तक कि खोपड़ियों सफेद होकर टूट नहीं जाती। जैसे आप संत पत्रस आराधनालय में जाते हैं, पत्रस का एक पांव है, वे दवा करते हैं, वहां एक मूरत 9-10 बार चूम चूम कर खत्म हो गई, उसका दूसरा पैर ढाल कर बनाया। ऐसी निरर्थक अंधविश्वास, बस यही सब कुछ मनुष्य द्वारा शिक्षा का मत्सार। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा, परमेश्वर का जीवन कि आप में हो, न कि मूरत में। आप वही व्यक्ति हैं जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है, न कि मूरत में परंतु आप में। लोग पवित्र मूरत कहते हैं, वे पवित्र मूर्तें नहीं हैं, आप परमेश्वर की पवित्र मूरत हैं। बाइबल ने ऐसा कहा, ये ठीक बात है, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। अब इस छोटे व्यक्ति ने नष्ट करना आरंभ कर दिया। क्या नष्ट कर रहा है? ये लेख छाल में घुस गया। ध्यान दे, इसने क्या किया? छाल को नष्ट करना आरंभ कर दिया। इसने क्या किया? इसने आत्मिक कलीसिया के लिए शारीरिक कलीसिया बनाई। जी हाँ श्रीमान, इसने सत्य को ले लिया और झूठ दे दिया। अब स्मरण रखें, पत्तियां, फल गाजाम ने खा लिया, पत्तियां टिड्डी ने खा ली, अब छाल, अनावरण, वो धर्म, शिक्षा येलक ने खा लिया। बाइबल के बाहर से पहली शिक्षा कहां से आई? आप इतिहासकारों, आप जानते हैं ये कहां से आई है? रोम से। ये ठीक वहीं से आरंभ हुई, वहां उन्होंने धर्म सिद्धांत स्वीकार करना आरंभ कर दिए। इसी प्रकार से इरेनियस, संत मार्टिन, पॉलिकार्प और वे सारे यहुन्ना की मृत्यु के बाद परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने के लिए वो वहाँ पद्मोस टापू पर था। उन्होंने उसे तेल में 24 घंटे जलाया, वापस लाए और वो अब भी बाइबल लिख रहा था। परमेश्वर ने ठाना हुआ था कि ये बाइबल लिखी जाएगी, ये परमेश्वर का वचन है, हम इसमें से निकाल नहीं सकते या इसमें मिला दें, इसे वैसे ही रखना है जिस प्रकार से ये है वचन। ध्यान दें, जब वे वापस आए, जब परमेश्वर के ये संत उस वचन को थामे रहने का यत्न कर रहे थे, रोम बीच में आ गया और धर्म सिद्धांत स्वीकार कर लिए उसके बदले में। अब हम देखें कि उसने क्या किया, उसकी कुछ गलत शिक्षाएं जो उसने किया। पानी का बपतिस्मा जिसको उन्हें अधिकार मिला था, पत्रस ने कहा, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के प्रभाव में परमेश्वर का वचन, तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। रोम ने इसके साथ क्या किया? इसे घुमा दिया और कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। इसे मत्सार बना दिया, ना कि बाइबल शिक्षा। उसने क्या किया? ये ले खा रहा है, बजाय डुबाने के छिड़काव कर रहा है। पिता के नाम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कोई नाम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। पिता का नाम नहीं है, पुत्र का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है। जब यीशु ने कहा उन्हें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये प्रभु यीशु मसीह है, पत्रस और उन्होंने ठीक यही किया, और सबने, हर कोई जो बाइबल में था, वहाँ कोई नहीं था। मैं चुनौती देता हूँ, मेरे पास एक भी पवित्र वचन लाए या इतिहास का हिस्सा जहाँ किसी का भी यीशु मसीह को छोड़ किसी और प्रकार से बपतिस्मा हुआ हो, जब तक कि रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं हुई। वे करते हैं, याद रहे, ये टेप समस्त संसार में जाता है। मैंने सेवक गणों की मंडली को पकड़ा, उनमें से सैकड़ों को बिशप और वे सब, कहता हूँ अपने पैरों पर खड़े हो और यहाँ मेरे पास अपनी बाइबल के साथ आओ या फिर सदा के लिए शांत रहो। तब तक वे शांत रहे कि आपके सामने से पीछे चले न गए, और तब वे आपके विषय में बातें करते हैं, न कि वो साहस के आपके सामने खड़े हों। आम सभ्यता कि खड़े होकर आपके सामने बात करें, वे ये करने से डरते हैं। वे जानते हैं कि ये गलत है, परंतु यही जो येलक ने खाना आरंभ कर दिया, उस वास्तविक चीज को खाना आरंभ कर दिया। अब आप कहते हैं ये अवश्य नहीं है। जी हाँ, मैं कैसे भी बपतिस्मा लूं वो ठीक है। क्या यह है? पौलुस ने प्रेरित 19 में कहा, जब वो पौलुस ऊपर इफिसुस के किनारे से निकलकर बाइबल ने कहा, उसने कुछ चेलों को पाया। वे चेले थे, अपोलुस एक बैप्टिस्ट प्रचारक यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधीन उन्हें वचन सिखा रहा था और उनमें बहुत ही आनंद था, और पौलुस बस उनसे मिलने को गया और उनसे कहा, जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? ओ, वो बोले, मैं एक विश्वासी हूँ, परंतु ये वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि कोई पवित्र आत्मा भी होता है। उसने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? देखा, दूसरे शब्दों में तुमने कैसे बपतिस्मा लिया था? उन्होंने कहा, हमने बपतिस्मा लिया है। कहा, कैसे? उसने कहा, यूहन्ना के अधीन था। उसने कहा, वही व्यक्ति जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, क्या यह ठीक नहीं होगा? पौलुस ने कहा, नहीं, अब नहीं, नहीं। कहा, आपको फिर से बपतिस्मा लेना होगा। पौलुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया, फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथ उन पर रखे और पवित्र आत्मा उन पर आया। और पौलुस ने कहा, यदि स्वर्ग से कोई दूत, प्रचारक को तो छोड़ दो, यदि स्वर्ग दूत इस येलेक को तो छोड़ दो, यदि स्वर्ग से भी कोई दूत इसे छोड़ तुम्हें कुछ और प्रचार करे तो वह श्रापित ठहरे। ये ठीक बात है। अब देखिए ये क्या था, येलेक इसे खाने लगी, पानी में यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को खा लिया। अगली चीज जो येलेक ने की, इसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को हटा दिया, क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा पाने जा रहे हो, ये वचन पर प्रकाश डालने जा रहा है, जब तक आप ये करोगे, इसलिए उन्हें ये भिन्न करना था। अब जरा सोचें, कितने लूथरन, प्रोटेस्टेंट, कितने कैथोलिक इस प्रातः पूरी सदस्यता, वे इसे जो भी कहते हैं, पहला प्रभु भोज लेना, और वे इसे होली यूक्रिस्ट कहते हैं, लैटिन में जिसका अर्थ पवित्र आत्मा है। क्या आपने कभी देखा कि एक कैथोलिक आराधनालय के पास से निकल जाए और वो इस प्रकार से निकल जाए? क्यों? ये ईश्वर उस आराधनालय में है। ईश्वर क्या है? रोटी का वो छोटा टुकड़ा, रोटी का वो छोटा टुकड़ा गोल सूर्य देवता के समान बना हुआ है, जिसकी वे आराधना करते हैं, वहाँ वेदी पर रखा है, जहाँ पूरी रात उस पर काकरोच और चुहियाएं घूमते रहते हैं। ये मेरा परमेश्वर नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, पहला प्रभु भोज आराधनालय सदस्यता की पुष्टि है, निरर्थक। परंतु यही जो उन्होंने किया, यही जो येलेक ने किया, इसने आत्मा को हटा दिया और उन्हें रोटी का टुकड़ा दे दिया, वो रोटी जो किसी पादरी या किसी नन या किसी ने बनाई है, यही जो उन्होंने किया, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जाओ और पूछो, वापस इतिहास में देख रहे हैं और देखिए कि यदि ये सही नहीं है, और आप इस चीज को अपने गले में खिसकने दें। केवल वे कैथोलिक नहीं, परंतु तुम प्रोटेस्टेंट हो और आप में से बहुत से वही चीज। ठीक है, यही जो उन्होंने किया, ठीक है, ठीक है। तब प्रोटेस्टेंट बजाय इसके कि पवित्र आत्मा को ले, आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं, वे आकर हाथ मिलाकर सदस्य बनाते हैं। वहाँ सड़क पर और कोई नहीं था कि आकर हाथ मिलाता जब पेंतिकोस्त का दिन आया, परंतु वहाँ स्वर्ग से तेज आंधी की आवाज आई जो सारे घर में भर गई जहाँ वे बैठे थे। ये ठीक बात है। वो वहाँ पेड़ों की पत्तियों में से होकर उस छाल पर उंडेली गई। ये ठीक बात है। अब बजाय नए जन्म के, जो यीशु ने कहा एक मनुष्य को फिर से नया जन्म लेना ही चाहिए, उन्होंने कलीसिया के सदस्य बनाने को अपना लिया। आओ और सदस्य बनो, बजाय वचन के येलेक ने उन्हें मत्सार दे दिया। क्या आप नहीं देखते? इधर देखिए वो क्या कर रहा है, वो आत्मिक के लिए शारीरिक दे रहा है। क्या आप इसे देख सकते हैं? अब देखिए, अब हम कैथोलिक की लीग पर हैं, परंतु क्या आपको मालूम है ये प्रोटेस्टेंटों में भी होता हुआ आया है। आज हमारे पास प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में कहां पवित्र आत्मा का प्रदर्शन कहां है? आज हम प्रोटेस्टेंटों में पेंतिकॉस्टल प्रतिक्रिया कहां है? हमारे पास नहीं है। क्या आप लूथरनों में हैं? नहीं, ये आपके पास है। तो मैं इस पर जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और खाना चाहता हूँ, और एक अद्भुत समय। प्रेस्बिटेरियन कहाँ? ये कहाँ पर है? आपने कुछ शारीरिक अपना लिया है। मेरा जाना तय है, ये आप जानते हैं, समझे? आप इसे कभी भी अपने हृदय से निकलने ना दें। शारीरिक को ना लें, ये मृत्यु है। ये शारीरिक मनुष्य मृत्यु है। ये जो भी करता है मृत्यु है। ये अधीन है और यहाँ मृत्यु के लिए है। ये आत्मा है जो जीवित करता है। देखिए, वो आत्मा जो जीवन देता है उसे जिलाता है, ये एक आत्मा है। इसलिए आप देखिए, उन्होंने ले लिया। ध्यान दें, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के नाम का पानी का बपतिस्मा निकालकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कर दिया। एक उपाधि जिसका कोई नाम नहीं है। अब आप कहते हैं इससे क्या अंतर पड़ता है? ठीक है, अब यदि आप देने जा रहे हैं, कोई आपको आपकी पगार का चेक देने जा रहा है शनिवार को, और वो व्यक्ति जो आपका भुगतान करता है बजाय उस पर अपने नाम के, वो कहता है मालिक की ओर से, यही जो वो है आपकी पगार का चेक, जॉन डो को भुगतान का आदेश $150 इस सप्ताह के कार्य के लिए मालिक की ओर से, ये लिख दिया बैंको, और देखिए ये कैसे वापस आता है। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही ये होगा। यदि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्यों पौलुस ने उन मसीहों को आज्ञा दी जो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और बहुत आनंदित थे? उसने उनको क्यों कहा, आपको वापस होकर फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है? समझे, वचन को लें, कहें, इसके साथ टिके रहें, इससे कुछ भी भिन्न न करें, बस वही करें जो इसने कहा। समझे, यही जिससे हमारा न्याय होने जा रहा है। अब देखिए, यही जो उन्होंने किया, बजाय नए जन्म के उनके पास सदस्य बनाना है, बजाय वचन के विषय में बात करने के उनके पास मत्सार है। मुझे बाइबल में दिखाएं, उन्होंने कब ये कहा, मरियम की जय, मुझे बाइबल में दिखाएं, तुम प्रोटेस्टेंटों का क्या कभी प्रेरितों के मत्सार का कहां उल्लेख है? मुझे बताएं, प्रेरितों का मत्सार का क्या है बाइबल में? संतों से बातचीत, वे इसके विरोध में थे। बाइबल में मुझे बताएं कहां भी कभी कोई उनका पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ? ये वहां नहीं है, और फिर भी आप इसी पर जाते हैं। अब बजाय भाइयों के बीच में संगति और भाईचारे के, उन्हें महाधर्म अधिकारी पोप दे दिए, और आपके पास बिशप है, बताता है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते, और तुम पेंतिकौसलों के पास जिला प्रेस्पिटेर है जो आपको बताता है आप इसे ले सकते हैं, परंतु कलीसिया के पास मसीह है। समझे, यही जहां आप पहुंचते हैं। समझे, वे आपको धर्म सिद्धांत और मनुष्य की बनाई हुई चीजें देते हैं बजाय इसके कि उन्हें हटा दें। इस येलेक ने क्या किया, इसे वृक्ष में से ले लिया और आपको ये दे दिया, मैं इसे वृक्ष में से हटा दूंगा और मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं इसे निकाल दूंगा और तुम्हें ये दूंगा। देखिए, आपको ये कहाँ से मिला? आप कहते हैं भाई ब्रदम, कहाँ से ये हरेक, ये पुराने प्रोटेस्टेंट कहाँ से आए? कैथोलिक, यही जो प्रकाशित वाक्य 13 या प्रकाशित वाक्य 17 ने कहा, वो होगी, कहा वो एक वेश्या थी और वो वेश्याओं की माता एक ही बात है, इसलिए ना करें। एक चीज कैथोलिक को काला नहीं कह सकती, आप जानते हैं, इसलिए ना करें, इसे ये ना कहें, ताकि ये ठीक बात है। भाईचारे को निकाल दिया, जबकि हमें भाई होना चाहिए एक दूसरे के साथ। इसने हमें अलग किया है और हमें भिन्न कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दे, यहाँ अच्छा वाला है, मैं ये वाला लूंगा, तब इसे बंद करूंगा। इन सब दूसरों पर देखिए, जब हमने गलत किया, बाइबल ने हमें बताया ताकि हम अपने प्राणों को पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध कर लें, नम्र हो जाएं और पवित्र आत्मा को हम पर प्रकट करने दें कि आप गलत कर रहे हैं, और वहाँ उसके सामने ठहरे रहें जब तक आप मर ना जाएं। हमारे प्राणों को शुद्ध कर रहा है। अब वे घूम गए और आपको अग्निशोधक दे रहा है आपके मरने के बाद। तब प्रीस्टों ने बहुत पैसा बनाया कि आपको अग्निशोधक से बाहर ले आए। क्यों? ये निरर्थक है। येलेक टिड्डी ने यही किया। निश्चय ही आपको अग्निशोधक से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना सैकड़े डॉलर का दाम लगता है। जिस प्रकार प्राण को अग्निशोधक से बाहर कर दे, मैं चाहता हूं कि आप अग्निशोधक को बाइबल में ढूंढ कर भी दिखा दें। इस प्रकार की कोई चीज बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है, नहीं श्रीमान, परंतु उन्होंने उन्हें अग्निशोधक दिया, उन्होंने कि आपके मरने के पश्चात। ओ, मैं जानता हूं, वे कहते हैं निश्चय ही, आप उन्हें ये कहते हुए सुने, भाई संत बोनिफेसर ने ऐसा किया, ऐसा कहा, मैं चिंता नहीं करता सेंट बोनिफेस ने क्या कहा, भाई क्या अमुक अमुक नहीं कहती कि वो उसने उसके पति के लिए प्रार्थना करी, वो महान बहन संत अमुक अमुक, मैं चिंता नहीं करता कि उसने क्या किया। ये अनधिकृत वचन है, ये अधिकृत प्रेरितों के विरोध में है। परमेश्वर उन प्रेरितों को दीजिए जो कलीसिया को व्यवस्थित करे और ये प्रेरितों की शिक्षा पर बना हो, न कि संत बेनिफर के पर या किसी संत पर। ये वचन के विरोध में है। मैं चिंता नहीं करता कि संत बेनिफिस क्या कहते हैं और दूसरे संत और दूसरे संत और संत सूसी और संत मरिया और उन सब ने क्या कहा। यह निरर्थक है, ये किसी और झूठ से अधिक नहीं, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, ये झूठ है। मैं अनाधिकृत वचनों का विश्वास नहीं करता, यही कारण है कि मैं इन प्रोटेस्टेंटों के मतसार का विश्वास नहीं करता और आदि आदि। ये कैथोलिक है जड़ से, ये धर्म सिद्धांत है। आप कैसे कैथोलिक को कह सकते हैं कि उसका उपहास करते हैं जिनके पास धर्म सिद्धांत है, जबकि आप स्वयं भी इसी से भरे हुए हैं। यहाँ अधिक नहीं, परंतु ये टेप पर है, आप समझते हैं। देखिए, सारे संसार में जाता है। ध्यान दें, आप उन्हें कैसे गलत कह सकते हैं जबकि आप मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मतसारों को लेते हैं। ये बाइबल के विरोध में है, धर्म सिद्धांत, वैसे ही जैसा उन्होंने किया। क्यों? आप एक संस्था में हैं जो कि पुरानी वेश्या की पुत्री है। वेश्या क्या है? ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं, जो कि मसीह कलीसिया होने का दावा करती है और गलत शिक्षाएं दे रही है, उसका अपना विचार, बजाय इसके कि परमेश्वर का पवित्र वचन ले, जैसे कि हवा ने किया, शैतान की सुनी, सारी मृत्यु और दुख का कारण हुई जो कभी पृथ्वी पर हुआ, हवा से होकर आया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में आत्मिक व्यभिचार किया उसके वचन का अविश्वास करने के द्वारा। और बिल्कुल ठीक यही आज कलीसिया कर रही है, परमेश्वर के वचन के विरोध में आत्मिक व्यभिचार कर रही है, और वे आपको अपनी कलीसिया में भी नहीं लेंगे यदि आप उनकी शिक्षा से सहमत नहीं होंगे। उन्होंने एक पत्रों पर मुझसे हस्ताक्षर लिए। यदि आप इसका विश्वास करेंगे, यदि आप कहते हैं कि ये सही बात है, मैंने कहा मैं बस नहीं आऊंगा। नहीं श्रीमान, मैं बस वही प्रचार करूंगा जो ये बाइबल कहती है, या फिर बिल्कुल नहीं। समझे? ये ठीक बात है, वचन पर बने रहें, यही जो हमें करना है भाइयों, वहीं टिके। अब हम अंत के दिनों में आ रहे हैं और हम जानते हैं कि यही घड़ी है। हम कैसे कह सकते हैं वो भी ये कहते हैं वे वो, परंतु कोई भी चीज जो अनाधिकृत है उसका विश्वास ना करें। मैं इसकी चिंता नहीं करता यदि किसी ने क्या कहा। यहाँ एक बहन मेरे पास आई, अधिक समय नहीं हुआ, और कहा एक विषय झुंड के लोगों का, जिन्हें मैंने सेवकों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के विषय में प्रचार किया, जहाँ लगभग 300 के लगभग सेवक गण, बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं वहाँ सभा में थे, जहाँ शिकागो की सारी सभा, सेवकों का संघ मुझसे मिला। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मुझे बताया कि वे कहाँ होंगे और क्या क्या होगा, और मैंने पलट कर उन्हें बता दिया। यदि आप सुनना चाहते हैं तो ये हमारे पास टेप पर है। और मैं सारे बिशप और डॉक्टर कार्डिनल्स और वे सारे वहाँ बैठे थे, मैंने कहा आप में से कोई भी जो इसे निरस्तर कर सकता है अपनी बाइबल ले और यहाँ आ जाए। मैंने कहा इस विषय में आप लोग शांत क्यों हैं, और किसी ने कुछ नहीं कहा। और क्यों? देखिए, वे इस वचन से डर गए। मैंने कहा तो फिर यदि आप नहीं कर सकते तो क्यों मुझे कुरेद रहे हो? शांत रहो, बाहर जाकर कुछ करो, और यदि आप इस पर वचन का समर्थन नहीं पा सकते तो आप शांत रहें। इसलिए तब उन्हीं लोगों के झुंड ने मेरे पास एक महिला को भेजा, कहा भाई ब्रणम, यदि प्रभु के दूत ने आपको बताया है, प्रभु के दूत ने, आप जानते हैं उसका चित्र वहाँ पर है, आप देखिए, यदि प्रभु के दूत ने आपको ये बताया है, ठीक है, तो हम इसका विश्वास कर लेंगे। मैंने कोई भी उस सेवक के झुंड का जो उस सप्ताह में होगा, यदि प्रभु के दूत ने कहा, यदि ये दूत ने कुछ ऐसा कहा जो इस वचन के विरोध में है, तो फिर ये प्रभु का दूत नहीं है, और प्रभु का स्वर्गदूत वचन को प्रमाणित करेगा। ठीक यही जो उसने सदा युगों में से होते हुए किया, वो अब भी वही करता है। वो वचन के साथ स्थिर रहता है। कोई भी सेवक जो पवित्र आत्मा से अभिषेक है, वो उसी वचन के द्वारा स्थिर रहता है, क्योंकि बाइबल ने कहा कि सारी बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और आपके पास कैसे पवित्र आत्मा हो सकता है जो बाइबल कहती है उससे इनकार करते हैं? वही आत्मा आप में है, ये इस बात की गवाही देता है कि ये सही नहीं है। समझे? ये लेके से खा रही थी, बस यही बात है, परमेश्वर की सच्ची बातों को खा लिया। जी हाँ श्रीमान, अनाधिकृत शब्द जो प्रेरितों की शिक्षा के विरोध में है, ओ प्रभु, ये प्रेरितों की शिक्षा है, ये बाइबल है, ये पवित्र आत्मा है, हर शब्द जो इसमें है सच्चा है। आप बस विश्वास करें और इसे स्वीकार करें और इसे नीचा ना होने दें। ध्यान दें, हर प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ये इस बात का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर अब यहाँ उपस्थित है। यदि वो अब उतना परमेश्वर नहीं जैसा कि वो तब था जब उसने इज़राइल के बालकों को लाल सागर पार कराया, तो वो परमेश्वर ना होगा। तो ये वो परमेश्वर नहीं जो पेंतेकोस्त पर उतरा, और आज वो ठीक यहाँ पर है, वो वही परमेश्वर नहीं, तो फिर कोई और पुनरुत्थान नहीं था। यदि वो वही नहीं था तो फिर वो इतिहास के परमेश्वर से आपका क्या भला है? यदि आज वो वैसा ही परमेश्वर नहीं तो प्रचारकों धर्म विद्यालयों को भेजने में क्या भलाई है, और अस्थिर मुर्गी के बच्चे निकाले और इस प्रकार से घूमते रहें, यदि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को निकाल रहे हैं, तो आपका अधिकार कहाँ है? आप कहते हैं कलीसिया, कलीसिया वहाँ 969 विभिन्न संस्थाएं उनमें से हैं, उनमें से कौन सी सही है? कोई नहीं जानता कि क्या करें, आप भ्रम में पड़ जाएंगे। ये ठीक बात है, परंतु परमेश्वर लोगों का कलीसिया के द्वारा न्याय करने नहीं जा रहा है, वो उनका न्याय मसीह के द्वारा करने जा रहा है। और मसीह वचन है, भाई ने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। वो कलीसिया और लोगों का वचन के द्वारा न्याय करेगा। ये ठीक बात है, जीवित जीवित हो उठा वचन। तब यदि वो जीवित जीवित हो उठा वचन कोई भी बात इस वचन के विरोध में कहता है, तो फिर ये जीवित हो उठा वचन नहीं है, क्योंकि वो तो इस सत्य की गवाही देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और कहे। मैं कुछ यहाँ कुछ वहाँ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ। आप भी सकते हैं, आप अधिक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं, वो अनंत है। उसका पहला निर्णय, पहली बात जो वो कहता है, वो अनंत तक स्थिर रहती है, ये एक सा है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ यहाँ कहे और कुछ वहाँ कहे। उसे तो हर बार वही बात कहनी है, ताकि परमेश्वर बना रहने को। इसलिए यदि वो आत्मा जो आप पर है परमेश्वर का है, वो इस बात की गवाही देगा कि ये वचन सच्चा है, इसका हर वचन, और ये कल आज और सर्वदा एक सा है, यही जो बाइबल कहती है। जी हाँ श्रीमान, ठीक है। अब आइए हम जल्दी जल्दी करें और इस कीड़े की अगली स्थिति को लें। पहले ये गाजाम थी, इसने परमेश्वर के वृक्ष में से क्या खा लिया? फल। फिर अगली स्थिति आती है, वो उस स्थिति में मर गई। फिर अगली स्थिति आती है, अब ये क्या करता है? इस बार वो टिड्डी के समान आता है, सारी पत्तियाँ खा जाती है, ये टिड्डी की आदत है। अब उसने अगली चीज क्या की? वो दूसरी स्थिति में होकर वापस आई, ये ले कीड़े के समान, और ये उसकी छाल में घुस गया। अब ये यहाँ एक कीड़े के समान आता है, उसकी चौथी स्थिति। अब ये कीड़ा है, ये कीड़ा क्या है? ये चूसने वाला है, जीवन को चूसता है, जीवन के आत्मा को। यही जो वो करता है, अंदर चला जाता है, गुदे को पकड़ लेता है और चूसता जाता है। वो कीड़ा वो यहाँ है, हम इसे क्या कहने जा रहे हैं? नामधारी। इस कीड़े का सही नाम यही है, क्यों? ये नष्ट करने वाला है, जीवन को चूस लेता है। हर बार परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में एक बेदारी भेजता है, हर बार, और वे नामधारी हो जाते हैं और वे वहीं मर जाते हैं। मैं किसी को चाहता हूँ जो कलीसिया का इतिहास जानता हो, जो इसे दोषी ठहरा सके। मुझे एक बार भी एक संस्था दिखाए जो कभी संस्थागत हुई, जो वहीं पर ना मर गई हो। ये लेख ने इस पर कब्जा कर लिया, इसका धर्म दूर हटा दिया, और तब ये चूसने वाला आता है और ले लेता है, जीवन को पेड़ में से चूस लेता है। इसमें किस प्रकार का जीवन था? पवित्र आत्मा। ये क्या करेगा? ये अपने में पवित्र आत्मा थामे नहीं रह सकेगा, और फिर तब भी उसके पास धर्म सिद्धांत है। पवित्र आत्मा इसका पक्ष नहीं लेगा, इस प्रकार से ये पवित्र आत्मा को ले लेता है जीवन के वृक्ष से बाहर, और उसे धर्म सिद्धांत दे देते हैं और नामधारी बना देते हैं। हम चिंता नहीं करते कि ये क्या कहता है, हमारा नामधारी ये कहता है, आप उसी स्थिति में है। इसमें रखें, जब ये नामधारी हो जाता है, ये सदा मर जाता है और फिर जी नहीं उठता। कैथोलिक पहली संस्था थी, तुरंत ही मर गई। निसंदेह आरंभ से ये एक धर्म सिद्धांत था, वहाँ से पहला सुधार निकल कर आया, वो लूथर था, संस्थागत हुआ और मर गया। अगला वेस्ली आया, संस्थागत हुआ, मर गया। अगला पेंटिकोस्टल आया, संस्थागत हुआ और मर गया। प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और ये सारे दूसरे, और नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस और ये सारी संस्थाएं जो साथ साथ इसका अनुकरण करती रही, प्रत्येक मर गया। उन्हें देखिए, क्यों? वे संस्थागत हुए और इसने इन्हें मार डाला। वे क्या करेंगे? वे इन धर्म सिद्धांतों में लेते हैं। तुम नाजरीन, एक शानदार पेंटिकॉस्ट के ऊपर उठने पर अगली कलीसिया, ये क्या था? आप पवित्रीकरण में विश्वास करते हैं, परंतु जब ये पवित्र आत्मा के वरदानों पर आता है, अन्य भाषा में बोलना और परमेश्वर की महान सामर्थ्य, आप इसे शैतान कहते हैं और आप वहाँ मर जाते हैं। ये ठीक बात है। आज वो कहाँ है? मर गई। वो उसके पास अधिक सदस्य हैं, परंतु वो कहाँ है? वो एक लोथ है। उस रात्रि मैंने उसे देखा, ये ठीक बात है। सारा मामला, उनका पास्टर ऊपर लेटा था, एक लोथ को चूम रहा था, उससे प्रेम कर रहा था, कहा जो भी है, अब उनके पास अधिक समय नहीं है। इस सब का यही है, इसलिए मैं किसी समय ये आपको टेप पर दूंगा, समझे? ठीक है। परमेश्वर ने अपना वृक्ष बोया कि आत्मिक फल लगे, आत्मा के फल, क्या ये ठीक बात है? परंतु मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य सदा यत्न करता है कि इसे बनावटी रूप दे। उसने पहले यही किया, वो अब भी यही करता है। अब ये, अब जरा जोरदार प्रहार करें, और जल्दी से, मनुष्य सदा आत्मिक कलीसियाओं को लेने का यत्न करता है और इसे बनावटी रूप देता है। लूथर के पास आत्मिक कलीसिया थी, क्या हुआ? जैसे ही लूथर मरा, उन्होंने इसको बनावटी रूप दे दिया। वेस्ली ने क्या किया? जॉन वेस्ली परमेश्वर का एक महान पुरुष, कौन कहेगा कि जॉन वेस्ली परमेश्वर का जन नहीं था? उसने क्या किया? जैसे ही वो और जॉन वेस्ली और चार्ल्स मरे, उन्होंने इसे संस्थागत कर दिया। वो जब हुई वो मर गई। बिल्कुल ठीक, वही चीज हर बार प्रत्येक पर होती हुई निकली। उन्होंने नकली बनाकर ओढ़ लिया। अच्छे कार्य, सबसे बड़ी भक्त मंडली, बुद्धिमान लोग, नगर के प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे साथ आना चाहते हैं। ठीक यही जो तुम पेंतिकौसल के झुंड में भी यही हुआ। बिल्कुल ठीक, आप ढीले पड़ गए, आप आत्मा से हट गए, आप बड़े बड़े भवन और तड़क भड़क चाहते हैं और इस प्रकार की हर चीज उनके पास। सम्मानित पास्टर है, आप क्या करेंगे? आप माताएं अपने लड़कों को इन विद्यालयों में पास्टर बनने के लिए भेजती हैं और वे उन्हें क्या सिखाने जा रहे हैं? धर्म विज्ञान और सब प्रकार के मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें, और आज ये कहाँ हैं? वे वापस आए एक आवारा और एल्विसों का झुंड। ये बिल्कुल ठीक बात है। आज आपके पास क्या है? एक उल्टे सीधे लोगों का झुंड भक्ति के भेष में। बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में वे भक्ति का भेष भरेंगे परंतु उसकी सामर्थ्य का इनकार करेंगे। वो जीवन जो है, क्यों? असली कीड़े ने उसे चूस लिया। ठीक है, संस्था ने इसे अलग कर दिया। पहला तीमोथियस 3, पौलुस ने कहा, जान लो कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। मनुष्य अपना ही भला चाहने वाले होंगे, घमंडी, डींगमार, अनाज्ञाकारी, धन्यवाद रहित, अपवित्र, बिना स्वाभाविक प्रेम के, असंयमी, भले के बैरी, विश्वासघाती, शेखीबाज, भक्ति का भेष भरेंगे और उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। आसील कीड़े ने ये चूस लिया। बहुत पहले ये लेख उसमें घुस गया था। हम इस वृक्ष के नीचे की ओर आ रहे हैं, प्रभु चाहेगा तो थोड़ी देर में पकड़े रहेंगे। सबसे बड़ा स्थान, ओ निश्चय ही भाई, आप जानते हैं पिछले वर्ष हमारी कलीसिया ने इतना जमा किया। ओ निश्चय ही कैथोलिकों ने आपको लाखों मील पीछे छोड़ दिया, निश्चय ही छोड़ दिया, और रूस में इतना अधिक, यहाँ तक कि उन्होंने उसे समाप्त कर दिया और साम्यवाद स्थापित कर दिया। यही चीज उन्होंने मेक्सिको में की और उन्हें ये समस्त संसार में करना है। वो कहाँ पर है? ये ठीक बात है, आप साम्यवाद से कभी न डरें। साम्यवाद ईश्वर रहित कार्रवाई है, परंतु आप इन कुछ प्रचारकों को सुनते हैं, प्रचार में खड़े होकर साम्यवाद को दोष देते हैं। साम्यवाद, मैं इनमें से किसी पर विश्वास नहीं करता, परंतु, और अपनी कलीसिया को नहीं बताते, ओ हम सब सटके जाने वाले हैं, सारा संसार साम्यवादी होने जा रहा है। ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरोध में है। बाइबल में किसी भी स्थान में ये नहीं कहा गया है कि ये इस प्रकार होगा, परंतु बाइबल कहती है कि रोमनवाद कैथोलिक कलीसिया संसार को सटक जाएगी। डेनियल को लेकर ढूंढे, सोने का सिर, राजा नबूकदनज़र, बाबुल का राज्य, मेदो और पारसिया, उसके बाद आए यूनानी राज्य, उसके बाद आया रोम, अंत तक गया। वे 10 उंगलियां पृथ्वी के हर राज्य में गईं। क्या आप नहीं? वहाँ लोहे का पर्दा, बांस का पर्दा वहाँ है, बैंगनी पर्दा वहाँ है। भाई आप किसी से न डरे, परंतु बैंगनी पर्दे पर ध्यान रखें। वो आज ठीक यहाँ सिंहासन पर बैठी है इस राष्ट्र में, सुन रहे, ठीक जैसे आहाब ने किया। उसके पीछे इजाबेल थी, जिसे बाइबल कैथोलिक कलीसिया कहकर पुकारती है, इजाबेल वेश्या। और आहाब कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। मैं नहीं कहता कि श्री कैनेडी अच्छा पुरुष नहीं है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता। वो एक पुरुष है, मैं बस इतना ही जानता हूँ, वो राष्ट्रपति है। मैं विश्वास करता हूँ वो एक अच्छा राष्ट्रपति बनेगा। ये वो नहीं, ये वो व्यवस्था है जो उसके पीछे है। जब तक कि वो कैबिनेट में गर्म ना हो जाए, प्रतीक्षा करें, और हर जगह वो ये कर सकती है, तब देखिए क्या घटित होता है। देखिए इसने दूसरे राष्ट्रों में क्या किया, देखिए सदा से यही हुआ है। और क्या बाइबल नहीं कहती प्रकाशित वाक्य 13 में, ये राष्ट्र 13 नंबर है, इसकी 13 पट्टियाँ, 13 सितारे झंडे में है, झंडे में 13 पट्टियाँ, 13 हर चीज में, 13 में 13 बस्तियाँ, हर चीज 13, और ये प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में पाया जाता है। और बाइबल ने कहा कि वो एक छोटे मेमने के समान उभर कर आया, धार्मिक स्वतंत्रता, दो छोटे सींग, नागरिक और पुरोहित, और कुछ देर बाद वे मिल गए और ऐसा बोला कि जैसे ड्रैगन बोला, और हर चीज जो कि ड्रैगन ने उसके समक्ष किया। और बाइबल ने कहा उन्होंने पशु की मूरत बनाई, कलीसियों का संघ, ठीक वही जो अब उनके पास है यहाँ इस न्यूयॉर्क नगर में, और वो वहाँ बड़ा मुर्दा घर है। और तुम सारे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, और आप में से प्रत्येक आर्थिक एकतावर्धक लोग यहाँ इस प्रकार की चीजें करने का यत्न कर रहे हैं और आपके जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं कि बाबुल के झुंड में सदस्य हो जाएं। आपके साथ क्या मामला है? निश्चय ही आपके जन्म सिद्ध अधिकार को बेच रहे हैं, जैसे ऐसा ने किया उस भोजन के बर्तन के लिए। आप बस वही पाने जा रहे हैं, बस पशु की मूरत तैयार की, बिल्कुल वही। आप समयवाद से ना डरें, आप कैथोलिक वाद से डरें, वो कहते हैं ये चापलूसी में होता हुआ आएगा जैसे कि मेमना, परंतु बोला इस पर ध्यान रखें कि इसके पीछे ये भेड़िया है, ये आंख बचाकर आता है, आप ध्यान दें जी हां श्रीमान, क्योंकि ये वचन के विरोध में है, जो वचन कहता है उसे घटित होना ही है। समयवाद कुछ नहीं कर रहा है परंतु ये परमेश्वर के हाथों में खेल रहा है, ये सही है। और क्यों उन्हें ये करना है? परमेश्वर को इस समयवाद को अनुमति देनी ही है ताकि वो इसे बनाएगा, उसका वचन घटित होता है निश्चय ही यही। क्या आपने इसका अनुभव किया? क्या आपने इस पर विचार किया? परमेश्वर को तो अपना वचन घटित करना है। देखिए जहाँ 400 भविष्यवक्ता वहाँ खड़े थे, वहाँ एक दिन अहाब और यहोशापात के सामने, यहोशापात एक धर्मी व्यक्ति, उसने कहा परंतु इसके पहले कि हम रमोत गिलाद को जाएं, बोला क्या हम परमेश्वर से सलाह ना लें? अहाब ने कहा हाँ निश्चय ही। समझे इस सब के पीछे जिजाबेल थी, आप जानते हैं, कहा हम करेंगे, मेरे पास 400 भविष्यवक्ता हैं, यहाँ हम पर हम उन्हें लाएंगे और सारे अच्छे लोग, इन्हें ले आओ। उन सब ने भविष्यवाणी की और कहा वहाँ चढ़ जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। इस भक्त मनुष्य को ये सही नहीं जान पड़ा, इसराइल का राजा यानी इसराइल का राजा वहाँ पर था, ये उसको कुछ सही सा नहीं लगा। उसने कहा क्या कोई और दूसरा नहीं है? 400 भविष्यवक्ता एक समझौते में कह रहे हैं चढ़ जाओ, प्रभु ने हमसे बात कर ली है और कहा जाओ चढ़ाई कर दो। उसने कहा परंतु कोई और दूसरा कहीं होना चाहिए। उसने कहा मेरे पास एक है परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। निश्चय ही जी हाँ, उसने कहा वो सदा मुझ पर चिल्लाता है, वो सदा मेरे विरुद्ध में बुरा बोलता है, वो कैसे कुछ कर सकता है जबकि परमेश्वर का वचन उसके विरुद्ध था। इसलिए वे जाकर मिकाया को बुला लाए। मिकाया ने कहा जाओ चढ़ जाओ, जी हाँ ठीक बात है, परंतु मैं इसराइल को भेड़ों के समान तितर बितर देखता हूँ जिनके पास चरवाहा ना हो। तब वो क्यों बड़ा प्रचारक बिशप चलता हुआ गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, कहा परमेश्वर का आत्मा कहाँ जाएगा जब ये मेरे पास से चला गया। तब उसने कहा ये तो आरंभ से तुझमें था ही नहीं, इसलिए तब उसने कहा इन्हीं किन्हीं दिनों में एक दिन तुझे मालूम पड़ जाएगा। उसने कहा अहाब ने कहा उसे अंदर वाले कारागार में डाल दो और उसे दुख की रोटी दो और दुख का पानी, कहा जब मैं शांति से वापस आऊंगा तो मैं इस व्यक्ति से निपटूंगा। उसने कहा यदि तू वापस आ गया तो परमेश्वर का वचन मुझ में से नहीं बोला। क्यों? वो ठीक वचन के साथ था, ठीक वचन के साथ। कोई भविष्यवाणी उस वचन के साथ नहीं टिकती, ये बिल्कुल ठीक बात है। यही कारण है कि आज मैं कहता हूँ कि कोई मतलब नहीं कि देखने में कितना अच्छा लगता है। कितने प्रचारक ये कह रहे हैं वो ये आदि आदि कि साम्यवाद संसार को लेने जा रहा है, नीचे गिरने वाला है। आप कभी भी साम्यवाद से लड़ने का यत्न न करें, रोमनवाद से लड़ें, क्योंकि ये यहोवा यूं कहता है, प्रभु ने कहा रोमनवाद ही शासन करने जा रहा है न कि साम्यवाद, ये बस एक कठपुतली है। परंतु आप देखते हैं उसे ये करना था। प्रभु ने मिकाया को बताया मुझे अहाब को वहाँ बाहर भेजना ही है। उन प्रचारकों ने ये कहना ही है कि अहाब को वहाँ बाहर भेज ताकि एलिया का वचन पूरा हो। परमेश्वर ने साम्यवाद को उठने दिया, इसने क्या किया, वे सारे मुर्दाघर एक साथ भागकर जमा हो गए और कलीसियाओं का एक संघ बना दिया कि सदस्य बने, कि उस पशु की मूरत बनाए, कि उसके वचन ने क्या कहा वो घटित हो। इस विषय में आप चिंता ना करें, आप ध्यान दें, चीजें रूप धारण कर रही हैं, यही है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इससे थका रहा हूँ, परंतु ये सच है। मैं नहीं जानता कि आप में से दोबारा बात कर सकूंगा कि नहीं, हो सकता है कभी नहीं, हम नहीं जानते, हो सकता है हम फिर कभी ना मिले, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप सत्य को जान लें कि क्या है। इस वचन पर ध्यान दें, ये सत्य है ना कि मैं, ये वचन यही है। यदि ये मेरा वचन इसके विरुद्ध है तो आप मेरा विश्वास ना करें, आप इसका विश्वास करें। तब यदि आप कहते हैं भाई हम समझ गए और आप इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, तो फिर ये आपका कर्तव्य है कि मेरे पास आएं। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है कि आप मेरे पास आएं, समझे, बस आएं और हम देखेंगे कि वचन क्या है। अब इसलिए हमने पाया कि ये था, ये साम्यवाद है जो एक साथ जमा हुआ। परमेश्वर ने कहा वहाँ गोग और मागोग एक साथ जमा होंगे निश्चय ही कि युद्ध को तैयार करें। ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि ये इन ताकतों को एक साथ इकट्ठा करने जा रहा है, इन्हें आना ही है। बाइबल ने कहा ये होगा। परमेश्वर ने कहा ये वृक्ष लगाया कि उसके आत्मिक फल लगे और मनुष्य ने सदा यत्न किया कि इसे बनावटी रूप दे, भक्ति का रूप धारण करे। नगर का सबसे बड़ा भवन निश्चय ही लाखों डॉलर का, ओ भाई वो वाह, और लोग प्रचार कर रहे हैं कि यीशु आ रहा है और भवन बनाने के लिए 60 और 80 लाख कहीं खर्च कर दिए। और मिशनरी, मैं जानता हूं कि मिशनरी लोग कार्य क्षेत्र में हैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं बिना जूते के और सप्ताह में 2 बार खाना खा रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं क्यों भाई हम लोगों के साथ क्या मामला है? मुझे सही में विश्वास नहीं कि वे विश्वास करते हैं कि वो आ रहा है। आपके वचन बोलते हैं भाई, आप आपका जीवन आपके वचनों से अधिक जोर से बोलता है, समझे? वे छोटे मिशनरी जहां मैं अपनी इस प्रकार की सभा में आया, उनके पास जूते नहीं और पैंट इस तरह से कमर से लटक रही थी, और वो वहां मक्खियां, अमीबा और खटमल और सब प्रकार की बीमारियां, और वहां सारी चीजें वे छोटे बूढ़े हाथों से खाते हैं और अमीबा और सब चीजों के साथ वहां खड़े हुए कहते हैं, भाई ब्रणम आप? मैं कहता हाँ। बोला, ओ आपको आशीष मिले, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर इस मनुष्य को मेरे लिए प्रार्थना करने दे। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है, यही है वो। भाई ब्रणम मैं आपके लेख पढ़ता हूँ, निश्चय ही आप सत्य बता रहे हैं, हम ठीक आपके साथ हैं। ओ भाई, यही वो लड़का है, यही वो है जो छोटा निर्धन व्यक्ति। सुनिए, कोई कहता है आप जानते हैं वो कौन है? ओ कहा, वो हमारी संस्था से नहीं है। कहा, वो कौन है? क्यों, वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, तो ये कौन है? ओ वो आत्मनिर्भर है। ओ वो है। ओ भाई, वो क्या करता है? और वो वहाँ छोटा मोटा काम करता है, वो हमारा सदस्य नहीं बनेगा। अच्छा, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं एक छोटा सा लड़का था, सेबों के बाग में सेब ढूंढता फिरता था। मैंने सदा एक पेड़ पाया, सारे उसके नीचे थे। आप जानते हैं, उसके नीचे अच्छी सभा और परिश्रम, वही जहाँ वो अच्छा सेब का पेड़ था। वे कहते हैं ये बस एक पवित्र शोर करने वाला है। आप जानते हैं, आप सदा जहाँ अच्छा पेड़ होता है एक डराने वाला लगाते हैं। शैतान भी वही चीज करता है, उसे आपको डराकर भगाने के लिए। आप चिंता न करें, उस डराने की चीज के ठीक पीछे रहें। एक दिन मैं देख रहा था, एक बड़ा चूहा जो सेम में बो रहा था आकर खा जाता, और हर बार मैं सेम एक रेखा में बोता और वो आकर उन्हें खा जाता। मैंने सोचा मैं एक डर का जीवन उसमें निकालूंगा, इसलिए मैंने एक गत्ता लिया। और मैंने तो वास्तव में एक कलाकार हूँ, आपने मुझे देखा होगा, मैं सोचकर जो रेखा चित्र बनाता हूँ वो डरावना होता है, और ये भी डरावना था। यदि मैं इस बनाता हूँ, मैंने इसे एक बोरी पर लगा दिया और मैंने उसमें थोड़े से सेम के बीज डाल दिए और एक खड़ी लकड़ी पर लगा दिया, और जब हवा चलेगी तो वो इस प्रकार से हिलेगा। छेद में से वो छोटा चूहा बाहर आया, आप जानते हैं, सेम के बीज खा रहा था, और वहाँ से होता हुआ भागा और सीधा उस बोरी की ओर भागा। वो पीछे हटा, उसने से देखा, इसे इस प्रकार से देखा, और वो गया और उस पर छलांग लगाई। ओ बोरी तो शांत खड़ी थी। उसने इसे फिर से देखा, आप समझे, और उसे फिर से देखा, उसने पीछे देखा और उन सेम के बीजों को एक पंक्ति में गिरते देखा, और वे अच्छे थे, आप जानते हैं। इस प्रकार से उसने डरावन को देखा अपने रास्ते पर, इसलिए वो आगे बढ़कर धीरे धीरे पास आने लगा। इस प्रकार से इसे डराने का यत्न किया, और ये नहीं हिलेगा, चिंता मत करो, ये मरा हुआ है, और ये सारे डरावन इसी प्रकार के हैं। इसलिए वो केवल उसने क्या किया, उसने अपने छोटे पैर उस पर डरावन की बोरी पर मारे और कड़कड़ की आवाज हुई। वो वापस कूदा और इसे देखकर इस प्रकार से उसने फिर मारा, कड़कड़ हुआ, बस यही, बस कड़कड़, जैसे ही आयरिश मनुष्य का उल्लू, सब गड़बड़ और पंख और कोई उल्लू नहीं, आप समझे। इसलिए इस प्रकार से मारा और कड़कड़ आया उस प्रकार चार या पांच बार। आप जानिए इसने क्या किया, सीधा उस बोरे के पीछे गया और मेरे सेम के बीज खाने लगा। वो मेरे से इसके विषय में अच्छा जानता है ये क्या था, आप देखिए। और वो उस डरावन से रुक नहीं पाया, इस डरावन के पीछे कुछ अच्छा है। जब वे कहते हैं ओ ये लोग पवित्र शोर करने वाले हैं, ठीक उस डरावन के पीछे चले जाएं और उसमें चले जाएं, समझे, बढ़ें और इसका विश्वास करें, समझे। हो सकता है कि इसके पीछे भी पवित्र आत्मा हो, आप समझे, आप नहीं बता सकते। देखा, ओ आइए इस नामधारी कीड़े को देखें जो कार्य पर लगा हुआ है। स्वाभाविक कलीसिया, आत्मिक कलीसिया, इस पुराने कीड़े को देखें, जब यह संस्थागत होता है वो पहले ही छाल को खा चुका है, इसका फल खा लिया है। ओ भाई, ये सब समाप्त हो चुका, आत्मा के सारे वरदान चले गए, कोई आत्मिक चंगाई नहीं, कोई अन्य भाषा बोलना नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कुछ नहीं। भविष्यद्वक्ताओं के होने में विश्वास नहीं करते, वे इन बातों में विश्वास नहीं करते, वे नहीं जानते, सब बनावटी, हर चीज जो उनके पास है मनुष्य की बनाई हुई बनावटी है, समझे। ठीक है, शारीरिक कलीसिया, एक शारीरिक कलीसिया है, ये वो है जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है। आत्मिक कलीसिया, आप जानते हैं कि बाइबल ये कहती है, जी हाँ, शारीरिक कलीसिया और आत्मिक कलीसिया, और बाइबल ये कहती है दासी और उसके पुत्र को निकाल दे हाजरा को, क्योंकि वो स्वतंत्र स्त्री और उसके पुत्र के साथ वारिस नहीं होगा, समझे। इसलिए शारीरिक कलीसिया वो जिसकी वारिस होने जा रही है पूले बंधने में, जलाने के लिए गट्ठर बांधे जाने में, और ये वारिस नहीं होगी उस स्वतंत्र स्त्री के साथ। यदि दासी अपने बालकों के साथ संस्था के बंधन में है, वो स्वतंत्र स्त्री के साथ वारिस नहीं, क्योंकि स्त्री के बालक रैप्चर में जा रहे हैं और दासी के बालक न्याय में खड़े होने जा रहे हैं। देखिए, निकाले हुए, जी हाँ, आत्मिक स्वतंत्र हैं। जी हाँ श्रीमान, वो कीड़ा नामधारी एसाव, अब एसाव, वहाँ एसाव और याकूब है, वे दोनों जुड़वा, दोनों धार्मिक, ऐसा शारीरिक था, वो भला मनुष्य था। उसने नहीं कहा ठीक है अब उसने बाहर जाकर चोरी शराब पीना या ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक धर्मी मनुष्य था। परंतु उसने सोचा ठीक है जब तक मैं एक धर्मी हूँ तो इसे क्या अंतर पड़ता है। परंतु उस पुराने याकूब ने चिंता नहीं की कि उसे कैसे पाना था, वो जन्म सिद्ध अधिकार जो वो चाहता था कोई मतलब नहीं कैसे वो लेगा, बस उसने ले लिया। वेदी पर झुकना पड़े, रोना और चिल्लाना पड़े और हु और घिनौना मुझे क्षमा करे, ये आप जानते हैं, और उसकी आंखों में मेरे कहने का वो अर्थ नहीं और इस प्रकार मुझे क्षमा करें। इसलिए वेदी पर पहुंच गया और तब तक रोता रहा कि उसे मिल गया, समझे। उसने ये चिंता नहीं की उसने इसे कैसे पाया। उनमें से कुछ कहते हैं मैं भाई ब्रणम वे लोग वहां वेदी पर रो रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है आपको ये नहीं मिलेगा, समझे। वो बूढ़ा तेज रंग का काला भाई एक बार वहाँ दक्षिण में वो सदा प्रसन्न था। उसके स्वामी ने कहा कि वो क्या है जो तुम्हें सारे समय प्रसन्न रखता है लड़के। उसने कहा मेरे पास दिल से लगा एक धर्म है। कहा ऐसी कोई चीज नहीं है। उसने कहा उसने एक गलती कर दी, जहाँ तक कि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है। वो अंतर को जान गया, बोला जहाँ तक कि आप जानते हैं आपको इस प्रकार कहना चाहिए। एक दिन उसने कहा मैं भी उस हृदय से लगे हुए धर्म को पाना चाहता हूँ। उसने कहा आपको ये कब चाहिए। कहा अब। बोला अच्छा इसे लेने को चलें। वे बाहर चले गए। उसने कहा यहाँ भूसा रखने की एक टांड है, ये अच्छा है। और बोला हाँ मेरी पत्नी मुझे नहीं सुनेगी और कुछ भी यहाँ से बाहर। कहा इसी प्रकार से लोग इसे चाहते हैं, आप जानते हैं, इसे प्लेट में परोस कर उन्हें दे दें, हम यहाँ घुटने टेक देंगे। बूढ़े भाई ने कहा आप इसे यहाँ नहीं पाते। अच्छा तो इसलिए वो उस स्टॉल पर चला गया। उसने कहा क्या हम इसे यहाँ लेंगे। कहा नहीं। उसने कहा हम वहाँ अनाज के गोदाम की आड़ में जाएंगे। बोला नहीं। कहा तुमने इसे कहाँ पाया। बोला मेरे पीछे पीछे आओ। उसने अपनी पैंट के पाँचे ऊपर खींचे और सुअर के बाड़े में चला गया, कीचड़ में वो जितना जा सकता था। बोला यहाँ आ जाओ, यहीं जहाँ तुम इसे पाओगे। उसने कहा मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। कहा स्वामी तुम अब भी इसे नहीं लेना चाहते, आप इसे नहीं चाहते। आप जानते हैं नामान ने भी ऐसा ही सोचा। नामान ने कहा अब मैं अपने कोर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इलीशा ने कहा तुम उस कीचड़ भरी यर्दन में जाओ जहाँ वो मेडिटेरियन में जाके गिरती है। कहा वो जितनी कीचड़ भरी हो सकती है वो है, वहाँ जाकर 7 बार गोते लगाओ। ओ नामान ने कहा अरे बाप रे बाप, क्या वहाँ दमिश्क के आसपास का पानी इससे अच्छा नहीं। ओ बिल्कुल साफ। ओ उस रात्रि हमने चलचित्र में देखा, आप जानते हैं। उसने कहा क्यों, हम वहाँ नीचे नहीं जाना चाहते। मैं वहाँ नीचे नहीं जा सकता और तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं कप्तान हूँ सुरक्षा का, मैं सेना का जनरल हूँ। भाई अगर आप कोर्स से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो फिर नीचे उतरो, परंतु यदि आप वैसे ही रहना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ो। उसने कहा डुबकी, और मैं उसे अब जल में उतरते हुए देख सकता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वो इससे उसके सम्मान को आघात लगता है। आप जानते हैं मैं देख सकता हूँ इस प्रकार से पंजों को मिलाकर नाक पकड़े हुए, आप समझे। बहुत से लोग मसीह के पास इसी प्रकार से आने का यत्न करते हैं, मैं चंगा होना चाहता हूँ, आप देखिए मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूँ। ओ प्रभु आश्चर्य, बाकी सब कैसे दिखाई पड़ता है। तुम ढोंगी, आप इसे कभी नहीं पाओगे, जो भी है ये ठीक बात है, जो भी है आपको ये नहीं मिलेगा, समझे। आपको ये कभी नहीं मिलेगा, जो भी है चिंता ना करें। अभी आपको ये पर्याप्त रीति से नहीं चाहिए, ये ठीक बात है। आप पूरी रीति से नहीं चाहते, ये ठीक है। परमेश्वर जब आपको लेने को तैयार होंगे तो आपको देगा। अब नामधारी कीड़े सारी चीजों को खा गए। ध्यान दें, हर कीड़ा इसमें से प्रत्येक कीड़ा जब वो पेड़ पर कार्य कर रहा था ये उसके लिए मार्ग बना रहा था जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। हो ये बुद्धिमान है, जी हाँ श्रीमान, समझे। इसने फलों को ले लिया, देखिए आत्मा को, इसलिए क्या वो संगति को ले सकता है, देखिए पत्तियाँ। इसलिए दूसरी ओर से आता है और अपने जीने का साधन बनाता है, पत्तियों को ले जाता है। उसने ये कब किया, उसने पत्तियों को चट कर दिया, वहाँ कोई ठंडक ना होगी, ताजगी, ताकि दूसरे लोग देख सकें, इसलिए वो छाल में घुस सका, समझे। वो छाल में घुस जाएगा और किनारे पर छेद कर देगा और उनसे शिक्षा को ले लेगा, वही चीज जो जीवन को संभाले रखती है। और फिर जैसे ही वो उसमें छेद बनाता है उसके पास दूसरा है जो आता है, पुराना चूसने वाला कीड़ा, जिसने नामधारी को ले लिया और इसे चूस कर और संस्थागत कर दिया ताकि आप इसे ना पा सकें। और जीवन ने क्या किया, सीधा जड़ों में चला गया, ये बिल्कुल ठीक बात है, दौड़ता हुआ सीधा जड़ों में चला गया, ठीक है। अब वही कीड़ा दिलों में छेद करता है जब तक कि जीवन पर पहुंचे, ये फल से होता हुआ आया और पत्तों से होते हुए छाल से होते हुए जब तक कि ये हृदय में ना पहुंच जाए जीवन की रेखा, ठीक है। ठीक है, अब आइए पहले देखें ये नष्ट करने वाला कैसे कार्य पर लगा है। मुझे इसमें से बहुत कुछ छोड़ना है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। नहीं, मुझे नहीं। पहली चीज जो इसने किया, जैसे ही ये पेड़ के हृदय में घुसा, आइए इस पर ध्यान करें, पीछे उसकी पहली स्थिति पर, इसके पहले इसने इसे आरंभ किया, आइए इस पर ध्यान करें। अब आइए इसे कार्य करते हुए देखें। पहली चीज जो इसने खराब की, इसने पहले वास्तविक पेड़ के कीमती फल को जो परमेश्वर के पास इस पृथ्वी पर था नष्ट कर दिया। अब यदि आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा और सहन कर सकें कुछ मिनटों के लिए, मैं चाहता हूं कि आप इसे ले सकें, क्या नहीं? ये आपका ईस्टर संदेश है जो अब आ रहा है। पहली चीज जो उसने की, उसने परमेश्वर के पेड़ के कीमती फल को नष्ट कर दिया, मसीह को। ये वो पेड़ था जो आगे अदन से था, ये ठीक बात है। पहले फल का पेड़ उसने नष्ट कर दिया। पहला वाला जो इसने पृथ्वी पर लगाया था वो मसीह था, उसने वो पेड़ नष्ट कर दिया जो अपने फल उगाता था। अब उनके पास सब प्रकार की संस्थाएं हैं और ये उनके पास उसके हाथों में है और अब वो उसके हाथों में है, परंतु जब वो पेड़ पर आता है जिसने वास्तविक फल में छेद कर दिया, वो रोमी कीड़ा उसमें घुस गया, देखिए पेड़ को नष्ट कर दिया, वो वृक्ष। जी हाँ, यीशु ने कहा, यदि मैं करता हूँ संत यूहन्ना में, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूँ या अपने पिता के फलों को ना होने दूँ, तो फिर मेरा विश्वास ना करो। वो परमेश्वर के फलों को उगाता था। उसने किस प्रकार के फलों को उगाया, किस प्रकार के फल, आइए कुछ मिनटों के लिए इस पर ध्यान दें। इसे हमें बहुत बार देखा है, आइए कुछ आराम में लें। उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं, जो कुछ मिनटों की प्रार्थना की प्रतीक्षा में हैं, पहली कौन सी बात थी जो वे जान गए? उसने उसे मसीहा होने के लिए पहचाना। जब पहले पतरस उसके पास आया और उसे इंद्रियास लेकर आया और उसने पतरस को देख कर कहा, तेरा नाम शमाउन है और तू योना का पुत्र है, वचन के अनुसार वो तभी से उसे जान गया कि वो मसीहा है। वहाँ पर क्या आप जानते हैं, इतिहास के अनुसार वहाँ पहले भी बहुत सारे उठ खड़े हुए थे और अपने आप को मसीहा कहा, परंतु उनमें से कोई ये नहीं कर सका, क्योंकि मसीहा, मूसा ने कहा, परमेश्वर का वचन जो असफल नहीं हो सकता, मूसा के द्वारा बोला गया था, उसने कहा तुम्हारा मसीहा मेरे समान भविष्यद्वक्ता होगा। और जब कोई अपरिचित यीशु के सामने आया और यीशु ने कहा, देखो तेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है, तभी पतरस जान गया कि ये कौन था, वो जान गया कि ये वही है। जब नतेल ने जाकर फिलिपुस को बुलाकर लाया, यानी फिलिपुस नतेल को बुलाकर यहाँ लाया, और नतेल एक महान पुरुष, धार्मिक मनुष्य, और फिलिपुस ने इस विषय में बताया वहाँ मार्ग पर कि उसने शमौन के साथ क्या किया। और जब नतेल यीशु की उपस्थिति में आया तो यीशु ने क्या कहा, उसने कहा देखो एक इजरायली जिसमें कोई दोष नहीं। उसने कहा रब्बी तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा इसके पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तू पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा। उसने कहा रब्बी रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का राजा है। देखा क्यों? ये फल है। यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं, वो उनके हृदय के सारे विचारों को जानता था। एक बार एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ और जाकर भक्त मंडली में बैठ गई। यीशु ने चारों ओर देखा, कहा किसने मुझे छुआ? सबने मना कर दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे देखा, उसको लहू बहता था। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ओह प्रभु, वो छोटी सामरी स्त्री, अब स्मरण रखें, वो इस प्रकार से अन्य जातियों के पास कभी नहीं गया। नहीं श्रीमान, उसने अपने चेलों से कहा था कि उनके पास ना जाना, वो हम थे, ये हमारा दिन है। वो हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में आया, जैसा कि उसने कहा वो होगा। परंतु जब वो उनके पास गया, क्या हुआ? जब वो सामरी स्त्री के पास गया, स्त्री ने कहा, उसने उससे कहा मुझे पानी पिला, और उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से ये कह रहा है, ये तेरे रिवाज में नहीं है। उनके बीच में रंग भेद इत्यादि का अलगाव था। उसने उन पर तभी प्रकट कर दिया कि वहाँ कोई भिन्नता नहीं है, सब एक ही वृक्ष से आए हैं, हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, हम सब। देखा, और उसने कहा भाई हम आराधना करते हैं, हमारा पिता याकूब और यहूदी पिता भी समझे, हमारे पिता याकूब ने ये कुआं खोदा और तुम कहते हो कि तुम उससे बड़े हो। और उसने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा वो अनंत जीवन है, समझे। उसने कहा हम अच्छा हम इस पहाड़ पर आराधना करते हैं, तुम यरूशलम में। उसने कहा जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला, ये इससे तय कर देगा। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं। बोला तूने ठीक कहा, कहा तेरे पांच हुए और वो जो अब तेरे पास है वो तेरा पति नहीं है। उसने कहा श्रीमान तू जानता है 400 वर्ष पहले हमारे पास भविष्यद्वक्ता था, परंतु तुझे भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, तुझे कैसे मालूम कि मेरे पांच पति हुए? उसने कहा अब हम जानते हैं ये वो मसीह का समय है, उसे यहाँ होना चाहिए जो मसीह कहलाता है, और जब वो आता है वो हमें इस प्रकार की बातें बताएगा। ओ ये उसके फल है, उसने कहा मैं वही हूँ। उसने घड़ा छोड़ा, संस्था का पुराने पानी का घड़ा, और वो नगर में चली गई। कोई मतलब नहीं याकूब के पास कितने कुएं थे, उसे एक नया सोता मिल गया। उसने नगर में जाकर कहा आओ एक मनुष्य को देखो, उसने वो सब बता दिया जो मैंने किया। क्या ये वही मसीह नहीं? क्या यही वो फल नहीं? क्या ये प्रमाण नहीं कि ये मसीह है? यहूदी इसे नहीं समझ सके। उन्होंने कहा ये भावी बताने वाला बालजबूब है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु किसी समय पवित्र आत्मा आ रहा है, इन्हीं चीजों को करेगा, और आप उसके विरोध में बोलते हैं ये आपके लिए कभी क्षमा ना होगा। समझे? अब यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूं, विश्वास मेरा विश्वास ना करें, परंतु वो फल का वृक्ष फलों को ला रहा है। अब क्या उसने क्या कहा? तो फिर उसने किस प्रकार की कलीसिया तैयार की? अब आप कैथोलिक जो ये कहना चाहते हैं कि यीशु ने कलीसिया तैयार की, तो उसने किस प्रकार की कलीसिया तैयार की? क्या उसने कभी नामधारी या मतसार का उल्लेख किया? वो सदा इसके विरोध में रहा। तुम सफेद रंगी दीवारों, तुम मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों, उसने उन्हें सब कुछ कहा जो कह सकता था। ये ठीक बात है, वो इसके विरोध में था। ये परमेश्वर का फल था। यदि आप चाहें तो दो और दो चार बना सकते हैं। ठीक है, वो संस्था जैसी चीज के विरोध में था, उनके कल्पना के विरोध में। उन्हें ढोंगी कहा, हाथ में सर्प, और कहा वे शैतान से थे। उसने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसके कार्य करोगे। तुम्हारे पूर्वजों ने किन भविष्यवक्ताओं को नहीं सताया जो मैंने अपने आगे आगे भेजे? समझे? कहा तुम उनकी कब्रें बनाते हो, तुम लोगों ने उन्हें कब्रों में पहुंचाया। ओ भाई, उसने उनके साथ मुक्का नहीं उठाया। ये ठीक बात है, यही जो परमेश्वर का फल था। ये क्या था? परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन को प्रकट करना। दूसरे तरीके से उसने कहा वचन ने क्या कहा कि मैं मसीह ये करूंगा जब मैं आता हूँ। अब यदि मैं उस वचन का फल ना लाऊं तो मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु यदि मैं उस वचन का फल लाता हूँ जो मसीह को करना था, तो फिर मैं वही हूँ। आमीन। अब तुम में से मुझे कौन पाप का दोषी ठहराता है? उसने कहा आप वही हैं। आपकी कौन सी संस्थाएं उन्हीं चीजों को कर रही हैं? आप उसी स्थिति में हैं। मसीह को यही कार्य करने थे। मसीह को एक भविष्यद्वक्ता होना है। अब आइए हम आप सबको देखें। उसने कहा तुम्हारे ऊंचे दर्जे के विचार आइए देखें, आप ये करें। अब वे शांत थे। ठीक है, ये क्या था? उसने परमेश्वर के फल उत्पन्न किए, पवित्र आत्मा उसमें था। उसने परमेश्वर के फल उत्पन्न किए, वो क्या था वो? अब जरा ध्यान से सुने, जितना जल्दी हो सकता है मैं करूंगा ताकि आपको ईस्टर का भोज लेने में देर ना हो। देखिए, परंतु आपका ईस्टर का भोजन पुनरुत्थान होना चाहिए। समझे? परंतु क्या वो परमेश्वर का सिद्ध भविष्यद्वक्ता वृक्ष था, आदर्श वृक्ष, दूल्हा वृक्ष? आमीन, महिमा हो। सीधा सीधा कुछ कहने जा रहा है, यदि वो दूल्हा वृक्ष है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? उसे बाग अदन से तो दूल्हा वृक्ष बिना मादा के फल नहीं लाता। उसके पास दुल्हन वृक्ष होना ही है। उसे भी उसी तत्व से जन्म लेना होगा। वचन देहधारी हुआ वृक्ष में। आशा है आप समझ गए। ये मादा वृक्ष में भी वही जीवन है दूल्हा जैसा कि ये दुल्हन में है। वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। ये ठीक बात है, वो दूल्हा था, स्मरण रहे। आप कहते हैं ये वचनानुसार नहीं है, वो ये है। अब मैंने इसे पकड़ लिया, समझे? अब एक मिनट में हम चंगाई सभा करने जा रहे हैं। मैंने ये पकड़ लिया, वो था। आप इसका प्रमाण चाहते हैं? उसने कहा मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो। संत यहुन्ना ने ये कहा मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम फल लाते हो। समझे? और नर वृक्ष और मादा वृक्ष परागरण उत्पन्न करते हैं एक से दूसरे पर और फल लाते हैं, और डाली और दाखलता एक ही चीज करते हैं। समझे? ये बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए उसने कहा अब पहला वृक्ष एक भविष्यद्वक्ता वृक्ष था, एक सिद्ध वृक्ष, भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर। वो मुख्य वृक्ष था, वो परमेश्वर का सिद्ध सही भविष्यद्वक्ता वृक्ष था। क्यों? वो वचन था। अब दूसरे छोटे भविष्यद्वक्ता थे, वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया, परंतु वो वचन था स्वयं में। भविष्यद्वक्ता के रूप में। आमीन। अब हम कहीं पहुंच रहे हैं, ध्यान से सुने, अब इस पर ना चूके, ये इतना अच्छा था, मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया, समझे? आमीन। कोई चिल्ला रहा है, अपना हॉर्न जोर से बजा रहा है, वहाँ पर आशा है, आपका वहाँ एक अच्छा समय है, हम यहाँ अंदर हैं, ठीक है। अब वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता वृक्ष है, क्यों? उसने परमेश्वर का सारा सिद्ध वचन प्रचार किया, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था जो प्रकट हुआ, वो सिद्ध भविष्यद्वक्ता वृक्ष था जिसने सिद्ध भविष्यद्वक्ता वचन प्रचार किया, जो सिद्ध भविष्यद्वक्ता का फल लेकर आया परमेश्वर के सिद्ध वचन के द्वारा। ओ भाई, वृक्ष के विषय में बात करते हैं, एक वृक्ष, वो जीवन का वृक्ष था जिससे आदम और हवा को स्वर्गदूत ने दूर रखा, उस रक्षक शराब से, वृक्ष से दूर। अब वही शराब यत्न कर रहे हैं कि वे दौड़कर उसके पास आएं, क्योंकि अब उनके लिए मार्ग बना दिया गया है, समझे? अब वे पीछे हट रहे हैं, वो मनुष्यों। अब सारा वचन प्रचार किया, उसने इधर उधर छाटा नहीं। जब शैतान उसके पास आया, वो महान धर्म विज्ञानी, और कहा ये लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है, परंतु ये लिखा है, उसने कहा और ये भी लिखा है। सिद्ध भविष्यद्वक्ता वृक्ष सिद्ध भविष्यद्वक्ता का वचन प्रचार कर रहा है, सिद्ध भविष्यद्वक्ता के चिन्ह के साथ सिद्ध भविष्यद्वक्ता परिणाम लाता है, आत्मा के सिद्ध फल। और नकल के लिए मैं इसको अच्छी तरह जल्दी से लेने जा रहा हूँ, क्योंकि नकल के लिए वे इसके पीछे पीछे रहते हैं। वो वचन था, आप जानते हैं, वे वचन के वृक्ष पर लटके रहे, वचन का वृक्ष, उसे मनुष्य के द्वारा बनाए गए रोमी वृक्ष पर लटकाते हैं। भाई, मैं आशा करता हूँ कि घर मिल गया। वो परमेश्वर का सिद्ध आत्मिक वृक्ष होने के नाते उन्होंने उसे मनुष्य द्वारा बनाए गए रोमी वृक्ष पर टांगा। आमीन। वैसे ही अब वे यत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर के सिद्ध वृक्ष को ले लें, वचन को, और इसमें मिलावट कर दें, और इसे किसी प्रकार के मत्सार पर टांग दें। मृत्यु और जीवन आपस में नहीं मिलेंगे। यीशु ने कभी भी अंत्येष्टि सभा नहीं की। वो मृतक को जिला देगा, क्यों? मृत्यु और जीवन एक साथ नहीं रह सकते, वे विरोधी हैं एक दूसरे के। उसने अंत्येष्टि की सभाएं कभी प्रचारित नहीं की, उसने बस उन्हें जिला दिया। आमीन। जी हाँ, क्यों? जीवन और मृत्यु। देखिए, उन्होंने उसे एक वृक्ष पर टांग दिया, क्या ये ठीक बात है? श्रापित है वो जो पेड़ पर लटकता है, क्या ये ठीक है? बाइबल ने कहा श्रापित है वो जो मनुष्य के द्वारा बनाए किसी वृक्ष पर लटकता है। इसलिए यदि आज आप किसी मनुष्य द्वारा बनाए गए वृक्ष पर लटकने का यत्न कर रहे हैं, तो उससे खुलकर अलग हो जाएं, यानी कि आपको वहाँ लटकाने ना दें, क्योंकि वो मरुओं का स्थान, कोई मनुष्य द्वारा बनाया लूथर बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन पेंटेकोस्टल संस्था, ये ठीक बात है। कोई मनुष्य द्वारा बनाया हुआ वृक्ष वहाँ ना लटकें, बल्कि इसे अपने को वहाँ ना लटकाने दें। यदि हो सके तो वे आपको वहाँ लटका देंगे, जब तक आपका सारा जीवन बाहर ना निकल जाए, जब तक और उनकी शिक्षा को पहचान ना लें, ये ठीक बात है। परंतु यही जहाँ उन्होंने इस सिद्ध वृक्ष को टांगा, परमेश्वर का सिद्ध फल का वृक्ष मनुष्यों द्वारा बनाए रोमी वृक्ष पर टांग दिया, यही है मनुष्य द्वारा बनाए वृक्ष पर टंगना श्रापित था। ये क्या कि उसे अपनी दृष्टि से दूर कर दे? इसके बाद जब उसने सारे फल उत्पन्न किए, इतिहास ने मरियम मगदलीनी के लिए कहा, वो उसके आगे दौड़ गई और कहा, इसने क्या किया है? इसने कौन सी बुराई की है? उसने सारे जलूस को रोक दिया, बोली, क्या जो उसने किया वो बुरा था? क्या उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के? क्या उसने इसको छोड़ कि बीमारों को चंगा करे? क्या किया? मरेओं को जिलाया, और जीवित परमेश्वर का चिन्ह उसमें है, तुम कैसे उसे दोषी ठहरा सकते हो? और उन्होंने उसके मुंह पर चांटा मारा और कहा, क्या तुम इस बदनाम स्त्री की बात सुनोगे बजाय अपने याजक के? आप वहीं पर हैं, आपके बिशप, आप वहीं पर हैं, आज वही बात है, ये ठीक बात है। ओ हाँ, और जब उसने ये सब कर दिया और स्वयं को सिद्ध कर दिया कि वो क्या था, और उन पर डाल दिया और कहा, यदि मैं वो नहीं तो फिर तुम कौन हो? यदि तुम मुझे पाप का दोषी ठहरा सकते हो, यदि मैं वचन में कहीं गलत हूँ तो मुझे दिखाओ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कहाँ गलत हो। समझे, पाप अविश्वास है, हम ये जानते हैं। अब उसे अपनी दृष्टि से दूर करने को उन्होंने उससे इतनी ईर्ष्या की क्योंकि उसने उनकी संस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी। उसे अपनी दृष्टि से दूर करने को उन्होंने उसे गाड़ दिया और उस पर एक बड़ा नामधारी पत्थर लुढ़का दिया उसके द्वार पर, ताकि पक्का हो जाए कि फिर ना जी उठे। समझे, ओ प्रभु, उस सिद्ध वृक्ष के लिए सोचें। दाऊद ने पीछे मुड़कर और इसे देखा, उसने कहा वो जल की नदियों के पास लगा है, वो अपने ऋतु में अपने पत्ते निकालता है और उसके फल वो छोड़ाना जाएगा, वो मुरझाएगा नहीं, वो जो कुछ भी करेगा फलवंत होगा। वो संपन्नता का पुत्र था, यूसुफ उसका प्रतीक था, वो यूसुफ का प्रतिरूप है। यूसुफ जहाँ भी गया वहाँ संपन्नता आई। यही चीज यीशु के साथ है, उसका वचन मेरा वचन संपन्नता होगा और मेरे पास खाली ना लौटेगा जो मैंने इसके लिए प्रस्तावित किया है। समझे, वो वचन था, वचन पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा भेजा गया था और ये ठीक वही पूरा करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे भेजा है। अब जरा ध्यान से सुने, ये पौष्टिक हो गया है, इसके ऊपर क्रीम के साथ ध्यान दें। ये यहाँ आता है और वे परमेश्वर के उन्हीं कार्यों के लिए। जब वो वहाँ खड़ा हुआ उसने उनसे पूछा, बोला यदि मैं उन्हीं कार्यों को ना करूँ जो परमेश्वर ने कहे मुझे करने ही चाहिए तो मैं उसकी ओर से नहीं हूँ, तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो तुम कामों का विश्वास करो। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते एक मनुष्य के नाते ये कर रहा हूँ, तो उन कामों का जो मैं कर रहा हूँ विश्वास करो। वे मेरी गवाही देते हैं, वो मेरी आवाज़ जो मैं बोल सकता हूँ उससे अधिक तेज है। ये ठीक बात है और ये चीज किसी भी समय लागू होगी। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही होगी। अब ध्यान दें, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो, मत करो, और यदि मैं उन कामों को करता हूं तो मेरा विश्वास करो। तब उन्होंने क्या किया, उस मूल्यवान वृक्ष को लिया और काट दिया और उस मनुष्य द्वारा बनाए गए वृक्ष पर टांग दिया। ये ठीक बात है, उसमें से जीवन को काट दिया और उसे मनुष्य द्वारा बनाए गए वृक्ष पर टांग दिया उपहास उड़ाने को। तब उन्होंने ये पसंद नहीं किया, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, इस विषय में चिल्ला रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे वहाँ से लिया। उन्होंने कहा हम अपना नामधारी इतना कठोर बनाएंगे कि वे उन पवित्र शोर करने वालों को हाँ भीतर न आने देंगे। इसलिए उन्होंने जल्द ही उसे अरमतिया यूसुफ की कब्र में डाल दिया और उन्होंने एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। इसे लुढ़काने के लिए उन्होंने सैकड़ों पुरुषों को लिया। क्या आपने उस रात्रि चित्र में देखा, एक बड़े मार्ग से उन्होंने उस बड़े पत्थर को लुढ़काया, क्षणों का था। अपने बड़े संस्था के पत्थर को वहाँ लुढ़का दिया ताकि वो जी ना उठे, परंतु क्या वो उसे रोक सका, नहीं, परंतु मैं वापस ले आऊंगा, यहोवा ने कहा। आइए अब मूल पाठ पर ध्यान करें और लागू करें। यहोवा कहता है मैं लौटा दूंगा, मैं उसे 3 दिन में वापस ले आऊंगा, मैं उसे फिर से जिला उठाऊंगा। वे उसे उस चट्टान में ना छिपा सकेंगे, वे उसे उनकी दृष्टि से ना छिपा सके, वे उससे पीछा ना छुटा सके। यहोवा कहता है मैं उसे वापस ले आऊंगा। 3 दिन में वो जीवित हो उठा, वापस आ गया। ईस्टर के बाद उसका जी उठना, उसने कहा सारे संसार में जाओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जैसे कि जीवित पिता ने मुझे भेजा और वो मुझ में है, इसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ और तुम्हारे अंदर होऊंगा। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वही चीज जो मैंने की कार्य की सिद्ध करूंगा कि मैं था, तुम भी वही कार्य करोगे सिद्ध करने के लिए कि तुम हो। मुझे अच्छा लगता है। और विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, ना कि बनावटी विश्वासी परंतु विश्वासी। समझे, ये चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी ये करोगे और प्रमाणित करोगे कि तुम विश्वासी हो। बिल्कुल वैसे ही कार्य जो मैंने किए, क्योंकि जीवित पिता मुझ में रहता है, ये मैं नहीं जो इन कार्यों को करता हूँ, ये मेरा पिता है, और ये तुम नहीं होगे जो कार्य कर रहे हैं, ये मैं तुम में होऊंगा, कार्यों को कर रहा हूँ। समझे, अब तुम सारे संसार में जाओ, नहीं तो तुम वो बनने जा रहे हो जो मेरे द्वारा एक दुल्हन के समान जाना गया। समझे, ठीक बात है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं तुम मेरा भाग होगे, तुम मेरी दुल्हन होगे, मेरा जीवन तुम्हारी देह में होगा। जैसे एक पति और पत्नी एक व्यक्ति हैं, तुम और मैं एक होने जा रहे हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, और मैं तुम में और तुम मुझ में। ओ, मुझे ये अच्छा लगता है। शैतान इस बात पर बहुत क्रोधित होता है। देखिए, परमेश्वर का एकत्व, वो सब जो परमेश्वर था उसने इसे मसीह में उंडेल दिया, और वो सब जो मसीह था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। आप यही हैं, उन सबको एक बनाता है। अब देखिए, अब दुल्हन के लोग एक जीवन का वृक्ष हैं। दूसरे शब्दों में जैसे पति और पत्नी एक हैं, मसीह और उसकी दुल्हन एक हैं, एक चीज, एक ही आत्मा, एक से काम, एक से चिन्ह, सब कुछ। क्योंकि जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, कहाँ तक? सारे संसार में, कितना? हर प्राणी। क्या ये ठीक बात है? ओ, अब ध्यान से सुने, अब मैग्नम बंदूक से गोली दागने जा रहा हूँ। रोमी कीड़ा, उसने दुल्हन को खाना आरंभ कर दिया, जब तक कि वो वृक्ष की जड़ों पर ना पहुंच जाए। वही रोमी वृक्ष, किसी प्रकार के वृक्ष ने मसीह को काट गिराया? किस प्रकार के वृक्ष ने मसीह की दुल्हन को काट गिराया? कैसे? वचन के बदले में कुछ देकर। इसलिए आप देखते हैं प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो परमेश्वर के वचन को नहीं लेती, वे रोमन कलीसिया की एक पुत्री है। परमेश्वर ने कभी भी किसी समय कलीसिया को संस्थागत नहीं किया। रोमन कैथोलिक कलीसिया पहली संस्थागत कलीसिया थी और वे सारी के सारी उसकी पुत्रियां हैं जो संस्थागत हुई। वे उसके साथ मर गई, वे उसके साथ मर गए। बाइबल ने कहा कि वे उसके बालकों को आग से जला देगा। कितने ये बात जानते हैं? बाइबल ने ऐसा कहा है। भाई, बाइबल ने कहा है कि गेहूं और जंगली पौधे एक साथ बढ़ेंगे, जब तक अंत का दिन नहीं आ जाता तब वो पहले जंगली पौधों का गट्ठर बांधेगा, ठीक है, और उन्हें जलाएगा और गेहूं खत्ते में जाएगा। क्या ठीक बात है? जंगली पौधे स्वयं ही अपने आप को एक साथ संस्था में बांध रहे हैं। कलीसियाओं का संघ परमाणु की आग से जलने को बिल्कुल ठीक, परंतु कलीसिया खत्ते में जाने के लिए तैयार हो रही है। रैप्चर में उतनी ही निश्चित जैसे संसार है, क्योंकि स्वतंत्र स्त्री दासी के संग वारिस नहीं। ओ भाई एंथोनी, ओ हम आने वाले आनंद वाली सहस्र शताब्दी का दिन का ध्यान कर रहे हैं, जब हमारा धन्य प्रभु आएगा और अपनी प्रतीक्षा करती दुल्हन को ले जाएगा। ओ मेरा प्राण उठा लिए जाने के आनंद से भर गया है, जैसा कि मैं परिश्रम प्रतीक्षा और प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु फिर से पृथ्वी पर आ रहा है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, वो जंगली पौधे को जला देगा और गेहूँ उसे वो खत्ते में ले जाएगा। रोमी कीड़े ने उस वृक्ष को पौलुस के दिनों में खाना आरंभ कर दिया। उसने कहा, मैं समझता हूँ यह वचन है, मेरे चले जाने के बाद तुम भाइयों में से कुछ मनुष्य उठ खड़े होंगे, जैसे कि उन पर भेड़ की खाल हो और भीतर से भेड़िए, और बहुतों को अपनी ओर खींच लेंगे, क्योंकि मसीह विरोधी आत्मा जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि जगत में आने वाली है, वो अब पहले ही संसार में है और बालकों के बीच कार्य कर रही है। क्या? अनज्ञाकारी। अनज्ञाकारी किसमें? वचन में। अब वही है, संस्था आरंभ हो रही है। मित्रों, आप समझे मेरा क्या अर्थ है? वे जो सब समझते हैं आमीन कहें। खाना आरंभ कर दिया, ये क्या करेगा? वो पुराना कीड़ा आरंभ हो गया, वो पुराना येलक नाम टिड्डी, यही जो योल ने देखा। अब सुनिए, हम अंत के समीप आ रहे हैं। योल ने ये देखा, उसने कहा, जो गाजाम ने छोड़ा उसे अरबे टिड्डी खा गई, जो अरबे ने छोड़ा उसे येलक ने खा ले लिया, येलक ने जो छोड़ा क्यों उसे हासिल ने खा लिया। यही उसने कहा, ये ठीक यही है, ये परमेश्वर का वृक्ष है, वो पेड़ उसने काट कर गिरा दिया येलक टिड्डी ने, ठीक है। रोमी कीड़े हासिल ने दुल्हन के वृक्ष को खाना आरंभ कर दिया और इसे नीचे जड़ तक ले गया, पीछे से सब कुछ खा लिया और वृक्ष को काट दिया, जैसे उसने मसीह यीशु के साथ किया, दूल्हे के साथ दुल्हन को काट कर नीचे गिरा दिया और मत्सार और नामधारी में आरंभ कर दिया। वही पुराना कीड़ा, परंतु क्या वो महिमा हो उसकी जड़ों में पहले से ठहरा हुआ बीज था, अब्राहम का राजकीय बीज, ये नहीं मर सका। वचन प्रतिज्ञा की जड़ों में था। यहोवा ने कहा, मैं सब लौटा दूंगा। क्या वे सारे वर्ष जो हासिल कीड़े ने काट दिए, वो सब जो टिड्डी ने खा लिया, वो सब बाकी जो कीड़ों ने खा लिया, मैं वापस लौटा दूंगा, यहोवा ने कहा। अब इसकी तुलना पिछले रविवार से करें और पहले के रविवार। अब ये संदेश ध्यान से सुने, जैसा कि आप बंद करने पर हैं, ध्यान दें। वो सब जो कीड़ों ने खा लिया, यहोवा यूं कहता है, मैं सब लौटा दूंगा, मैं उसमें का सब छोटे से छोटा फिर से वापस लौटा दूंगा। अब यदि आप शांत बैठ सकते हैं कुछ मिनटों के लिए और ध्यान से सुने, तैयार हो जाएं और अपने सारे हृदय से प्रार्थना करें, क्योंकि ये परमेश्वर ने ही यहाँ पर प्रकट करना है। इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा लौटाना आरंभ हो गई है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो इसे लौटा देगा, वैसे ही जैसे उसने दुल्हन के वृक्ष को बढ़ाया, दूल्हे के वृक्ष को, वो दुल्हन के वृक्ष को बढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ एक होने जा रहा है, वैसे ही निश्चित जैसे संसार। अब क्या ठीक है, इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा आरंभ हो गई। प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा वो जो टिड्डियों और कीड़ों ने खा लिया, जैसा कि पहली बार जब उसने पहली कलीसिया बनाई। अब मैं आपके सामने कुछ शिक्षाएं लाने जा रहा हूं, यदि आप विश्वास करना ना चाहें ठीक है, परंतु आप अच्छा हो कि पहले आप ढूंढ लें, समझे, ध्यान दें। उसने इस वृक्ष को कैसे उगाया पहली बार में? ओ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा करता है, मैं जानता हूँ कि मैं सेवकों के समान नहीं बोलता यहाँ इस प्रकार से खड़ा हूँ, परंतु जो बात मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, समझे। अब ध्यान दें, जैसे कि पहली बार जब उसने पहली कलीसियाई आरंभ की, रोमी हासिल ने खा लिया और ये लेख ने और आदि आदि, उसने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने के साथ आरंभ किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। संत यूहन्ना के 13-17 अध्याय में 17वां पद, यीशु ने कहा पिता इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, 13 वचन सत्य है। दूसरा कार्य कलीसिया में पवित्रीकरण का था, धर्मी ठहराने के बाद पवित्रीकरण का था, और उनके पवित्रीकरण हो जाने के पश्चात उसने उनसे कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना, लूका 24:49, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ। और वो उसने वृक्ष को जन्म दिया, पवित्र आत्मा, पेंतिकोस्तल, धर्मी ठहराना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और तब मसीह उनमें रहने के लिए आ गया ताकि फल लेकर के आए। आमीन, ये ठीक बात है। यूहन्ना ने धर्मी ठहराना प्रचार किया। अब देखिए, ये स्वाभाविक जन्म का निर्माण करता है। जब एक स्त्री एक बालक को जन्म दे रही होती है, इसे सुने, पहले चीज स्त्री को क्या होता है, क्या आता है, पहले पानी, प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, धर्मी ठहरना। दूसरी बात स्त्री को क्या होता है, लहू, क्या ठीक है, लहू पवित्रीकरण। तब अगली चीज जीवन, पानी, लहू, आत्मा। संत यूहन्ना यानी पहला यूहन्ना 5:7-5, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ ये कहा गया, तीन है जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, वचन जो कि पुत्र है, और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। और तीन है जो पृथ्वी पर गवाही देते हैं, पानी, लहू और आत्मा, वे एक नहीं है परंतु एक में सहमत है। आप पिता को बिना पुत्र के नहीं पा सकते, आप बिना पवित्र आत्मा के पुत्र को नहीं पा सकते, परंतु आप बिना पवित्रीकरण के धर्मी ठहर सकते हैं, आप बिना पवित्र आत्मा पाए पवित्र ठहर सकते हैं। उस नाजरीन भाई के विषय में क्या है, उनका यीशु मसीह के द्वारा पवित्रीकरण हुआ था 1 वर्ष और 6 महीने पहले जब पवित्र आत्मा उतरा, क्या ये ठीक बात है, उनका यीशु मसीह के द्वारा पवित्रीकरण हुआ। अब जैसे वो पहली दुल्हन वृक्ष को लाया जिसे अरबे और गाजाम नाम टिड्डी ने खा लिया, वे दूसरे वृक्ष को लौटा रहा है, उन्हें पहले से ठहराई हुई जड़ों से वापस ला रहा है जो मर नहीं सकते। वे नदी के किनारे खड़े हैं, वे इस जल में जी रहे हैं, ये अपने आप को नहीं दिखा सकते परंतु ये वहाँ है। जो भी है अब ये आरंभ हो रहा है, ध्यान दें, वही कीड़ा जैसे कि वो उसी चीज को लौटाता है उसी विधि के द्वारा। पहली बार जब वृक्ष कैथोलिक वाद से निकलकर बाहर आता है, मार्टिन लूथर था जिसने धर्मी ठहरना प्रचार किया। दूसरा दूत जॉन वेस्ली था जिसने पवित्रीकरण का प्रचार किया। लूथर ने धर्मी ठहरना प्रचार किया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वेस्ली ने पवित्रीकरण का प्रचार किया, अनुग्रह का दूसरा निश्चित कार्य। और तब पवित्र आत्मा आता है जैसे कि उसने वृक्ष को तैयार किया पहली बार, वो यहाँ उसे फिर वापस लौटा रहा है उसी चीज में दूसरी बार, उसे समझे, ध्यान दे, वही कीड़ा, वही छोटा धूर्त, वही कीड़ा जिसने आरंभ करके वृक्ष को मारा, फिर से लूथरन की डालियों में आरंभ कर दिया। परंतु क्या ये इसे नहीं मार सकता, ये इसे नहीं मार सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं लौटा दूंगा। इस कीड़े ने लूथर पर आरंभ कर दिया ताकि लूथरन डालियों को मार डाले, ये सीधा वेस्ली पर भी आया और वेस्ली की सारी डालियों को मार डाला, परंतु वृक्ष का मूल भाग ऊपर को आ रहा है। ध्यान दें, पुराने समय में जब वृक्ष मार डाला गया, ये मार डाला गया, ये सीधा जड़ों में चला गया जब इसने पहले मारा था, परंतु इस बार क्योंकि वचन पहले से ठहराया हुआ है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर ने कहा मैं लौटा दूंगा, कोई मतलब नहीं वे कितने भी संस्थागत हो जाएं, वे कितना भी ये वो आदि करें, मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ, बस ये तय हो गया। सब हंस और उपहास कर रहे हैं, पवित्र शोर करने वाला निरर्थक कह रहे हैं, आप जो चाहें, फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं लौटा दूंगा, प्रभु कहता है। वैसे ही निश्चित जैसे उसने यीशु को कब्र से बाहर निकाला, तीन दिनों के अंदर, तीन विधानों के अंतर्गत या तीन भागों में, वो कलीसिया को उसकी परिपूर्णता में उठाने जा रहा है और फिर से सामर्थी, प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा। क्या हुआ? उस पुराने कीड़े ने खाना आरंभ कर दिया और उसी प्रकार का प्रभाव जो उसने किया, उसने क्या किया? उसने केवल लूथर की डालियों को लिया, उसके पीछे जो आत्मा था उसे कभी नहीं ले पाया जो लूथर में था, क्योंकि वो उसी पर जीवित रहा। तब साथ साथ वेस्ली आया और वेस्ली के मर जाने के बाद, वो महान भविष्यवक्ता वेस्ली के मर जाने के बाद उन्होंने क्या किया? वे संस्थागत हो गए और सारी डालियां मर गईं। परंतु उसने क्या किया? कलीसिया उसी पर जीवित रही और पेंटिकॉस्ट पर आ गई। जब वे संस्थागत हुए क्या हुआ? डालियां मर गईं, परंतु क्या कलीसिया आगे बढ़ती रही? क्या वही चीज पेंटिकॉस्टल ने की? वही पुराना कैथोलिक नामधारी जिसने इसे पहले स्थान पर लिया ताकि वृक्ष को नष्ट कर दे, दुल्हन का वृक्ष पहले स्थान पर, शैतान की वही पुरानी चाल जो इस दूसरे वृक्ष पर चली, परंतु क्या परमेश्वर ने इसे पहले से ही ठहराया? चाहे जो हो, इसे आगे बढ़ना ही है। यदि ये ना होता जब लूथर संस्थागत हुआ, तो बस यही तय हो जाता, ये दूसरों की तरह पीछे चला गया, ये दूसरी कैथोलिक कलीसिया होती, रोमन कैथोलिक कलीसिया, समझे? परंतु परमेश्वर खाने हुए था, उसने अपना वचन बोला, उसका नियम देखेगा कि वो घटित हो। कोई मतलब नहीं कितनी ही शीत उस पर आए, ये जीने ही जा रहा है, चाहे जो हो। हमारे पर शीत प्रभाव पड़े, नामधारी विषमताएं और हर चीज, परंतु वो वृक्ष वैसे ही निश्चित रूप में जीवित रहेगा जैसे जीवित परमेश्वर उसे जीवित बनाए रखता है। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा मैं इसे लौटा दूंगा। मैं जानता हूँ हमारे शरद कुछ देर में है, ईस्टर की ऋतु कुछ देर में आ रही है, प्रभु अपने आगमन में देरी कर रहा है। वे कहते हैं हर चीज वैसी ही है और ठंडी हवाओं ने बहुत सारी नामधारी डालियों को मार डाला है, परंतु ये उस जीवन को नहीं मार सकती जो कि ठहराया हुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं। वो सब जिसको उसने पहले से जाना उसने बुलाया, वे जिनको उसने बुलाया उसने धर्मी ठहराया, वे जिनको धर्मी ठहराया उसने पहले ही महिमामय कर दिया। हालेलुया, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, मेमने की जीवन की पुस्तक, और मर नहीं सकता। वे सारे कीड़े जो नरक उस पर छोड़ सकता है, वे कभी उसे रोक नहीं पाएंगे। कोई समयवाद नहीं, कैथोलिकवाद नहीं, कुछ भी इसे नहीं रोक पाएगा। प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा। सारे मनुष्य द्वारा बनाए हुए वृक्ष वे वहाँ नहीं टिक पाएंगे, सारी कब्रें से वहाँ नहीं रख पाएंगी, सारे नामधारियों के बड़े बड़े पत्थर जो द्वार पर रखे हैं वे उसे वहाँ नहीं रख पाएंगे। प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा। वहाँ एक ईस्टर होगा, ये वैसी ही कलीसिया को लाएगा उसी सामर्थ में। मैं उस दुल्हन को लौटा ले आऊंगा जो वहाँ पहले थी, उन्हीं चिन्हों के साथ, वही फल, वही चीजें जो उन्होंने पहले की, मैं उसे फिर से वापस ले आऊंगा। मैं लौटा ले आऊंगा, प्रभु ने कहा। क्या जो कुछ नामधारियों ने खा लिया वो सब कुछ वापस ले आऊंगा, जो संस्थाओं ने खा लिया, प्रभु कहता है मैं लौटा ले आऊंगा इसका सारा का सारा। अब आप कहते हैं उन चीजों के विषय में क्या है जो उन नामधारियों में चली गई? परमेश्वर एक अच्छा किसान है, उसने वृक्ष की छटाई की है जो कि ये थे। वे जो मरी हुई डालियां थी वो क्या करने जा रहा है? उन्हें जला देगा। बिल्कुल ठीक बात, परमेश्वर इस वृक्ष का माली है, वो इसकी चिंता करता है, वो इसके मिराश का ध्यान रखता है। वो उसकी मिराश क्या है? उसका अपना वचन, वो अपने वचन का ध्यान रखता है कि उसकी पुष्टि करे, उस पर ध्यान करें। देखिए वो कहाँ से ले सकता है, वो इसे छुड़ाने जा रहा है। इसलिए जब ये कलीसियाएं संस्थागत होने लगी और इस प्रकार की चीजें, उसने इनकी छटाई कर दी और कलीसिया बढ़ती गई। जब लूथर ने कहा अब हम संस्थागत होने जा रहे हैं, हम उतने ही बड़े हैं जितने कैथोलिक, ठीक है, उसने बस डालियों को छांट दिया और उसके आगे वेस्ली ने ले लिया, दूसरा भविष्यवक्ता उठ खड़ा किया। तब जैसे ही वेस्ली ने ये किया, वही वेस्ली मर गया, वो महान भविष्यवक्ता, उसने क्या किया? इसे संस्थागत किया, तो पेंटिकॉस्टल आ गया। जैसे ही वो मरी उसने उसे छांट दिया, वो उससे आगे बढ़ गई, समझे? वो इसे वापस लाने जा रहा है। फल कहाँ पर लगते हैं? ये यहाँ नीचे से आरंभ नहीं होते, ये चोटी से आरंभ होते हैं। सबसे पहले सूर्य पेड़ पर कहाँ चमकता है? ओम महिमा हो, सांझ का उजियाला वृक्ष की चोटी पर, आमीन, ना कि नीचे की डालियों पर, परंतु वहाँ पेड़ की चोटी पर जहाँ फल पकता है। आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। क्या आप उसकी सेवा करेंगे? आमीन। क्या आप उसका विश्वास करेंगे? आमीन। मैं भी उस पर निश्चय ही विश्वास करता हूँ अपने पूरे हृदय से। अब ये क्या है? वो उन पुरानी मरी हुई दाखलता की डालियों को छाटने जा रहा है जैसे कि वो आती है। वे सारी संस्थागत दाखलताएं जब तक पेड़ की चोटी के साथ ठीक ना हो जाएं, यहीं जहां वो अपना फल लेने जा रहा है। अब ध्यान दें, परमेश्वर ने उन्हें छाट दिया है, ठीक है। वे मर गए और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगा, पहले पुनरुत्थान में नहीं आएगा, परंतु दाखलता का फल, मूल परमेश्वर की दाखलता। वे लोग संस्थागत झुंड में जाएंगे परंतु वे दाखलता के फलों में नहीं आएंगे। अब देखिए, परमेश्वर ने कभी कोई संस्था नहीं निकाली, कलीसिया उसमें सांटी गई एक संस्था, और परमेश्वर ने उसे काट दिया, उसके जीवन संचार को काट दिया। ये संस्थागत फल उत्पन्न करती है, परंतु यदि दाखलता, यदि कोई डाली दाखलता में से निकलेगी तो ये वही उत्पन्न करेगी जो उसने पहले किया, जो पहला वाला फल था, और रोम ने अपने कीड़े उस पर खाने के लिए भेज दिए। परंतु परमेश्वर इतने ऊंचे पर उत्पन्न करने पर है कि ये नहीं छू सकते, ये ऊपर आने जा रहा है। आमीन। मैं आइए चलते हैं। वृक्ष एक स्थान से दूसरे को जाता है, एक विधान से दूसरे विधान में। लूथर से ये वेसली में चला गया, वेसली से ये पेंटिकॉस्टल में चला गया, पेंटिकॉस्टल से ये वचन में जाता है। सच्चे विश्वासी के लिए फिर से ईस्टर है, उसके कभी भी असफल ना होने वाला वचन। ये ईस्टर है, ये पुनरुत्थान है। परमेश्वर के लोग सब ओर हैं, ये उनके लिए ईस्टर है। क्यों? वे जी उठे। आमीन। वे उन मतदानों और नामधारियों से जी उठे, उनमें से होते हुए सीधा ऊपर आए। ये फिर से ईस्टर है। वो शाही बीज जड़ों में छिपा हुआ था, वो वचन, वो पीछे इस वचन में छिपा हुआ था वर्षों और वर्षों से और वर्षों से, अब प्रकट होना आरंभ हो गया। ये ईस्टर का समय है। जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए हुआ ये कलीसिया खड़ी होनी आरंभ हो गई। अब ध्यान दे कैसे परमेश्वर ने आरंभ में ठहरा दिया, मुझे मिला। भाई मैं ये कहने जा रहा हूँ, जो भी है ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे कि पहले उस सिद्ध वृक्ष को उसकी मृत्यु के पश्चात तीन दिनों में लौटा ले आने वाला है। पहले वृक्ष की मृत्यु के बाद उसने इसे तीन दिन में लौटा दिया, क्या ठीक बात है? वापस लौटा ले आया। अब दुल्हन भी तीन दिनों में वापस आने जा रही है। तीन अवस्थाएं ये वापस छुड़ा ली जाएगी। अब देखिए, क्या गर्मी ठहराना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एक दो तीन। अब ध्यान दें, तीन दिनों के पश्चात पहला वृक्ष लौटाया गया जैसा आरंभ में था, उन्हीं चिन्हों, उन्हीं आश्चर्य कर्मों के साथ यीशु वापस आया। वही यीशु उन्हीं चीजों को करते हुए तीसरे दिन के अंत में चिन्ह प्रकट हुए, पहले दिन के अंत में नहीं। ओ भाई, मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे हैं। तीसरे दिन जब मसीह का वास्तविक प्रकटीकरण जाना गया था, तीसरे दिन के अंत में, समझे? ध्यान दें, क्या आप ये समझ रहे हैं? पहले दिन नहीं, मरा हुआ रूप। दूसरा दिन वहाँ एक अफवाह थी, दूसरे दिन वो अब भी मरा हुआ है। लूथर, वेस्ली और तीसरे दिन आरंभ में यहाँ आसपास अफवाह थी, ठीक है। पहले दिन कुछ नहीं, लूथर, दूसरे दिन कुछ नहीं, और तीसरे दिन में पवित्र आत्मा का विधान, वहाँ आसपास में अफवाह थी, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। परंतु तीसरे दिन के अंत में जहाँ उसने स्वयं को प्रकट किया, सीधा उनके बीच में आ गया, अपने लोगों के बीच में आ गया और कहा, मुझे देखो, मैं वही हूँ। मरा हुआ रूप पेंटिकॉस्टल तक गया, तब आसपास अफवाह आरंभ हो गई कि वो था। अब इस अंतिम दिन में वो वहाँ ठीक हमारे बीच में है, हमारे बीच चल फिर रहा है। तीसरे दिन के अंत में वो प्रकट हुआ और अपने पुनरुत्थान के सारे चिन्ह दिखाए कि वो जीवित है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसकी उपस्थिति के जीवित फल, उसकी उपस्थिति के जीवित फल, क्या आप समझ रहे हैं? दिन के बिल्कुल अंत में प्रकट हुआ, जब वो सब पर प्रकट हुआ, उसकी कलीसिया, आमीन, क्यों? वे सब एक साथ थे, ओ आमीन, तीसरे दिन के अंत में। सांझ के उजियाले, बाइबल ने कहा, अंत के दिनों में चमकेगा। सांझ का उजियाला वही उजियाला पश्चिम में है, ये वही उजियाला था जो पूर्व में था। वही उजियाला जो पूर्व में चमका, जो पहली कलीसिया लाया था, जिसे रोमियों ने अपनी मूर्ति पूजा इत्यादि से काट दिया था, सांझ के उजियाले में वही उजियाला, अब ध्यान दें, वही उजियाला। सांझ का उजियाला उसी उद्देश्य के लिए आया है जिसके लिए प्रातः उजियाला आया था, उन चीजों को वापस ले आए जो अंधकार के युग में काट डाला गया रोम के द्वारा। परमेश्वर लौटाने जा रहा है सांझ का उजियाला चमकाने के द्वारा। क्या परमेश्वर का संपूर्ण वचन फिर वापस लाना, मसीह का पूर्ण प्रकटीकरण, उसकी कलीसिया में हर चीज जो उसने की ठीक उसी प्रकार से उसने किया, ये सांझ के उजियाले में फिर से होगा। देखा मेरा क्या अर्थ है? ओ क्या ही आश्चर्यजनक। और जानते हैं कि हम ठीक यहाँ पर अब रह रहे हैं कि अब इसे देखें, सांझ के उजियाले को ठीक भविष्यवाणी के अनुसार। सांझ का उजियाला क्या लौटाने को आया है? उन चीजों को लौटाए जिन्हें कीड़े खा गए थे। ये बढ़ना आरंभ हो गया और फिर ये क्या करता है? इसका नामकरण हो गया, इसलिए परमेश्वर ने इसे छांट दिया, इन्हें बांधकर पीछे डाल दिया, उन्हें आगे जाने दिया और संस्थागत। तब दूसरा वाला आया, उसने इन्हें बांध दिया और एक और डाल दिया। वृक्ष आगे बढ़ता गया, तब उसने इन्हें बांधकर एक और डाल दिया, कहा अब इन्हीं किन्हीं दिनों में वे जला दिए जाएंगे, और उन्हें उनकी संस्था में बांध दिया। परंतु फिर क्या? वृक्ष के ठीक चोटी पर, जहां पहले फल पके, ये ठीक बात है, ठीक पेड़ की चोटी पर, इसलिए ये वृक्ष की चोटी है, ये जहाँ सांझ का उजियाला दिखाई पड़ता है। अब नूह की नाव में तीन तल थे, पहला खाना रेंगने वाली चीजों का, समझे, दूसरा चिड़ियों के लिए था, परंतु सबसे ऊपर वाला जहां उजियाला था, पहले जो उजियाला चमका, पहला कभी पहले तल पर नहीं आया दूसरे तल पर, परंतु ऊपर वाले तल पर। वृक्ष अपना फल पहले नीचे की ओर उत्पन्न नहीं करता, दूसरा, इस प्रकार से ये सब संस्था में छांट दिए गए, परंतु ये इसकी चोटी के भाग में, जहां प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा, मैं सांझ के उजियाले को भेजूंगा, ये वापस ले आएगा, वचन को वापस ले आएगा, इसे प्रकट करेगा। मैं उस सब को लौटा दूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा दी है, वो सब जिसकी मैंने प्रतिज्ञा दी है, वही पवित्र आत्मा लाएगा उन्हीं चिन्हों को। मेरे पास एक ईस्टर है दुल्हन के लिए, एक पुनरुत्थान वैसा ही जैसा दूल्हे के लिए था, समझे। सांझ का उजियाला चमकने के लिए बाहर आ गया है, जैसा प्रातः में था, वही चिन्ह, वही चीजें, वही उजियाला उन्हीं फलों को उत्पन्न करेगा कि वे वहाँ थे, यदि ये उसी वृक्ष पर चमक रहा है। आमीन। अपने वचन को प्रमाणित करते हुए पूरा किया, प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा। अब जरा ध्यान से सुने, अब वहाँ था, अब सुनिए, अब इस पर चूके ना, वहाँ मृत्यु के चार संदेशवाहक थे, या आप चाहेंगे बस मैं बंद करें, या बल्कि आप चाहेंगे इस पर आते हैं, अब जरा ध्यान से सुने। देखिए, वहाँ मृत्यु के चार संदेशवाहक कि वृक्ष को मार डालें, ये ठीक बात है। ये क्या था? गाजाम, टिड्डी, येलेक नाम कीड़ा, क्या ये ठीक है? रोमी प्रेतों के चार संदेशवाहक धर्म सिद्धांतों ने उस वृक्ष को मार डाला। एक ने इसके फल खा लिए, एक ने छाल खा ली, या इसकी पत्तियां, एक ने छाल खा ली, एक ने जीवन ले लिया, क्या ये ठीक बात है? धर्म सिद्धांतों के चार संदेश वाहकों ने उस वृक्ष को मार डाला, सबको सिवाय जड़ों के। और यदि मृत्यु के चार संदेश लाने वालों ने वृक्ष को मार डाला, चार संदेश वाहकों ने वृक्ष के जीवन को वापस ले आए, क्या आप इसे समझे? आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं इसे लौटा दूंगा, वो इसे वापस लाने जा रहा है। कैसे? उन चार मृत्यु के संदेश लाने वालों से जिन्होंने इसे मारा, तो फिर जीवन के चार संदेश वाहक इसे वापस ले आएंगे। पहला क्या था? मार्टिन लूथर, धर्मी ठहराना। दूसरा वाला क्या था? जॉन वेसली, पवित्रीकरण के द्वारा। तीसरा वाला क्या था? पेंटिकॉस्ट, वरदानों की वापसी के साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। चौथा वाला क्या था? वचन। क्या? वचन। वहाँ चार महान भविष्यवक्ता थे, उनमें से एक मार्टिन लूथर। उसने उजियाला चमकाना आरंभ कर दिया। वहाँ एक छोटी सी ज्योति थी, बहुत थोड़ी सी शक्ति के साथ धार्मिकता की। फिर वेस्ली आया, थोड़ा और मजबूत, पवित्रीकरण। वेस्ली के बाद और मजबूत वाला आया, पेंटिकॉस्टल, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दूसरे महान भविष्यवक्ताओं में। समझे? मलाकी चार के अंतिम दिनों में एलिया को उसी वचन के साथ आना है। प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आया, सांझ के उजियाले में सामने आया कि छुड़ा लाए और वापस लाए। क्या? बालकों के हृदय को वापस परमेश्वर के विश्वास पर। चौथा उजियाला। चार हत्याओं ने इसे खा लिया, चार संदेश वाहकों ने इसे नष्ट कर दिया, मृत्यु के चार संदेश वाहकों ने इसे धर्म सिद्धांतों से खा लिया, धार्मिकता के चार संदेश वाहकों ने इसे फिर से छुड़ा लिया। मनुष्य के पुत्र की भविष्यवाणी, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? काश हमारे पास समय होता, मैंने इसे यहाँ लिखा हुआ है परंतु मुझे छोड़ना होगा। भविष्यवाणी, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? कलीसिया की वे चार अवस्थाएं जो आ रही हैं क्या है? इसकेल की हड्डियां, वे आने वाली चार अवस्थाएं क्या है? परंतु जीवन केवल आता है तब नहीं जब उन पर खाल चढ़ जाती है, परंतु जब उन पर हवा चलती है, तब जब जीवन का चौथा संदेश वापस आता है। प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा। हालेलुया, महिमा हो, परमेश्वर को महिमा मिले। चौथा उजियाला आना है, वो उन्हीं चिन्हों को लाएगा। ध्यान दें, धार्मिकता गूदे को लाई, पवित्रीकरण छाल को वापस ले आया, पवित्रता की शिक्षा पत्तियों को कौन वापस लाया? पेंटिकॉस्टल। ये क्या है? पेंटिकॉस्टल पत्तियां अपनी तालियां बजा रही हैं, आनंद आनंदित हो रहे हैं पेंटिकॉस्टल। क्या? चौथा वचन था स्वयं, वचन देहधारी हुआ, पुनरुत्थान चिन्ह के प्रमाण के फल कि अंततः मसीह धार्मिकता के पश्चात लगाया गया, पवित्रीकरण के पश्चात लगाया गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। संस्थाएं मर गईं और मसीह ने स्वयं को पैरामिड की चोटी के पत्थर के समान केंद्रित कर लिया। पहली पंक्ति धार्मिकता, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तब चोटी का पत्थर आता है। ये क्या है? पवित्र आत्मा वाले झुंड के पास सांझ चढ़ाया गया ताकि उसी प्रकार की सेवा में समझ जैसे कर सके जो उसके पास पहले थी जब वो गया, ताकि जब वो वापस आता है तो ये सारी बातों को उठाए लिए जाने में पकड़ लेगा, जहाँ धार्मिकता, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वो पैरामिड फिर खड़ा होगा, परमेश्वर का घर फिर से जिएगा, जीवन का वृक्ष फिर बढ़ रहा है, राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है। वे चिन्ह जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, ठेंगे में उलझे हुए, ओ पिछड़े हुए तुम अपनों में वापस आ जाओ, छुटकारे का दिन समीप है, मनुष्य के हृदय भय से रुकने वाले हैं, आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे चिराग छांटे हुए साफ, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा समीप है। झूठे भविष्यद्वक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य का इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, परंतु हम वहाँ चलेंगे जहाँ प्रेरित चले, क्योंकि छुटकारे का दिन समीप है। मनुष्य के हृदय भय से रुक रहे हैं, परमाणु और हर चीज, परंतु आत्मा से भर जाओ, तुम्हारे चिराग छांटे और साफ हैं, ऊपर देखो तुम्हारा छुटकारा समीप है। आमीन। सारे चिन्ह वापस। लूत का चिन्ह अंत के समय पर हम उसमें होकर निकले हैं। कैसे वो लूत, यहोवा का ये दूत लोगों के बीच देहधारी हुआ, अपनी पीठ तंबू की ओर करके बैठा और कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है, तेरे पीछे तंबू में। उसने कहा, मैं तो उसे भेंट करने वाला हूँ। और सारा हंसी। उसने कहा, सारा क्यों हंसी अपने तंबू में। आमीन। यीशु ने कहा, आगमन पर यही बात होगी। ओ तब सांझ का उजियाला मलाकी चार का उस अंधकार में से चमकता हुआ आता है। आमीन। कि उस पहले से ठहराए हुए वचन पर सांझ का उजियाला लाए। हालेलुया। चौथा संदेश क्या होगा? चौथा संदेश वह क्या है? उजियाले को वचन पर चमकाए। वचन पहले से ठहराया हुआ है, इसको तो सामने आना ही है, कुछ करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं लौटा दूंगा। ठीक है, सांझ का उजियाला पहले से ठहराए हुए वचन पर आ रहा है। जी हाँ श्रीमान। ओ सांझ के समय के उजियाला होगा। महिमा का मार्ग आप निश्चय ही पाएंगे। जल के मार्ग से आज उजियाला है। यीशु के बहुमूल्य नाम में दफन हो जाओ। युवा और बूढ़े, अपने सारे पापों से प्रायश्चित करो। निश्चय ही पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा, क्योंकि सांझ के उजियाले आ गए हैं। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। वहाँ वे एक साथ मिलकर एक हैं, एक हम में। वही चिन्ह जो मनुष्य नहीं कर सकता, वे स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। बाहर आ जाओ। वो वचन, परमेश्वर के पहले से ठहराए हुए वचन को वापस लाने को, वृक्ष की उस जड़ में से, वहाँ पीछे से, कि सारे नामधारियों ने इनकार कर दिया और नकारा, परंतु वहाँ एक उजियाला आएगा। वहाँ एक उजियाला आएगा, उठेगा। कहाँ? क्या यरूशलम में? नहीं श्रीमान, सांझ का उजियाला यरूशलम में नहीं होगा। सांझ का उजियाला जाता है कहाँ? पश्चिम में। उनके अपने दिन थे और उसका इनकार कर दिया, परंतु सांझ का उजियाला पश्चिम में उदय होगा। किस लिए? कि वचन के ऊपर चमके। क्या? कि फल को पका दे, दुल्हन वृक्ष को वापस ले आए, उन्हीं चिन्हों के साथ, आश्चर्य कर्मों और फलों के, जो उनके पास आरंभ में थे। सांझ के समय उजियाला होगा। ठीक है। ओ वचन अपनी ऋतु में तब अपने फल उत्पन्न करेगा। ये मुरझाएगा नहीं, परंतु अपना फल उत्पन्न करेगा। दाऊद ने कहा, अपनी ऋतु में। आमीन। यही फल उसने आरंभ में उत्पन्न किए। अब उसके वचन के साथ उसकी पहले से ठहराई हुई स्थिति में, जो कि उसकी अब है, और हम देखते हैं कि ये वचन सारे प्रकट हो रहे हैं। ये क्या है? ये सिद्ध प्रमाण है कि प्रभु का आगमन निकट है। और समय जब उसने कहा, प्रभु कहता है, मैं लौटा दूंगा, वे सारे येलक टिड्डियां, वो सब जो मेथोडिस्ट ने छोड़ा, सब कुछ कीड़े खा गए। जब ये सब हो गया, जब उन्होंने उसे नंगा कर दिया, परंतु मैं लौटा दूंगा उस सांझ के समय में। ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं लगभग प्रचार कर चुका हूँ ईमानदारी से। ओ मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। ओ मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। ओ मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे पहले से प्रेम किया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मैं बस अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करता हूँ। क्या हम प्रार्थना की पंक्ति लगाएं? पिता परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में इस संदेश को देता हूँ। यद्यपि ये छाटा गया था किसी प्रकार से, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इसके साथ टेपों में जाएगा और समस्त राष्ट्र में, यदि मैं इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाऊं, प्रभु होने पाए ये जीवित रहे, ये आपका वचन है। सांझ का उजियाला चमके प्रभु, मसीह की महिमा युक्त दुल्हन लाई जाए। प्रभु जी इसे आशीषित करें, ये आपके पास खाली वापस ना जाए, ये पूरा करे जिसके लिए ये प्रस्तुत किया गया है। पिता इसे प्रदान करें, सारी प्रशंसा आपको मिले। अब हम जानते हैं पिता, कोई मतलब नहीं कि हम क्या कहेंगे, ये फिर भी वचन है और हम इसका विश्वास करते हैं। परंतु हम तेरी लालसा करते हैं प्रभु, इस ईस्टर की प्रातः कि आप इस भक्त मंडली पर प्रमाणित कर देंगे। हो सकता है कुछ यहाँ पहली बार आए हैं कि आप अब भी यीशु हैं, कि आप मरी अवस्था में नहीं हैं, कि आप जीवित फिर जीवित हो उठे परमेश्वर, कि आज आप हमारे बीच में हैं। पिता इसे प्रदान करें और हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु के नाम के द्वारा, आमीन। यहाँ कितने लोग बीमार हैं, आपके हाथ देखें, बस अपना हाथ उठाएं। ओ क्या बिली पॉल, क्या उसने लिए? मैं विश्वास करता हूँ कि उसने हमारे प्रार्थना पत्र दिए हैं, क्या नहीं दिए? वे क्या थे, 1 से 100? हम सबको नहीं ले सकेंगे, परंतु उनमें से कुछ को लेंगे। बस यहाँ साथ साथ खड़े हो जाएं यदि आप चाहें। किसके पास नंबर 1 है? आइए नंबर 1 ई देखें। नंबर 1 अपना हाथ उठाए, प्रार्थना पत्र अपने पत्र पर देखें, यदि आप खड़े हो सकते हैं। ठीक है नंबर 1, आप पक्के हैं कि आपके पास सही वाला है? ठीक है ठीक है, आइए चलें आरंभ करें कहीं ये। ओ ठीक है, यदि आपके पास है हम वहाँ से आरंभ करेंगे, तब ठीक है। नंबर 1, आप अपना रास्ता यहाँ से बना लें यदि आप चल सकते हैं, यदि नहीं सकते हम उठाएंगे, समझे? ठीक है नंबर 1। नंबर 2 अपना हाथ उठाएं, अब जल्दी से नंबर 2 यहाँ आ जाएं। नंबर 3 ठीक यहाँ श्रीमान। नंबर 4 नंबर 5 हर कोई थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर बैठ जाए। नंबर 5 नंबर 6 अपना हाथ उठाएं जल्दी। नंबर 6 जरा मैं देखूं मेहरबानी से, कोई उनके हाथों की ओर संकेत कर रहा है? मैं नहीं। ओ वहाँ से, वो वहाँ पीछे कमरे में है। ठीक है नंबर 6 ठीक है। अब 1 मिनट, 7 ठीक है, महिला वहाँ पीछे बैठी है। 8
Now this is going to be the proof.
Amen. Amen.
This is the proof.
Amen.
अब आप में से प्रत्येक बनाए रखे, कृपया एक क्षण अब शांत हो जाएं। अब ये प्रमाणित होने जा रहा है, ये प्रमाण है। 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आप वहाँ पहुँच जाएं। ठीक है 7 ठीक है श्रीमान, ये अच्छा है। 8 8 8 ठीक है भाई। 8 9 10 11 12 भाई, ऐसा लगता है कि आप आना अपने आना रोक दिया। अच्छा हम वहाँ से आरंभ करेंगे, ये ठीक है, हो सकता है कुछ ही मिनटों में। ठीक है आइए अब हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी ओर से एक शब्द जो कि बहुत ही अर्थ रखता है। लोग देखें प्रभु, यदि मैंने ईमानदार होने का यत्न किया है, आपका वचन इन्हें बताने का यत्न किया है, प्रभु अपने दास की गलतियों को क्षमा करें। मैं प्रभु बहुत सी बार करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दास की गलतियों को नहीं देखेंगे, परंतु आप अपने वचन को देखेंगे जिसको कि मैं प्रचार करने का यत्न कर रहा हूँ। प्रभु मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने हृदय में आनंदित हूँ प्रभु, ये मेरे लिए जीवन से अधिक है, इसके लिए मैं अपना जीवन किसी भी समय दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, ये आपका वचन है। मेरे मूर्खता वाली विधि को क्षमा करें प्रभु, बहुत सी बार मैं और चुटकुले जो भी मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे प्रभु उनके लिए लज्जा आती है। मैं इसी प्रकार के परिवार से हूँ, कृपा करके इसे अनदेखा कर दें पिता, यदि आप करेंगे इसे अपने लहू से ढांक दें। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि करें, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आप अनदेखा नहीं कर सकते, परंतु आप मुझे क्षमा कर सकते हैं जब मैं इसे मान लेता हूँ। अब मैंने अपने पाप मान लिए हैं, मैंने इन लोगों के पाप मान लिए हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें क्षमा करेंगे प्रत्येक को, और लोग ये अनुभव करें कि हम किसी प्रकार के कार्य को लागू करने नहीं जा रहे हैं। ये अंत के दिनों में पवित्र आत्मा है, अपने वचन की गवाही देता है, जैसा कि मैंने अभी ये कहा। परंतु पिता कोई मतलब नहीं, मैं बस एक मनुष्य हूँ, और यदि मैं ये कहूँगा, वे कहते हैं ये उसका अनुवाद है, ये जो इस विषय में वो सोचता है। परंतु पिता यदि आप बस जरा सा बोल दें और सिद्ध करें कि ये सही है, तो इन्हें करना ही है, इन्हें आपके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो फिर प्रभु इसी के द्वारा प्राप्त करें, तब ये मेरा अनुवाद नहीं होगा, ये आपका होगा। प्रभु इसे प्रदान करें। और यदि मैं आपका दास हूं और मेरे पाप क्षमा हुए हैं और आपने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है, तो प्रभु इससे बोले, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे प्रदान करेंगे। बीमारों को और दुखियों को हर कहीं चंगा करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूं। और यदि आप बस स्वयं को हम पर प्रकट करें, जैसा कि आपने वहां कुएं पर किया उस स्त्री के साथ, जब उससे बातें की, आपने उसे कुछ बताया जो उसके साथ गड़बड़ था। उसके 5 पति हुए थे। अब आपने सांझ के समय में करने की प्रतिज्ञा दी है, आपने अंत के दिनों में करने की प्रतिज्ञा दी है। आपने कहा, और ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जैसा कि ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही होगा। परमेश्वर मनुष्य की देह में रह रहा है, हमारे बीच चल फिर रहा है, अपनी कलीसिया के रूप में पवित्र आत्मा में उन्हीं चीजों को कर रहा है। प्रभु आज इसे प्रदान करें। पिता, क्या आप नहीं करेंगे? तब मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को ये देखने दें, हर कोई परमेश्वर की महिमा के लिए चंगा और बचाया जाए। आमीन। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। यदि आप वास्तव में कुछ मिनटों के लिए श्रद्धा भाव में रहें, अब हर कोई जितना शांत हो सकता है रहे। क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरी स्थिति, जिसमें मैं यहाँ हूँ, आप अनुभव कर सकते हैं? मैंने यहाँ परमेश्वर का वचन प्रचार किया है, परमेश्वर का वचन। मैंने कहा, ये सब सत्य है। यीशु ने कहा, वो जो मुझ में विश्वास करता है तो वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, ध्यान रखें, चाहे आप आमीन कहें या नहीं। यीशु ने स्वयं को कभी किसी को चंगा करने का दावा नहीं किया, ये सच है। उसने कहा, ये मैं नहीं हूँ जो कार्य को करता है, ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है। क्या ये ठीक बात है? और यीशु ने यूहन्ना 5:19 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं में एक मनुष्य के समान, वो बस एक मंदिर था जिसमें परमेश्वर रहा, समझे। उसने कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु केवल वो जो पिता को करते देखता है उसी प्रकार पुत्र करता है, नहीं तो पिता मुझे दर्शन देता कि क्या करना है, और मैं वैसे ही करता हूँ जैसे वो मुझे बताता है। अब एक दिन हम पाते हैं कि वहाँ कहते हैं, एक बेचारी स्त्री, वो प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ सकी, उसको लहू बहता था और उसे ये वर्षों से था, इसलिए उसने उसका वस्त्र छू लिया जो कि अपने में कहती थी वो अयोग्य थी। वो निर्धन बेचारी पुरानी स्त्री, कोई पैसा नहीं, और वो वहाँ नहीं पहुँच सकी उन याजकों के साथ, और वे सब वहाँ खड़े थे जिसको कि खड़े होने का अधिकार इत्यादि सब था, इसलिए वो वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। वो इधर उधर घूमी और उसने उसका वस्त्र छू लिया। उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ वो बिल्कुल ठीक, वो हमें सत्य ही बताता है, ज्योति, मैं विश्वास करती हूँ वो परमेश्वर का वचन है, और यदि मैं उसे छू सकूँ मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप वही विश्वास कर सकते हैं जो उस स्त्री ने किया, कि वो परमेश्वर का वचन है? अब आज बाइबल ये कहती है कि वो महायाजक है, अब हमारा महायाजक, क्या आप ये विश्वास करते हैं? उसके जी उठने और ऊपर उठा लिए जाने के पश्चात वो ऊंचे पर चढ़ा और मनुष्यों को दान दिए, और अब वो परमेश्वर की दाहिने हाथ बैठा है महा महिमन ऊंचे पर, और जो हम मान लेते हैं और उस पर बिचवाई करता है, क्या ये ठीक बात है? वो महायाजक है जिसे कि हम क्या द्वारा छुआ, कैसे? अपनी दुर्बल भावनाओं से। अब यदि वो आप विश्वास करते हैं कि वो एक सा है, अब देखिए, यदि आप यहाँ आकर मुझे छुएं सारे दिन, इससे आपका कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप किसी भी भाई बहन को छुएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हाथ रखने की आज्ञा है, परंतु यदि आप उसे छू लें तो बस हो गया, आपको ये करना होगा। और देखिए, यदि आप उसे छू लें किसी प्रकार की धार्मिक विधि के द्वारा, जैसे उन्होंने किया, उन्होंने कहा, ओ हम इस महान शिक्षक का विश्वास करते हैं, ये भविष्य रखता है, भाई उसने कुछ नहीं कहा, परंतु उस छोटी स्त्री के पास कोई निश्चित चीज थी जिसने उसे छुआ, उसका विश्वास, उसने उसका वस्त्र छुआ, उसने कहा, किसने मुझे छुआ? क्या आप विश्वास नहीं करते कि बाइबल कहती है वो आज भी वही महायाजक है जो तब था, वो और दुर्बलता की भावनाओं से छुआ जा सकता है, आप उसे वहाँ छू सकते हैं, भले ही आप इस प्रार्थना पंक्ति में हैं या नहीं। यदि आप बीमार हैं या यदि आपका कोई प्रियजन बीमार है, यदि आपके हृदय पर कुछ है, आप बस श्रद्धा भावना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएं और कहें, परमेश्वर, ये मनुष्य जो वहाँ खड़ा है उसके विषय में कुछ नहीं जानता, वो एक छोटा गंजा व्यक्ति, वो कुछ नहीं है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ उसने प्रचारा है वो सत्य है, और मैं विश्वास करता हूँ जो उसने कहा सही बात है कि आप महायाजक हैं, अब मैं आपको छूना चाहता हूँ। और यदि उसने मुझे सत्य बताया है तो आप उसके होंठों का प्रयोग करें तो वो मुझसे बोले और मुझे बताए, जैसा आपने उस रात्रि पहले किया था। देखिए, यदि वो कल और सर्वदा एक सा है तो ये करे, ये है, और उसे कल, आज और सर्वदा एक सा बना दे, क्या ये नहीं है? अब हर कोई अपनी स्थिति को बनाए रहे, श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करे। अब हर कोई क्या कहा? ओ, अब मेरे पास वहाँ 10 हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रार्थना पत्र, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। परंतु अब आप इसे देखें, ये ठीक है, ये ठीक बात है। हम सब मिलकर धीरे धीरे गुनगुनाएंगे जबकि वो उन्हें लाते हैं। ओनली बिलीव, केवल विश्वास, केवल विश्वास। सारी बातें संभव हैं केवल विश्वास, केवल विश्वास, केवल क्या विश्वास? उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञा। किस लिए? सब बातें संभव हैं केवल विश्वास। पहाड़ से नीचे उतर रहा था, वहाँ चेले खड़े थे। मिर्गी वाले मामले में उनकी हार हुई थी। पिता वहाँ खड़ा हुआ था, अपने बालक को देख रहा था, रो रहा था। चेलों ने अपनी सारी युक्तियाँ चला चुके थे, परंतु इससे कुछ नहीं हुआ। यीशु चलता हुआ आया, उनमें से कुछ ने कहा वो यहाँ है, कुछ ने यीशु की ओर संकेत किया। पुरोहितवाद से अलग, यीशु को यही, जहाँ मैं लोगों को संकेत दे रहा हूँ, अपने पर नहीं या कोई कलीसिया, परंतु यीशु को कहा वो योग्य है। इसलिए पिता दौड़कर उसके चरणों में गिरा, प्रभु मेरे बालक पर दया कर, इसे शैतान ने बुरी तरह जकड़ रखा है, वो मूर्छित हो गया, मुंह से झाग निकालता है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। उसने कहा, और मैं उसे हर जगह ले गया, और यहाँ तक कि तेरे चेले इसके लिए कुछ न कर सके। यीशु ने कहा, मैं सकता हूँ यदि तू विश्वास करे, क्योंकि सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब यही सब कुछ है, उसके सामने शांत रहें। विश्वास, सारी चीजें। क्या समय है? केवल विश्वास, केवल विश्वास। सारी बातें संभव हैं, बस केवल विश्वास। ओ प्रभु, अब यहाँ चारों ओर वचन है। प्रभु, सांझ के उजियाले को चमकने दें, इसे जीने दें। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब प्रभु यीशु के नाम में मैं यहाँ प्रत्येक आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ, उसकी महिमा के लिए। मैं इस प्रार्थना पंक्ति को देखता हूँ, यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस प्रार्थना पंक्ति में जिसे मैं जानता हूँ। ये प्रत्येक मेरे लिए अपरिचित है। आप सब जो प्रार्थना पंक्ति में हैं, मेरे लिए अपरिचित हैं, और मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, आपकी परेशानी या कुछ नहीं। अपने हाथ उठाएं, हर कोई इस प्रार्थना पंक्ति में। भक्त मंडली में मेरे लिए कितने अपरिचित हैं, मैं आप लोगों के विषय में कुछ नहीं जानता। आपके पास भी वही अधिकार है जैसा इनके पास यहाँ है। केवल एक बार मैं एक व्यक्ति को लूंगा, यहाँ मुझे इसे लेने दें, एक मिनट। क्या आप इससे सुन सकते हैं? ये महिला यहाँ पर है, यहाँ एक स्त्री और पुरुष हैं, फिर से मिलते हैं। मैं इसे नहीं जानता, इसे कभी नहीं देखा, ये मेरे लिए अपरिचित है, बिल्कुल अपरिचित। मैं उसी वचन के आधार पर व्यवहार कर रहा हूँ। वचन कहता है, वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे यदि आप मुझ में विश्वास करोगे। उस प्रातः जब वो दर्शन फिर से आया उनमें से हजारों, और कहा, कभी न असफल होने वाली यीशु मसीह की उपस्थिति जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे साथ है। मैं आदर से इसका विश्वास करता हूँ और अपने सारे हृदय से। यदि मैं आपको फिर कभी न देखूं, आप इसको सत्य जानकर विश्वास करना, ये सही बात है। यहाँ ये स्त्री है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये बस एक स्त्री है जिसने प्रार्थना पत्र लिया है। लड़के जिस प्रकार से करते हैं वो यहाँ आता और प्रार्थना पत्रों को लेता और उन्हें आपस में मिलाता आपके सामने एक साथ। आप जानते हैं जो भी चाहता है उसे प्रार्थना पत्र देता है, वो जहाँ भी हो। कोई नहीं जानता कि पंक्ति कहाँ से आरंभ होने जा रही है, इसके विषय में कुछ भी नहीं। इसलिए लड़का कुछ नहीं कह सका। वहाँ बाहर आए, आपने मुझे इतने दिए थे, मैं आपको आगे रखूँगा, निश्चित रहे आप यहाँ हैं। वो इसके विषय में कुछ नहीं जानता, समझे, कोई नहीं जानता। हम आरंभ करते हैं जहाँ से पवित्र आत्मा कहता है बुलाओ, हम वहीं से बुलाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कभी ये यहाँ कोई एक यहाँ विशेषकर और किसी के पास कभी नहीं, एक अपरिचित जो मैं नहीं जानता। अब यदि ये स्त्री यहाँ खड़ी हुई है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ है, वो बीमार हो सकती है, उसका कोई और बीमार हो सकता है, वो बस यहाँ खड़ी हो सकती है, हो सकता है वो बीमारी का बहाना कर रही हो, जैसे बीमार हो और बस वो यहाँ खड़ी है कुछ प्रकट करने के लिए। यदि वो है, देखिए क्या होता है, समझे, आपने यत्न करते हुए देखा क्या नहीं? जी हाँ श्रीमान, उन्हें देखें जो द्वार पर खड़े हैं, मरे हुए को गाड़ा, समझे। इसलिए अब आपको मालूम पड़ जाएगा यदि ये सही है या नहीं, समझे। इसकी कोशिश देखिए, अब हम कलीसिया में खेल नहीं रहे हैं मित्रों, हम अंत समय में हैं, फल वृक्ष की चोटी पर है, ये पक रहे हैं, ये ठीक बात है, प्रभु आ रहा है। मैं इसे नहीं जानता, परमेश्वर महिला को जानता है, वो इसे जानता है। इसके पहले कभी संसार होता वो इसे जानता है, उसे मालूम था कि वो यहाँ पर खड़ी होगी, वो जानता था कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, क्योंकि वो अनंत है, क्या ये ठीक बात है? अब यदि वो अनंत है और ये जानता है, तो वो ये जानता है कि वो स्त्री यहाँ क्यों खड़ी है, तो फिर वही परमेश्वर यीशु जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, परमेश्वर उसके अंदर, जिसने उस स्त्री से कुएं पर बातें की, उसकी गड़बड़ को उसे बताया जो उसके साथ थी, हम सब ये जानते हैं ये क्या था, क्या हम नहीं जानते? और उसने कहा, श्रीमान तुझे एक भविष्यवक्ता होना चाहिए, ये उसका पहला भाव था। अब हम जानते हैं ये समय मसीह का है कि वो यहाँ पर हो, जो कि मसीह कहलाता है, और जब वो आता है तब वही बातें होने जा रही हैं जो वो करता है। अब यदि वो कल आज और सर्वदा एक सा है और इस वचन के द्वारा प्रतिज्ञा की है जो मैंने अभी अभी प्रचारा कि सांझ के समय वो यहाँ पर होगा और उन्हीं चीजों को करेगा, तो फिर हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं? क्या हम नहीं कलीसिया के उस पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब यदि वो इस महिला पर ये कार्यवंत करेगा ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया, वो वचन की पुष्टि करेगा कि ये सही है। अब महिला अपना हाथ पकड़े हुए है और ये यहाँ हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैं इन्हें नहीं जानता, मैंने इनको कभी नहीं देखा, आप बस एक अपरिचित हैं, यहाँ खड़ी हैं, ऐसे ही आप वहाँ बहुत से, मैं उनमें से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं जानता हूँ और मैं बहुतों को नहीं जानता। मैं यहाँ श्रीमती कॉलिंस को जानता हूँ, इसके लिए मैं निश्चित हूँ, बहन या भाई बेन की पत्नी, और मैंने भाई और बहन डाउच को यहाँ देखा थोड़ी देर पहले, भाई राइट्स, भाई बहन डाउच, भाई जो वहाँ अंत में हैं। यहाँ आसपास मैं उनमें से बहुत कुछ को जानता हूँ, परंतु मैं बहुतों को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपके बीच बहुत नहीं रहा और यहाँ हमारे पास अपरिचित है, और इसलिए आप बस प्रार्थना करें। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, मैंने दावा किया है कि सांझ के उजियाले आ गए हैं, और सांझ का उजियाला वैसे ही होगा जैसे सुबह का उजियाला। ये परमेश्वर के वही भेद भरे फलों को प्रकट करेगा, आत्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, ये ठीक बात है। मैं केवल आपसे वैसे ही बातें कर रहा हूँ जैसे उसने उस स्त्री से कुएं पर बातें की, उसने कहा मुझे पानी पिला, समझे, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये वो है। परंतु यदि वो मुझ पर ये प्रकट करे कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, देखा, यदि वो मुझ पर प्रकट करेगा कि आप यहाँ किस लिए हैं, तब आप जान जाएंगे कि वो आपके सारे जीवन के विषय में जानता है। यदि वो आपको कुछ बताए जो कुछ हुआ, तो आप जान जाएंगे कि ये सही है या नहीं। अब यदि वो जानता है कि क्या हुआ और आपको ये बता सकता है, तो निश्चय ही आपको बताएगा कि आगे क्या होगा। यदि वो आपको पहले ही बता सकता है कि आपने पीछे क्या किया, तो निश्चय ही वो आगे का भी प्रकट करेगा, या उसके पीछे का और आगे का, सब कुछ दोनों तरफ का इसे सही बनाता है। क्या भक्त मंडली उसका विश्वास करेगी अपने सारे हृदय से यदि वो इसे करता है? ये बहुत अच्छा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप विश्वास करते हैं, चाहे वो ये करे या ना करे, आप फिर भी विश्वास करते हैं, परंतु केवल कठोर कर देता है। मैं बस इस स्त्री को देख रहा हूँ और वो अभिषेक्त होती जा रही है, वो ये जानती है मुझसे अपरिचित होने के नाते, परंतु अब मैं आपको दर्शाऊं, आप में से बहुतों ने वो चित्र जो वहाँ देखा है, और अब वो ज्योति के उसके ऊपर है, और वही जो ठीक मेरे और इस स्त्री के बीच में यहाँ पर है, आप इसे देखती हैं, एक प्रकार हरी एक हरी पीली हरी मरकत जैसा उजियाला, जैसा कि हम इसे कहते हैं, ये यहाँ पर घूम रहा है, यही जो इसे अनुभव करता है। और मैं आपको कुछ दिखाऊं, आप एक वास्तविक नम्र मिठास का सा अनुभव कर रही हैं। महिला, क्या ये ठीक बात है? अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें। और स्त्री इसके अनुभव से हिल नहीं सकती, ये ठीक वही है, समझे? अब यही ये इसके ऊपर बिखरने लगे, मैं नहीं जानता, निर्भर करता है, इसे तो परमेश्वर से होना है, मैं ये अपने से नहीं कर सकता, ये तो परमेश्वर ने ही करना है। जी हाँ, स्त्री का स्वाभाविकता से एक ऑपरेशन रुका पड़ा है। ये कुछ ऐसा है जो डॉक्टर इसे बताएगा इसके लिए ऑपरेशन होना ही चाहिए, परंतु वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, ये ठीक बात है। और ये एक फोड़ा है और ये मेरुदंड के पास सीधे हाथ की तरफ है, सीधे हाथ पर, ये ठीक बात है। अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें। अब आप विश्वास करती हैं? आप नहीं देखेंगी, परंतु आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी, समझे? ठीक है। अब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आपने ये अनुमान लगा लिया। आप लाखों बार सही अनुमान नहीं लगा सकते। महिला को यहीं खड़ा रहने दें, ये मेरे पास से अभी अभी चला गया। अच्छा, तो फिर हम इसे एक क्षण के लिए देखें, वो ठीक प्रतीत होती है, मसीही। अब चलिए देखते हैं, अब यदि वो हमें कुछ बताए जो होगा। जी हाँ, ये फिर वापस आ रही है। जी हाँ श्रीमान, वो है, वो है। जी हाँ, ये एक फोड़ा है जिसे डॉक्टर हटाएगा और ये इनको ऑपरेशन करेगा, परंतु उनके पास ये इसके लिए मसीह पर विश्वास करने जा रही है। और केवल इतना ही नहीं, ये यहाँ आसपास से नहीं है, इनके साथ किसी को होना चाहिए। ये उनका पति है और वो भी पीड़ित है, ये ठीक बात है। आप विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे बता सकता है, जबकि मैं ठीक उस पुरुष को देख रहा हूँ यहाँ इस दर्शन में, इसके साथ क्या गड़बड़ है? अच्छा, जाकर उसे बता दें कि जाकर वो अपना खाना खाए, उसके पेट की परेशानी चली गई है। आप विश्वास कर रहे हैं कि ये मसीह कर रहा है, समझे? आप टेनेसी से हैं, एशविले, ठीक है, श्रीमती टिगले, ठीक है, आप घर वापस जा सकती हैं, आप चंगी रहें, और आपका पति, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? यदि, क्या ये वही प्रभु यीशु नहीं जो यहाँ बीते दिनों में था, यही जो सांझ के उजाले की कलीसिया महिला का परीक्षण करें और उससे बात करें, उससे पूछें कि वे बात जो मैंने कही है ठीक है या नहीं, यदि आप बस विश्वास करें। अब क्या आप संतुष्ट हैं? अब क्या आप वो मसीह एक सा है विश्वास करते हैं? अब आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं आपका भाई हूँ, परंतु वो परमेश्वर है। अब चलिए देखते हैं, क्या ये अगला व्यक्ति है? क्या आप कभी प्रार्थना पंक्ति में आए हैं? ठीक है, अब निसंदेह वो अभिषेक आप अनुभव करते हैं, ये मुझे दुर्बल करता है, जैसा कि मैं नहीं जानता कि क्या। अब यीशु जब छोटी स्त्री ने उसका वस्त्र छुआ, उसने कहा, मुझे लगता है गुण मुझ में से निकला है, क्या ये ठीक बात है? जिसका अर्थ है सामर्थ, वो दुर्बल हुआ। और यदि ये वचन के साथ हुआ स्वयं के, तो उसके साथ क्या जिसके पास वचन आता है, ये क्या करेगा? यदि इसने परमेश्वर के पुत्र के साथ किया, तो मेरे साथ क्या होगा? एक पापी उसके अनुग्रह से बचाया गया, ये तो मुझे घुमा देगा, देखा। परंतु फिर भी मैं यहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उसका बेचारा प्रतिनिधि, अपने सारे पापों से प्रायश्चित करता हूँ कि मैं जो हूँ आप नहीं देखेंगे, परंतु देखें वो क्या है कि आप उसकी ओर देखेंगे। अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ महिला, मैं बल्कि इस स्त्री को नहीं जानता, और हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, ये ठीक बात है। अब यदि प्रभु यीशु, मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, यदि प्रभु यीशु मुझ पर कुछ प्रकट कर दे जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, कुछ जो आपने किया, कुछ जो आपको नहीं करना चाहिए, या कुछ इस प्रकार का आप जानते हैं, ये होगा, ये एक अलग सा आश्चर्यक्रम होगा, ये ऐसा कुछ जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, आश्चर्यक्रम जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, कोई भी इस बात को जानता है, समझे? ये एक विशेष प्रकार का आश्चर्यक्रम होगा, ये आश्चर्यक्रम से कुछ अधिक होगा, बजाय कि ये स्त्री जो यहाँ पहिए वाली कुर्सी में बैठी है और इसे गठिया है और पैरों तक, और मैं उससे कहता हूँ खड़ी होकर और चले, और वो चलती हुई बाहर चली जाए, इस पर हर कोई चिल्लाएगा, परंतु आप देखिए वास्तव में उसके विश्वास की सामर्थ को विश्वास करना है कि खड़ी होकर और चले जो इसे कर सकता है। परंतु कहीं पीछे जाकर और पीछे से जीवन को कहीं से निकालना, इसमें बहुत अधिक है, इसे करने के लिए परमेश्वर ही है जहां आप ये कह सकते हैं। और देखिए, आप जानते हैं कि क्या ये सही है।
something happened somewhere else. Now wait, it's lecture. It's gone to the gone in the audience.
अब कहीं कुछ हुआ है कहीं और. अब रुकें. यहाँ ये बाएं ये चला गया. ये भक्त मंडली में चला गया कहीं. ये कहीं चला गया. अब ये गया. एक मिनट मैं इस महिला से फिर से बातें करूं. अब वास्तव में श्रद्धा भाव में आ जाएं और अब ध्यान दें. बस प्रार्थना अब प्रार्थना करते रहें. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें. प्रभु ये मैं हूं. आप में से कुछ लोग वहां बाहर जो इस प्रार्थना पंक्ति में नहीं है आप प्रार्थना करें. मैं फिर से आपसे आपके विश्वास के लिए कहता हूँ समझे. यदि ये दूसरी स्त्री के लिए हो सका तो ये आपके लिए भी हो सकता है. ये आपका विश्वास है समझे. आप ही हैं जो इसे करते हैं. ये मैं नहीं हूँ. ये आपका विश्वास परमेश्वर में समझे. यीशु ने कभी नहीं कहा ओ मुझे मालूम था कि मैं उस स्त्री से उस स्थान पर मिलने जा रहा हूँ. नहीं. परंतु जब लाजर का पुनरुत्थान आता है अब यही जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिखाया समझे. परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो. वो सोया हुआ है. वो क्या था चला गया. और तब जब वो वापस आया उसने कहा लाजर सोता है. और वो वापस आया और जाकर लाजर को कब्र में से उठाया. उसके प्राण को पुकारा. चार दिनों के बीतने के बाद उसने कभी नहीं कहा कि वहाँ वो दुर्बल हुआ. ये परमेश्वर वरदान का प्रयोग कर रहा था. परंतु ये जब स्त्री ने उसे छुआ ये स्त्री थी जो परमेश्वर के वरदान का प्रयोग कर रही थी. यही चीज यहाँ पर है. ये आप इसे कर रहे हैं. अब इन शिकार की यात्राओं पर जहाँ मैंने भालू देखा और जहाँ विभिन्न चीजें और ये सारी विभिन्न चीजें जो यहाँ पहले से बताई गईं, इसके पहले कि वे घटित हों, शब्द दर शब्द बताई गईं, ये परमेश्वर है. ये मुझे परेशान नहीं करता. परंतु जब लोग परमेश्वर के वरदान का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से जनता के सेवक हैं क्योंकि आप पंक्ति में आकर काम में ले रहे हैं समझे. और फिर आप उसे उसके द्वारा छूते हैं तब वो वापस बोलता है समझे. अब हाँ स्त्री अब दर्शन में आ रही है. वो आ रही है और दर्शन अंदर की ओर बढ़ रहा है. ऐसा दिखता है कि आप उसके चारों ओर देख सकते हैं. स्त्री बीमार है. वो वास्तव में बीमार है. एक चीज वो पेट की बीमारी से परेशान है. बहुत बुरी हालत. यदि ये सही बात है तो आप अपना हाथ उठाएं. और आपके साथ गड़बड़ी है और चीजें हैं. ये सत्य है. आपके साथ कोई और भी है. ये आपका पति है और वो बीमार है. यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करता है कि ये आपका पति है और उसके साथ क्या गड़बड़ है तो आप मुझ पर उसका भरोसा रखता हूँ ये विश्वास करेंगी. वो व्यक्ति अपनी आँखों और अपने कानों से परेशान है और वो बुरी हालत में है. जी हाँ श्रीमान. क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं? क्या आप मेरा उसका नबी होने का विश्वास करेंगी? उसका नबी यदि मैं आपको बताऊं कि आप कौन हैं, आप इसका विश्वास करती हैं? श्रीमती रॉबर्टसन और आप हडसन विले जो कि अलबामा है अपने पति के साथ भली चंगी होकर वापस जाएं. आप विश्वास करते हैं? विश्वास करने वालों के लिए सारी चीजें संभव हैं. विश्वास करें ये परमेश्वर करता है. अब संदेह ना करें. बस अपने पूरे हृदय से विश्वास करें तब परमेश्वर प्रदान करेगा. बस विश्वास करते रहें. आप जो चाहे मांगे आपको मिल सकता है. ठीक है अब आप ऊपर आएं. चलिए देखते हैं क्या आप यहाँ अगले व्यक्ति हैं. ठीक है श्रीमान. मैं समझता हूँ हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं. यदि यीशु शमौन नाम व्यक्ति के पास आया और उसकी स्थिति के विषय में बताया और इससे शमौन ने विश्वास किया अपने पूरे हृदय से, क्या ये आपके साथ भी वही करेगा? ये करेगा. अच्छा अपरिचित होने के नाते अब परमेश्वर अब यहाँ स्त्री पुरुष का कोई अंतर नहीं है. वो वैसा ही है. वो परमेश्वर है समझे. अब क्या आप विश्वास करेंगे कि आपके चारों ओर एक अनुभूति है कि परमेश्वर मुझे उसके दास के द्वारा आप पर प्रकट करने के योग्य है? वो जिसके लिए आप यहाँ हैं, आपके साथ कुछ गड़बड़ है. ये चाहे जो है आप जान जाएंगे कि ये सत्य है कि नहीं. ठीक है वो इसे प्रदान करे. ये व्यक्ति दर्शन में आ रहा है या दर्शन उस मनुष्य में आ रहा है. ये यहाँ बीमारी के लिए नहीं है. ये यहाँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज में है. यही जो वो ढूंढ रहा है श्रीमान. ये ठीक बात है. जी हाँ श्रीमान. और आप यहाँ से नहीं हैं. आप यहाँ ऊपर से एक स्थान जो सीमोर इंडियाना कहलाता है वहाँ से हैं. वे आपको बिल कहकर पुकारते हैं. बिल वापस जाओ और पवित्र आत्मा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में. विश्वास करें. महिला आई है, क्या आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? क्या विश्वास करती हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जीवित है? और क्या विश्वास करती हैं कि उसकी अनुमति से ये इस प्रकार हो रहा है? आप विश्वास करती हैं? हमारे पास कितने थे? क्या मैं अधिक निर्बलता में नहीं जाना चाहता? ठीक है, नहीं, ये कुछ नहीं, आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप यहाँ किसी और के लिए हैं, और वो यहाँ पर नहीं है। यदि मैं आपको बताऊं कि उसके साथ क्या परेशानी है, तो क्या आप उसकी चंगाई स्वीकार करेंगी और लेकर विश्वास करेंगी? ये कैंसर है, क्या विश्वास करती हैं कि वे चंगे होने पर हैं? तो फिर जाइए प्रभु यीशु के नाम में और विश्वास करें। क्या आप सब विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में विश्वास करते हैं? क्या वो आश्चर्यजनक नहीं? क्या विश्वास कर रहे हैं? ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं? अधिकतर दो या तीन से पुष्टि हो जाती है। क्या कहा? चार। क्या ये पांचवा यहाँ खड़ा है? ठीक है, आइए आइए हम अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप यहाँ उस बालक के लिए हैं। यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे कि आपके बालक के साथ क्या गड़बड़ है, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उसे चंगा करेगा? उस छोटे बच्चे के साथ गंभीर हृदय रोग है, ये ठीक बात है। वो बालक आप नहीं, बालक यहाँ से नहीं है, वो नगर से बाहर का है, ये प्रदेश से बाहर का है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि बालक कहाँ से आया है? क्या विश्वास करेंगे और विश्वास करते हैं कि फिर बालक चंगा हो जाएगा? इसे वापस फ्रैंकलिन केंटकी ले जाएं? जी हाँ मामा, पूरे हृदय से विश्वास करें। यदि आप विश्वास करेंगे, आपको बस इतना करना है, इसे यहाँ मेरे पास आने दो। मैं उस दुष्ट चीज को दोषी ठहराता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मृत्यु छोड़ जाए, इसमें जीवन आए। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। खाने के लिए जाना चाहते हो? क्या वो आपको अच्छा अनुभव करा सकता है? आगे बढ़ें। ये आपको छोड़ गया, आमीन। आप विश्वास करती हैं कि स्त्री रोग आपको छोड़ने वाला है? ठीक है, जाइए विश्वास करें, कहें प्रभु आपको धन्यवाद। श्रीमान, आप कैसे हैं? ओ एस्थमा, वो शैतान। एक मिनट, अब जरा थोड़ी देर, कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ है उससे मिलता जुलता जिसने उस मनुष्य को उस समय पकड़ा। मैं जरा इसे फिर से देखूं कि क्या था। अब जरा मेरी ओर देखें, कुछ ना कहें, एक क्षण। ये अश्वेत व्यक्ति वहाँ पीछे बैठा हुआ है, मेरी ओर देख रहा है। ये उसका कोई उसका है जो बीमार है, ये ठीक बात है। एस्थमा और साइनस, ठीक बात है। आपने उसे छू लिया। आप यहाँ से नहीं हैं श्रीमान, आप पूर्व से आए हैं, उत्तर पूर्व से, इधर से। आप न्यूयॉर्क से हैं, ये ठीक बात है। आप श्री हंट हैं, आप अब विश्वास करते हैं? ठीक है श्रीमान, ये अच्छा है। वहाँ तुम्हारा मित्र तुम्हारे बराबर में बैठा प्रार्थना कर रहा है। तुम मेरा विश्वास करते हो श्रीमान कि परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूँ? आप यहाँ उसके साथ आए हैं, तुम्हारा नाम कोलमैन है और तुम एक पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हो। उसे दौरा पड़ा है, ये यहोवा यूं कहता है। अब विश्वास करते हुए जाएं, विश्वास करें, ये आपको छोड़ देगा। आपके पेट में गड़बड़ है, ये आपकी परेशानी है, क्या ये ठीक बात नहीं है? जाइए खाइए, जाइए खाइए। प्रभु यीशु के नाम में आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको चंगा कर दिया। वापिस जाएं, कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आपको अधीरता की परेशानी है, इसमें सब गड़बड़ है। अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, घर जाएं और चंगे हो जाएं। अधीरता, बस अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, विश्वास करें परमेश्वर आपको चंगा करेगा और बस इसका संदेह ना करें। अधीरता और हृदय रोग, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। अधीरता, परेशान, पेट की परेशानी आपको परेशान कर रही है, आपके पेट हाजमे की स्थिति आपके भोजन को खट्टा कर देती है, जाइए अपने हृदय में संदेह ना करें और ये हो जाएगा और ये आपको और ना होगा। आपकी पीठ आपको परेशान कर रही है, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं तो जाएं और यीशु मसीह आपको इससे चंगा करता है। एक मिनट, एक क्षण के लिए शांत रहें। अब कुछ घटित हुआ, यहाँ ये महिला अपरिचित है। उस ज्योति ने उसे बहुत ही जल्दी घेर लिया, फिर चली गई, फिर वहाँ पीछे कुछ घटित हुआ। एक मिनट, वो अश्वेत पुरुष, मैं निश्चित हूँ ये वो अश्वेत भाई नहीं है क्योंकि ये आई। एक मिनट, ये यहाँ है, बिली पीछे हटे, ये यहाँ पर है, यहाँ ये पुरुष बैठा है, अश्वेत पुरुष। आप भी पीठ की परेशानी से परेशान हैं, ये ठीक बात है, आप मेरे लिए अपरिचित हैं, मैं आपके लिए, परंतु यहाँ एक अच्छी चीज जिसको आपको जरूरत है उस पीठ दर्द से अधिक, वो ये कि अपना हृदय मसीह को दे दें, मसीह ही हो जाएं, आप नहीं। तो क्या आप उसे अपना बचाने वाला स्वीकार करते हैं? आप ओहियो से हैं, ठीक बात है, ओहियो से वापस जाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है और आप घर जा सकते हैं और चंगे हो जाएं। अब ये हो गया, अब आप घर जा सकते हैं, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। ठीक है बहन, आइए। गड़बड़ियां, अधीरता और थकान, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अपनी जगह पर जाएं और कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद उस सब के लिए जो आपने मेरे लिए किया। और विश्वास करते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपकी पीठ को चंगा करेगा और आपकी किडनी की परेशानी को अच्छा करेगा। अपने मार्ग पे आनंद करते जाएं, कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। पुत्र, क्या आप विश्वास करते हैं वो आपको चंगा करता है? कहें प्रिय परमेश्वर आपका धन्यवाद, जाइए परमेश्वर की महिमा करें। अब क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं बहन? तो जाइए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। एक क्षण, नहीं ये वो नहीं थी, एक मिनट, ये वहाँ वो महिला नहीं थी, एक सेकंड, एक क्षण, पानी उछलता है या कुछ, देखा, यहाँ कोई है जिसने सागर पार किया है कहीं से? ये स्त्री है, ये हॉलैंड से आई है, कहाँ है वो? ये रही, ठीक है बहन, आप बहुत दूर से चंगाई के लिए आई हैं। आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? आपको गठिया बाई का रोग है, अकड़न, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने लोगों के पास संदेश ले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये आपको छोड़ जाएगा और आप जा सकती हैं और चंगी हो जाएं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? यहाँ पीछे एक स्त्री है, यहाँ पीछे बैठी है और वो पित्त के कारण परेशान है। ओ, वो चूक रही है, परमेश्वर मेरी सहायता करें। वो इंडियानापोलिस से आई है, उसका नाम गिलबर्ट है। महिला, आप कहाँ हैं? खड़ी हो जाएं, वहाँ हैं आप, चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सब विश्वास करते हैं अपने सारे हृदय से? क्या यीशु मरुओं में से जीवित हो गया यीशु के नाम में? एक दूसरे पर अपने हाथ रखें और प्रार्थना करें, जबकि मैं बहन कैली के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, तेरी पवित्र सामर्थ इस कलीसिया में आए, अब और सारे में छा जाए। हमारी बहन यहाँ है, उसे जीवन दे प्रभु, उसे ये महान चंगाई दें प्रभु जिसका वो दावा कर रही है। यहाँ अपने लोगों को चंगा करें, अपने लिए महिमा लें प्रभु, इसे प्रदान करें। ये लोग एक दूसरे पर अपने हाथ रखें। शैतान, हम इन रुमालों पे आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति चंगा हो जाए प्रभु। अपने वचन की पुष्टि चिन्हों से करें। और अब शैतान, तू झूठा शैतान, तू हार गया है। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर के पुत्रों को लौटा ले आएगा जिसे आपके मत्सार के द्वारा धोखा दिया। उसने प्रतिज्ञा की है कि कलीसिया को वापस उसी स्थिति में ले आएगा जबकि सांझ का उजियाला चमकता है और हम इसमें रह रहे हैं। वापस आने से हमारे पास अधिकार है, हमारे पास हमारा वकील है, हमारे पास हमारा वकील है, हमारा महायाजक, और हम दावे को लागू करने जा रहे हैं। तूने उन पर बहुत समय से अधिकार रखा, अब तू और नहीं कर सकता। हम तुझे यीशु मसीह के नाम में चुनौती देते हैं, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ में और पवित्र आत्मा में, जो अब यहाँ उपस्थित है। भक्त मंडली से बाहर आ जा।